वांग चेन जियांग लिंगक्सियन के सवाल सुनकर स्तब्ध रह गया। एक पल के लिए उसके विचार भटक गए और वह सोचने लगा कि कहानी कैसे गढ़ी जाए। हाँ, इसके बारे में क्या? कुछ देर सोचने के बाद वांग चेन ने इसे खुले तौर पर स्वीकार करने का फैसला किया। मैंने तुम्हें अभी तक कोई साधना तकनीक नहीं दी है, तो तुम साधना कैसे कर सकते हो? जियांग लिंगजियन की निगाहें वांग चेन पर टिकी हुई थी, मानो वह उसके बेहद परिचित चेहरे से कुछ समझना चाहती थी। ओह, मैंने यह नहीं कहा कि मैं किसी तकनीक से साधना कर रहा था। वांग चेन का मुंह फड़क उठा, उसके चेहरे पर एक मासूम भाव था, मानो वह कह रहा हो कि वह निष्कर्ष पर पहुंच गई है। फिर उसने समझाना जारी रखा। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अचानक अपने पेट में गर्मी और भूख महसूस हुई, इसलिए मैंने पालथी मारकर बैठने की कोशिश की ताकि मैं इसका विरोध कर सकूं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन दुर्भाग्य से, जब वांग चेन ने अंतिम शब्द कहे तो वह कुछ हद तक पछतावे से भरे हुए लग रहे थे। सिर झुकाए, पालथी मारकर बैठे हुए, बहुत निराश दिख रहे थे। उसे इस तरह देखकर जियांग लिंगशियान को क्षण भर के लिए यह समझ नहीं आया कि वह सच कह रहा है या झूठ। जब से उन्होंने आखिरी बार वांग चेन पिछला जीवन की छाया की झलक देखी थी, तब से जियांग लिंगक्सियन अक्सर सोचती थी कि क्या वांग चेन का भी पुनर्जन्म हो सकता है। हालांकि इस विचार को उन्होंने हमेशा खारिज कर दिया। उसका अपना पुनर्जन्म पहले से ही अविश्वसनीय था। दोहरे पुनर्जन्म की संभावना दिव्य बनने से भी अधिक कठिन थी। सिस्टम, क्या तुम मेरे पेट में गड़गड़ाहट कर सकते हो? वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन की संदिग्ध नजर को देखकर जल्दी से अपने मन में सिस्टम से बात की, लेकिन ऐसा कहते हुए भी उसे सचमुच थोड़ी भूख लगी थी। डिंग, 100 ओरिजिन पॉइंट्स कट रहे हैं। मैं मेजबान का पेट गुड़गुड़ा दूंगा। गरम्बल, गरम्बल। अपने पेट में गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर वांग चेन ने तुरंत शर्मिंदगी का नाटक किया, अपना सिर नीचे कर लिया और अपने पेट को ढक लिया। मेजबान, जल्दी से जियांग लिंगजियन से कहो, मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। भूखा, मैं चाहता हूँ कि परी बहन मुझे दूध पिलाए। चले जाओ, चुप रहो। वांग चेन ने सिस्टम की ठंडी यांत्रिक किंतु भावुक आवाज सुनी, और इस बार उसका सिर नीचे झुका हुआ था। उसका बूढ़ा चेहरा सचमुच लाल हो गया था। तस्क तस्क, कमजोर, तुम्हारे पास चोर का दिल है लेकिन हिम्मत नहीं। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम भूखे हो। मैं दोपहर के समय संप्रदाय के भोजन कक्ष के पास से गुजरा था, इसलिए यूं ही तुम्हारे लिए कुछ खाना ले आया। जियांग लिंगजियांग की आवाज और सिस्टम की आवाज एक साथ सुनाई दी। वांग चेन ने सिस्टम को अनदेखा कर दिया और जियांग लिंगजियांग की ओर देखा। इस समय जियांग लिंगजियन पहले से ही मेज पर चला गया था और सुबह की तरह एक बांस की खाद्य टोकरी निकाली। फिर वह बांस की टोकरी से भोजन से भरे बर्तन निकालने लगी। हालांकि इस बार यह जियांग लिंगजियन द्वारा स्वयं बनाया गया भोजन नहीं था जैसा कि पिछली बार था, बल्कि विभिन्न आध्यात्मिक पशु व्यंजन थे। तस्क तस्क तस्क, तुम्हारी परी बहन तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। इतना आध्यात्मिक भोजन, सोच रहा हूँ इसकी कीमत कितने स्पिरिट स्टोन की होगी। और यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि वह ग्रैंड वॉर डाइनिंग हॉल गई थी, ध्यान से चयन किया और व्यक्तिगत रूप से इसे खरीदा, फिर भी वह कहती है कि वह बस कुछ लापरवाही से ले आई थी। वांग चेन ने सिस्टम पर अपनी आंखें घुमाई, सीधे उसे ढाल दिया और खड़ा हो गया, मेज के पास कुर्सी पर चला गया और बैठ गया। इस बार वांग चेन ने अंततः अपने जीवन में पहली बार पूरा भोजन किया। वह लगातार अपने बाएं हाथ से भोजन को अपने मुंह में डालता रहा। इन आध्यात्मिक समृद्ध व्यंजनों से उन्हें हरने वाले के साथ अविश्वसनीय रूप से ताजगी का एहसास हुआ। यद्यपि वांग चेन की चोटें उसकी साधना वृद्धि के साथ पहले ही ठीक हो चुकी थी, फिर भी उसने नाटक जारी रखने और कुछ और दिन रुकने की योजना बनाई। परी बहन, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? जैसे ही वांग चेन खाना खा रहा था, उसे अचानक एहसास हुआ कि जियांग लिंगशियान उसके सामने बैठा था, चुपचाप उसे घूर रहा था, एक खूबसूरत भूत की तरह, शांत और स्थिर। मुझे दूसरों के हाथ का बना खाना खाना विशेष रूप से पसंद नहीं है। जियांग लिंगक्सियन की शांत आवाज में बात करने के बाद उसने देखा कि बाहर पहले से ही देर हो चुकी थी और कमरे में अंधेरा होने लगा था। फिर एक विचार के साथ उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करके कमरे की दीवारों और छत पर चमकदार खजानों को सक्रिय कर दिया। तो फिर तुम किसका हाथ खाना चाहोगे? वांग चेन अच्छी तरह से जानता था कि जियांग लिंगक्सियन पिछला जीवन केवल उसका बनाया हुआ खाना ही खाता है, लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह में खाना डालते हुए पूछा। आप? ये सुनकर वांग चेन चुप हो गया, अब कुछ नहीं बोला, केवल खाने पर ध्यान केंद्रित किया, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। ये देखकर जियांग लिंगक्सियन ने अपने निचले होंठ को भींच लिया, फिर हल्के से अपने दांतों को काट लिया। उसकी खूबसूरत आंखें अनिच्छा के संकेत के साथ वांग चेन को देख रही थी। तुम मुझे अपना गुरु मानने को क्यों तैयार नहीं हो? ये साधना तकनीकें और संसाधन हैं। मैं तुम्हें हर चीज का सर्वश्रेष्ठ दे सकता हूँ, बशर्ते तुम मुझे अपना गुरु मानने को तैयार हो। जैसे ही जियांग लिंगक्सियन ने बात की, एक संत स्तरीय साधना तकनीक और एक शीर्ष स्तरीय भंडारण अंगूठी उसके हाथ में प्रकट हुई। ये सुनकर वांग चेन ने खाना बंद कर दिया, धीरे से अपने बाएं हाथ में चीनी कांटा नीचे रख दिया और अपना चेहरा सीधे जियांग लिंगक्सियन की ओर देखने के लिए उठाया। लेकिन मुझे कभी भी आपकी साधना तकनीक और संसाधन नहीं चाहिए। तो फिर तुम क्या चाहते हो? जियांग लिंगक्सियन ने थोड़ा सा भौहें से कुढ़ी और खेती की तकनीक और भंडारण अंगूठी को मेज पर रख दिया, उत्सुकता से जवाब जानना चाहा। अभी जो तुम्हारा जवाब था वही तुम हो, वांग चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, फिर दिखावटी ईमानदारी के साथ समझाना जारी रखा। जब मैं बड़े पहाड़ में फंस गया था तो आप मेरे सामने प्रकट होने वाले पहले व्यक्ति थे, एक परी की तरह सुंदर। मैं पहली नजर के प्यार में यकीन नहीं रखता, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हो गया था। तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे तुम सचमुच पसंद आ गईं। हालांकि वांग चेन इस समय ईमानदारी का दिखावा कर रहा था, लेकिन ये दोनों वाक्य बहुत गंभीर थे, क्योंकि अपने पिछले जीवन में जब उसने जियांग लिंगजियन को अपना गुरु स्वीकार किया था तो यह उसकी सुंदरता के कारण था, और केवल 100 वर्षों से अधिक समय तक सहन करने के बाद ही उसके इरादे उठे, जिससे वह लगातार उसका पीछा करने लगा। अतः पुनर्जन्म लेकर वर्तमान में वापस आने पर यह शब्द कहना वास्तव में बिल्कुल भी झूठ नहीं था। पहली नज़र में प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये तो 100 साल पहले सुंदरता के प्रति आकर्षित होने के बाद उसके इरादों में आई तेजी मात्र थी। हालांकि वह और जियांग लिंगजियन अपने पिछले जीवन में हजारों वर्षों तक एक साथ रह चुके थे और उनके बीच बहुत पहले ही भावनाएं विकसित हो चुकी थीं, इसलिए अब स्वाभाविक रूप से यह पूरी तरह से सुंदरता के बारे में नहीं हो सकता था। इसके बजाय यह भावनात्मक लगाव के साथ उसकी सुंदरता की इच्छा बन गई थी। वांग चेन की बातें सुनकर जियांग लिंगशियान उसके सामने बैठी हुई दंग रह गई। उसकी स्पष्ट और सुंदर आंखें वांग चेन को घूर रही थी, उसके पतले होंठ हिल रहे थे, लेकिन वह लंबे समय तक बोल नहीं सकी। जियांग लिंगक्सियन का सीपीयू, जो क्रैश हो गया था, सफलतापूर्वक पुनः चालू होने से पहले 10 सेकंड से अधिक समय तक अटका रहा। नहीं नहीं, मैं इस पर सहमत नहीं होऊंगा। जियांग लिंगशियान ने कुछ संयम प्राप्त करने के बाद शीघ्रता से बोलना शुरू किया, उसकी सामान्यतः स्पष्ट आवाज अनजाने में बहुत धीमी हो गई। इस समय जियांग लिंगशियन को अपने दिल में एक गहरा बोझ महसूस हुआ। वह बस वांग चेन के साथ गुरु शिष्य का रिश्ता बनाए रखना चाहती थी, लेकिन क्यों उसके पिछले जीवन में और अब वांग चेन उसे बार बार ये बताता रहा कि वह उसे पसंद करता है। जब वह बच्ची थी तब से उसके माता पिता ने उसे खाने की कोशिश की थी, इसलिए जियांग लिंगशियान अवचेतन रूप से उन लोगों का विरोध करती थी और उनसे डरती थी जो उसके करीब आते थे। जियांग लिंगशियान को वास्तव में यह नापसंद नहीं था कि वांग चेन उसे पसंद करता था। कभी कभी तो उसे गुप्त खुशी का हल्का सा एहसास भी होता था, क्योंकि इस तरह उसका शिष्य उसे छोड़कर नहीं जाता था। लेकिन उसने वांग चेन को अपना पति बनाने की हिम्मत नहीं की, वह अपने दिल में मनोवैज्ञानिक बाधा को कभी दूर नहीं कर सकी। जियांग लिंगजियन जानती थी कि वह मांग कर रही थी, दोनों चाहती थी, फिर भी वह मुआवजे के रूप में वांग चेन को केवल अंतहीन साधना संसाधन ही दे सकती थी। हालांकि एक पुरुष और एक महिला के बीच के मामलों के बारे में उसने उसे लटका रखा था, खुद को उसका गुरु बताकर, जो वांग चेन के लिए बहुत स्वार्थी होगा। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वांग चेन उसे छोड़कर चला जाए। अगर ये सच में स्वार्थी है तो स्वार्थी ही रहने दो। कोई बात नहीं, मैं तो बस तथ्य बता रहा हूँ। अभी आपको सहमत होने की जरूरत नहीं है और आप बोझिल महसूस न करें। वांग चेन ने खाना खत्म किया, चॉपस्टिक नीचे रखी और मुंह पोंछा। बातचीत धीरे धीरे खत्म होने लगी। क्यों, वर्तमान शिष्य मेरी यादों में मौजूद शिष्य से इतना अलग क्यों है? जियांग लिंगक्सियन ने अपना सुंदर चेहरा थोड़ा नीचे कर लिया। अपने पिछले जीवन में वांग चेन और वर्तमान वांग चेन के बीच के अंतर को याद करते हुए वह बेहद व्याकुल महसूस कर रही थी। कमरे का माहौल धीरे धीरे भारी होता गया। वांग चेन ने जियांग लिंगजियन को देखा और एक पल के लिए लापरवाही से बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये लो, ये साधना तकनीक और साधना संसाधन। अगर तुम मुझे अपना गुरु नहीं भी बनाना चाहो तो भी कोई बात नहीं। जियांग लिंगक्सियन धीरे से खड़ी हुई, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और उसने मेज पर रखी खेती तकनीक और भंडारण की अंगूठी को वांग चेन की ओर धकेल दिया। तभी जियांग लिंगजियन अपनी सीट से उठी और दरवाजे की ओर चलने लगी। आप कहाँ जा रहे हैं? वांग चेन स्तब्ध था, सोच रहा था क्या उसकी बातें जियांग लिंगजियान को ज्यादा चुभ गई होंगी, क्या अब वह उसे छोड़ देगी। चरमराहट, दुर्भाग्य से जियांग लिंगजियन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस दरवाजा खोलकर चली गई और हवा के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इस सिस्टम के अवलोकन के आधार पर वह निश्चित रूप से इस समय दुखी है, क्योंकि आपके वर्तमान कार्यकलाप पिछले जन्म में जब आप उससे पहली बार मिले थे उससे बिल्कुल भिन्न हैं। अपने पिछले जन्म में आप अभी भी आज्ञाकारी थे और मीठी बचकानी आवाज में मास्टर मास्टर पुकारते थे। यह क्या आप उस मीठी बचकानी आवाज वाले वर्णन को बदल सकते हैं? ये बिल्कुल सामान्य था, ठीक है। लेकिन वांग चेन ने अपने पिछले जीवन के बारे में ध्यान से सोचा और महसूस किया कि यह वास्तव में ऐसा ही था। आखिरकार उसका पुनर्जन्म हुआ था, इसलिए वह मूल पथ का अनुसरण तो नहीं कर सकता था, है ना? सिस्टम, मुझे बताओ, क्या मुझे उसे संकेत देना चाहिए, जानबूझकर या अनजाने में, कि मेरा भी पुनर्जन्म हुआ है, और उसे थोड़ी सी मिठाई देनी चाहिए? फिर जब वह मुझसे पूछताछ करने आएगी तो मैं मूर्ख बन जाऊंगा और मासूम बनने का नाटक करूंगा। मेरे साथ उसकी परिचितता के कारण वह निश्चित रूप से बिंदुओं को जोड़ेगी और महसूस करेगी कि मैं इस पूरे जीवन में दिखावा कर रहा हूं, वास्तव में मैं गुरु शिष्य संबंध को तोड़ना चाहता हूं। अन्यथा अगर उसे मनोवैज्ञानिक रूप से आश्वस्त करने वाली जानकारी दिए बिना ऐसा जारी रहा तो मुझे सचमुच डर है कि वह भटक जाएगी और टूट जाएगी। वांग चेन ने मेज पर बचे हुए भोजन को देखा, लेकिन उसका दिमाग लगातार यह सोच रहा था कि क्या किया जाए। जियांग लिंगशियान ने पिछली दो रातों में जब उसे गले लगाया और उसे न छोड़ने के लिए रोई, तो उसने जो बहुत कुछ कहा उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है। जियांग लिंगक्सियन का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और वह बहुत दयनीय लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगर वह उसे छोड़ देगा तो वह मर जाएगी। वांग चेन थोड़ा डरा हुआ था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या जियांग लिंगक्सियन एक अंधेरे बन जाएगा? मेजबान, आप बहुत ही षड्यंत्रकारी हैं, लेकिन क्या आप वाकई यह उजागर करना चाहते हैं कि आपका भी पुनर्जन्म हुआ है? मैं पहले इसका संकेत दूंगा, उसे खुद ही रिक्त स्थान भरने दूंगा और फिर सही समय आने पर स्वीकार करूंगा कि मेरा भी पुनर्जन्म हुआ है। वांग चेन को पता था कि जियांग लिंगक्सियन जैसी असुरक्षित व्यक्ति के लिए केवल पर्याप्त चतुर रणनीति ही उसे आगे बढ़ा सकती है। अपनी योजना पर विचार करने के बाद वांग चेन ने आखिरकार कमरे में सब कुछ देखा। वहां सिर्फ ठंड और वीरानपन था। वहां सिर्फ एक बिस्तर, एक मेज, एक कुर्सी और एक किताबों की अलमारी थी और कुछ नहीं। यहां तक कि दीवारें भी एकदम साफ सफेद थीं। जियांग लिंगक्सियन, ये व्यक्ति पुनर्जन्म के बाद भी वैसा ही था और एकमात्र परिवर्तन संभवतः उसके प्रति था। ये देखकर कि देर हो चुकी है, वांग चेन ने मेज से खेती तकनीक और भंडारण अंगूठी उठाई और बिस्तर पर बैठ गया। डिंग, धधकते सूर्य की पवित्र कला संत ग्रेड उच्च स्तरीय साधना तकनीक को 10,000 मूल बिंदुओं में परिवर्तित किया जा सकता है। 10,000,000 मूल बिंदु 666,666। वांग चेन ने उसे परिवर्तित नहीं किया बल्कि साधना तकनीक को अपने भंडार में रख लिया। वह लिंगशियन द्वारा दी गई साधना तकनीक को परिवर्तित करने का साहस नहीं जुटा सका। पिछले जन्म में जियांग लिंगजियन ने उसे सम्राट स्तर की साधना तकनीक दी थी। इस जन्म में उसे नहीं पता था कि उसे संत स्तर की साधना तकनीक कहां से मिली। हालांकि इनमें से कोई भी उनकी जन्मजात साधना तकनीक अराजक नौ यांग दिव्य कला जितनी अच्छी नहीं थी। यह अवश्य जानना चाहिए कि सिस्टम ने कहा था कि अराजक नौ यांग दिव्य कला की कोई ऊपरी सीमा नहीं थी और इसका स्तर अत्यधिक ऊंचा था। साधना तकनीक ग्रेड पीला, गहरा, पृथ्वी, स्वर्ग, राजा, सम्राट, संत, सम्राट, अमर। सिस्टम, गणना करें कि स्टोरेज रिंग में इन सर्वोच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के कितने मूल बिंदु हैं। वांग चेन अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को भंडारण वलय में फैलाया और सर्वोच्च श्रेणी के आत्मिक पत्थरों के पहाड़ जैसे ढेर को देखकर दंग रह गया। डिंग, 1536, 487 सर्वोच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। प्रत्येक सर्वोच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की कीमत 10,000 है, जिसका कुल मूल्य है 15,364,870,000 मूल अंक। 15 अरब से अधिक मूल अंक, बच्चे, ये तुम्हारा पूरा जीवन काल है, तुम तुच्छ मेजबान। और यह बिल्कुल सही रकम है। क्या जियांग लिंगशियन ने तुम्हें अपने सभी बेहतरीन स्पिरिट स्टोन दे दिए हैं जो उसने इस जीवन में जमा किए हैं? वांग चेन ने सिस्टम के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया और सिस्टम द्वारा प्रदर्शित संख्याओं की अविश्वसनीय रूप से लंबी श्रृंखला को घूरता रहा। क्या जियांग लिंगजियन इस जीवन में पागल हो गया है? मुझे ये सभी सर्वोच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर दे रहा है। जब वांग चेन को होश आया तो वह अविश्वसनीय रूप से हैरान रह गया। उसने अपने पिछले जीवन में इतने उच्च श्रेणी के आत्मिक पत्थर कभी नहीं देखे थे। सिस्टम सही था, इतने सारे सर्वोच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर वास्तव में उसके पूरे पिछले जीवन का प्रतिनिधित्व करते थे। सामान्य उसे शायद डर है कि आप उन आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों द्वारा पेश की गई विभिन्न शर्तों से लुभा जाएंगे। तो अब उसने शायद अपने परिवार की पूरी संपत्ति खर्च कर दी है, वह भी तुम्हें रखने के लिए। मेरे प्यारे मेजबान, क्या आप इन्हें ओरिजिन पॉइंट्स में बदलना चाहेंगे? इस तरह आप बहुत सी चीजें खरीद सकते हैं। दफा हो जाओ, कोई धर्मांतरण नहीं। वांग चेन, जो पहले काफी शांत था, अब इन सर्वोच्च श्रेणी के आत्मा पत्थरों को देखने के बाद थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस करने लगा। वांग चेन ने स्टोरेज रिंग अपनी अनामिका उंगली पर पहन ली। फिर वह बिस्तर पर लेट गया जो ठंडी हल्की सुगंध से भरा हुआ था और उसने अपने सिर पर रजाई खींच ली। रजाई की परिचित स्वच्छ सुगंध को सूंघकर वांग चेन को अंततः अधिक सहजता महसूस हुई और उसके मन में उसके पिछले जीवन के कई दृश्य उभरने लगे। इस शांत वातावरण में वांग चेन ने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर ली। कमरे का माहौल काफी देर तक शांत रहा। चरमराहट। रात के उत्तरार्ध तक कमरे का दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज सुनाई नहीं दी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वांग चेन को या तो कोई नशा दिया गया था या कुछ और। वह गहरी नींद में सो रहा था, उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। सुबह जागने पर वांग चेन जल्दी से उठकर बैठ गया। उसकी आंखें खाली कमरे को देख रही थी। धिक्कार है, कल रात मैं सचमुच अपनी चिड़चिड़ी अवस्था में ही सो गया। सोच रहा हूँ कि क्या जियांग लिंगजियन कल रात आया था। वांग चेन ने दोनों हाथों से अपना सिर खुजलाया और खामोश कमरे को देखकर उसे गुस्सा आ गया। सिस्टम, क्या भाग्य के बच्चे का कोई सौभाग्यपूर्ण सामना है जिसे मैं अभी छीन सकता हूँ। वांग चेन इस बात से कुछ हद तक चिढ़ गया था कि वह जियांग लिंगक्सियन के साथ अपने रिश्ते को कैसे संभाल रहा था और उसने उसका ध्यान हटाने के लिए भाग्य के बच्चे के साथ आकस्मिक मुलाकात को छीनने का फैसला किया। बहुत सारे हैं, लेकिन वे सभी दूसरी जगहों पर हैं। ताइजू अमर संप्रदाय में कोई नहीं है। अब आप संप्रदाय नहीं छोड़ सकते, है ना? तो तुम्हें अगले कुछ दिन आराम करना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। अब से 7 दिन बाद ताइजू अमर संप्रदाय में एक बड़ी घटना घटने वाली है। उस समय यही मूल कारण होगा कि आपने जियांग लिंगजियांग के कारण अपने पिछले जीवन में उन भाग्य के बच्चों के साथ लगातार शत्रुता बनाई। सिस्टम के शब्दों को सुनकर वांग चेन को अचानक अपने पिछले जीवन की एक बड़ी घटना याद आ गई, जो कि भाग्य के कई बच्चों के साथ उसकी दुश्मनी से संबंधित थी। आह, छोड़ो भी, जियांग लिंगजियन को पता ही नहीं कि वो कहाँ भाग गई, इसलिए यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने कमरे में वापस चली जाऊंगी। वांग चेन ने अपने दाहिने हाथ की ओर देखा, जो आध्यात्मिक ऊर्जा पट्टियों से ढका हुआ था, और उसने उन सभी पट्टियों को उतारकर दूर रख दिया। वह मूल रूप से जियांग लिंगजियांग के कारण इस कमरे में सोना चाहता था। अब जबकि जियांग लिंगजियांग वापस नहीं आ रहा था, तो उसने अब और दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। वांग चेन उठकर दरवाजे की ओर चल पड़ा और वापस जाकर स्नान के लिए गर्म पानी उबालने की योजना बना रहा था। मुख्य कारण ये था कि उसके कपड़ों का खून से सना हिस्सा जियांग लिंगक्सियन द्वारा काट दिया गया था, जिससे दाहिना हिस्सा कुछ फटा हुआ था। इसलिए वांग चेन ने वापस जाने, कुछ गर्म पानी उबालने, स्नान करने और अपने कपड़े बदलने का फैसला किया। और फिर वह आज रात सारा बिस्तर साथ ले आएगा, ताकि जियांग लिंगक्सियन को आधी रात में उसे ढूंढने के लिए लंबी दूरी तक दौड़ने की परेशानी से बचाया जा सके। आह, मैं अब भी बहुत ज्यादा विचारशील हूँ। वही है जिसने मुझे हर रात अपमानित किया, फिर भी मुझे अब भी इस बात की चिंता है कि उसे थोड़ा और भागना पड़ेगा। वांग चेन इस विचार पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। फिर उसने अपने सामने का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। चरमराहट। हालांकि दरवाजा अचानक पहले खोला गया और वांग चेन अपने हाथ ऊपर उठाए वहीं जम गया। उसने अभी अभी आध्यात्मिक ऊर्जा की पट्टियां हटाई थी और अब जियांग लिंगक्सियन वापस आ गया था। ये कैसा समय था? आप कहाँ जा रहे हैं? जियांग लिंगक्सियन अब तक अपनी सामान्य अभिव्यक्ति वापस पा चुकी थी, दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसकी पतली भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, उसकी निगाहें शांत भाव से वांग चेन पर टिकी हुई थी। मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने देखा कि तुम कल वापस नहीं आए और मुझे डर था कि तुम मुझे नापसंद करते हो, इसलिए मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। वांग चेन ने अपनी कठोर अभिव्यक्ति को सीधा किया और इस तरह से बोला कि कोई भी उसका असली मतलब समझ सकता था। वापस जा रहे हो? क्या तुम्हारे हाथ की चोट ठीक हो गई है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम यहीं आराम करने वाले हो? जैसे ही जियांग लिंगक्सियन ने बात की, उसकी नजर वांग चेन की दाहिनी बांह पर चली गई और उसके शब्द जल्दी से उसके गले में अटक गए। एक क्षण के लिए अंदर वाला व्यक्ति और दरवाजे के बाहर वाला व्यक्ति दोनों अंतहीन सन्नाटे में डूब गए। हाँ, मेरी चोट ठीक हो गई है। कल आपने जो तकनीक बताई थी, मैंने उसे अपनाया और मैं बहुत जल्दी ठीक हो गया। ओह, और यह अंगूठी वापस ले लो। वांग चेन ने अपनी बाई अनामिका से स्टोरेज रिंग उतारकर जियांग लिंगक्सियन की ओर बढ़ाते हुए कहा, जो दरवाजे के बाहर खड़ा था। वह पूर्ण और आंशिक उच्च श्रेणी के आत्मिक रत्नों को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सका। वह उन्हें वहन नहीं कर सकता था। अगर वह उन्हें ले लेता तो वह जियांग लिंगक्सियन का ऋणी महसूस करता। हालांकि दरवाजे के बाहर जियांग लिंगक्सियन ने इसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, इसके बजाय उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी हो गई। वांग चेन को तुरंत ही आसपास की हवा का तापमान कई डिग्री गिरता हुआ महसूस हुआ। जियांग लिंगक्सियन तो मानो एक इंसानी एयर कंडीशनर था। क्या तुम अब मुझसे इतनी बुरी तरह से संबंध तोड़ना चाहते हो? जियांग लिंगक्सियन की ठंडी आंखें वांग चेन को घूर रही थी। उसकी आवाज बर्फीली और कुछ हद तक दबी हुई थी। उसकी आंखों में खतरे का एक हल्का सा भयावह भाव था, मानो वह वांग चेन को पूरा निगल जाना चाहती हो। नहीं नहीं नहीं, नाराज मत हो, मैं पहनूंगी। वांग चेन चौंक गया और जियांग लिंगक्सियन के गुस्से के डर से चुपचाप स्टोरेज रिंग को अपनी बाई अनामिका पर वापस पहन लिया। हे भगवान, अब उसे समझ आ गया। जियांग लिंगक्सियन ने इस जीवन में जरूर कुछ खास गुण विकसित किए थे। मैं आज रात यहीं सोऊंगा। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो वापस चले जाओ। जियांग लिंगक्सियन ठंडे स्वर में वांग चेन के पास से गुजरा, बिना पीछे देखे बोला, जो एक बहुत ही गर्व और स्पष्ट संकेत था। ओह ठीक है परी बहन, मैं अब चलता हूँ। अप्रत्याशित रूप से वांग चेन को इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आई, जैसे कि वह इसका अर्थ नहीं समझ पाया हो, और दरवाजे से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। क्योंकि उसने पहले ही आज रात अपने बिस्तर के साथ वापस आने की योजना बना ली थी, भले ही जियांग लिंगक्सियन ने इस समय कुछ भी कहा हो। एक पल इंतजार करें। जैसे ही वांग चेन जाने वाला था, जियांग लिंगक्सियन ने अचानक फिर से बात की और उसे पीछे से रुकने के लिए कहा। यह क्या है, मुझे आपकी चोट की दोबारा जांच करने दीजिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह पूरी तरह से ठीक हो गई है और बाद में किसी भी छिपी हुई चोट को रोका जा सके। ये सुनकर वांग चेन की भौहें तन गईं और वह अनिच्छा से पीछे हटने लगा और दहलीज पार करके कमरे में वापस चला गया। अपनी साधना से आप स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि मेरी बांह एक ही नज़र में पूरी तरह से ठीक हो गई थी, तो आपको देखने के लिए पास आने की क्या ज़रूरत थी। आह ठीक है, देखना है तो देखो। वांग चेन ने चुपके से उसकी छोटी सी चाल के बारे में शिकायत की, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उसके पास गया और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। हम नहीं, अगर वह इस तरह से सोचता तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि जियांग लिंगक्सियान को कल ही पता चल गया था कि उसकी चोट ठीक हो गई है। वांग चेन अचानक घबरा गया। अगर जियांग लिंगक्सियान की यह छोटी सी चाल खामियों से भरी थी तो उसकी अपनी चाल का क्या होगा। इन तार्किक संबंधों के बारे में सोचते हुए वांग चेन अपना चेहरा तेजी से घुमाने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी नज़र उसके बगल में जियांग लिंगक्सियान पर पड़ी। हालांकि इस समय जियांग लिंगक्सियान केवल चुपचाप उसके दाहिने हाथ को देख रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे घूम रही थीं, मानो वह गहरे विचार में डूबी हो। वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन को बगल से देखा। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। उसका चेहरा गुलाबी रंग के साथ गोरा था और वह एक पल के लिए थोड़ा चकित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। अभी अभी उसने जो तर्क दिया था उसके अनुसार उसकी चोट कल ही पूरी तरह से ठीक हो सकती थी, भले ही उसने उसे साधना तकनीक न दी हो। वह वास्तव में इन सभी दिखावों के बारे में जानती थी, लेकिन उसने उसका पर्दाफाश क्यों नहीं किया। ये प्यार है .jpg। इस समय सिस्टम अचानक सामने आया और वांग चेन के सामने एक विशाल इमोजी प्रदर्शित किया जो ध्वनि प्रभाव के साथ पूरा था। मेरी गांड से प्यार करो। अपने हजारों वर्षों के अनुभव के आधार पर कल जाने के बाद से ही वह मेरी पहचान का अनुमान लगा रही होगी। जियांग लिंगक्सियन शायद ये पुष्टि कर रहा था कि क्या मेरा भी पुनर्जन्म हुआ है, या वह इस बात की पुष्टि कर रही थी कि क्या यह उसके पुनर्जन्म के कारण था कि उसकी यादों में वांग चेन बदल गया था, जिसका अर्थ था कि मैं बदल गया था। ओह मुझे पता है, ऐसा लग रहा है जैसे जियांग लिंगक्सियन ने सोचा हो कि उसका पुनर्जन्म किसी दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में हुआ है। और तुम्हारी बुद्धि अचानक कैसे वापस आ गई, बेकार मेजबान। धिक्कार है, पिछले कुछ दिनों से मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। क्या कोई सचमुच ये दिखावा कर सकता है कि वह उस व्यक्ति को नहीं जानता जिसके साथ उसने हजारों वर्ष बिताए हैं। आखिरकार दूसरे लोग मूर्ख नहीं हैं, वे विचार से रहित नहीं हैं। वांग चेन ने अब चाहा कि वह खुद को थप्पड़ मारकर जगा सके और जल्दी से जियांग लिंगक्सियन के सामने से अपना दाहिना हाथ वापस खींच लिया। था दैट, क्या तुमने देखना बंद कर दिया? मेरी चोट बिल्कुल ठीक है, मैं अब चलता हूँ। वांग चेन के चेहरे पर थोड़ी अकड़न थी। तर्क स्पष्ट करने के बाद अब वह चाह रहा था कि काश वह कूड़ेदान में घुस जाता। धप धप धप, जैसे ही वांग चेन के कदम धीमे हो गए, केवल जियांग लिंगक्सियन ही कमरे में रह गई। उसकी निगाहें गहरी थीं क्योंकि वह उसके पीछे हते हुए आंकड़े को देख रही थी। करीब से निरीक्षण करने पर जियांग लिंगक्सियन की आंखों में जब वह वांग चेन की पीठ को देख रही थी तो जांच और अनिश्चितता का आभास हुआ। अल्पविराम। ताइजू अमर संप्रदाय के हलचल संप्रदाय रोड पर वांग चेन अपने कमरे में वापस चले गए और जियांग लिंगक्सियन से निपटने की रणनीति पर सावधानीपूर्वक विचार करने लगे। और उसके निफान साथी को उसे जल्दी से मारने और उसके भीतर दानव भगवान की शेष आत्मा को परिष्कृत करने का अवसर खोजने की जरूरत थी। अन्यथा ये निश्चित रूप से उसके हरम की महिलाओं की प्रमुख शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ये बात वांग चेन को गहराई से मालूम थी क्योंकि भाग्य के बच्चे के रूप में उसके हरम के प्रभाव की कभी कमी नहीं होती थी। तुम ही वह बुरे आदमी हो जिसकी वजह से मेरे छोटे भाई किन को अपना एक हाथ खोना पड़ा है ना। वांग चेन, जो अपने सिर को नीचे झुकाए हुए आसपास की निगाहों को अनदेखा करते हुए चल रहा था, अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई जो रुक गई और भौहें चढ़ाते हुए उस पर चिल्लाने लगी। जिस क्षण वांग चेन ने यह सुना, वह सामान्य बुद्धि से जान गया कि किन येफान के लोग परेशानी पैदा करने आए थे। उसने अभी सोचना समाप्त ही किया था कि अगले ही पल किन येफान की हरम की महिला दौड़कर आई, जिससे वांग चेन अवाक रह गया। क्या तुम उसके लिए खड़े होना चाहते हो? वांग चेन ने अपना रास्ता रोके हुए हरे कपड़े पहने महिला को देखा। उसकी सिकुड़ी हुई भौहों में हत्या का इरादा प्रकट हो रहा था। उसकी हथेली थोड़ी सी हिल रही थी। जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं बल्कि जियांग युएलिन था, जो पिछले जीवन में वांग चेन के खिलाफ घात लगाने वाले व्यक्तियों में से एक था। उन्हें भाग्य की बेटी भी माना जा सकता है और उनकी पहचान किन येफान की वरिष्ठ बहन थी। वांग चेन ने गुप्त रूप से उसकी आभा का अवलोकन किया। उसकी साधना वर्तमान में बिल्डिंग स्पिरिट दायरे की 9वीं परत के आसपास थी। पा, तुम तो बस एक कड़ा ही हो जो सिर्फ औरतों पर निर्भर होकर जिंदा रह सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसी नजरों से देखने की? जियांग युलिन अपने हाथों को कमर पर रखे वांग चेन को घमंड से घूरती हुई खड़ी थी। उसकी आंखें उसके शरीर के प्रति तिरस्कार से भरी हुई थीं। एक क्षण के लिए आसपास के शिष्य, जो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे अपने कदम धीमे कर लिए और चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरे पैरों के बीच में आ जाओ और फिर अपना दाहिना हाथ तोड़ दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। अन्यथा अगर मैं कोई कदम उठाता हूँ तो यह इतना आसान नहीं होगा। जियांग युलिन का कुछ भोला और मीठा चेहरा वांग चेन को ठंडेपन से घूर रहा था और उसने अपनी टांगों के बीच उंगली बढ़ाकर इशारा किया। इस समय जियांग युएलिन में अभी भी एक लाडली युवती का स्वभाव था। वांग चेन को याद आया कि बाद के चरणों में किन येफान द्वारा उसे धीरे धीरे अनुशासित किया गया था। ओह ठीक है, मैं आपको बताना भूल गया, अन्य लोग ताइजू अमर संप्रदाय की संत से डर सकते हैं, लेकिन मेरा जियांग परिवार शक्तिशाली है और डरता नहीं है। तो बेहतर होगा कि आप ईमानदारी से घुटने टेकें और रेंगते हुए आगे बढ़ें। एक कड़ाही का शरीर सिर्फ एक कड़ाही का शरीर है, अपनी जगह पहचानें। ये शब्द कहने के बाद जियांग युलिन ने शांत वांग चेन की ओर देखा, जैसे कि उसने कुछ और सोचा हो और कुछ और कहा। आसपास के शिष्य, जो अस्पष्ट रूप से उसकी बातें सुन रहे थे, वे एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। संत का शिष्य अब बड़ी मुसीबत में है, उसके जाते ही संप्रदाय के बाहर का शक्तिशाली जियांग परिवार उसे निशाना बना लेगा। हाँ, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? सीनियर सिस्टर जियांग ने वास्तव में उसे अपनी टांगों के बीच में आने को कहा था और उसने स्कर्ट पहन रखी है। यह इतनी अच्छी बात है, क्या मैं उसकी जगह ले सकता हूँ? वे सब कहते हैं कि आदमी के घुटने सोने के बराबर होते हैं, तुम यहाँ से हट जाओ, मैं तो अपंग हूँ, बेहतर होगा कि मैं ऐसा कर लूँ। आसपास के शिष्यों की फुसफुसाहट और बकबक की आवाजें लगातार आपस में मिल रही थी, लेकिन उनमें से अधिकांश बहुत धीमी आवाज में बोल रहे थे। क्या आपकी बात खत्म हो गई? वांग चेन ने जियांग युएलिन से मिलने के लिए अपनी नजर को थोड़ा ऊपर उठाया। उसका दाहिना पैर और दाहिना हाथ गुप्त रूप से शक्ति जमा करना शुरू कर दिया, अराजकता की एक परत से ढका हुआ। मैं, जियांग युलिन ने वांग चेन की अत्यंत ठंडी निगाहों से मुलाकात की और एक पल के लिए उसके भीतर अनायास ही भय की भावना पैदा हो गई। हालांकि एक बार जब उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो वह तुरंत क्रोध और शर्मिंदगी से घूरने लगी, यहां तक कि उसने वांग चेन की आंखें नोचने की कोशिश भी की। लानत है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मुंह दिखा रहा हूं? वांग चेन का दाहिना हाथ अराजक आध्यात्मिक प्रकाश से चमक उठा, बिजली की गति से प्रहार करते हुए मध्य हवा में ध्वनि बूम पैदा कर रहा था। थप्पड़। वांग चेन के जानलेवा थप्पड़ ने जियांग युलिन के सुंदर बाएं गाल को तुरंत विकृत कर दिया, जिससे वह खून से लथपथ और क्षत विक्षत हो गया। जियांग युलिन ने वांग चेन की हरकत भी नहीं देखी, केवल अपनी पूरी चेतना को बेतहाशा घूमते हुए महसूस किया। वांग चेन का जियांग युएलिन से निपटना, जिसके पास वर्तमान में कोई युद्ध अनुभव नहीं था और जो केवल साधना करना जानता था, एक कुत्ते को मारने जैसा था। उसकी नजर में वांग चेन सिस्टम द्वारा उसकी आभा को छुपाने के बाद शमन शरीर क्षेत्र की 9वीं परत पर था, लेकिन वास्तव में वह बिल्डिंग स्पिरिट क्षेत्र की 9वीं परत के शिखर पर था। इसके अलावा ये थप्पड़ एक अमानवीय अचानक किया गया हमला था जो निश्चित रूप से वार करेगा। सिद्धांत रूप में वांग चेन महिलाओं को नहीं मारता था, लेकिन सिद्धांत मर चुके थे और लोग जीवित थे। भाड़ में जाओ। इस समय वांग चेन के दाहिने पैर ने भी शक्ति संचित करना समाप्त कर दिया था। उसके दाहिने पैर पर एक अराजक ज्वाला भड़क उठी और प्रज्वलित हो गई और उसने उसे भयंकर रूप से बाहर निकाल दिया। धम्म। हालांकि ये लात अचानक एक बूढ़े आदमी के हाथ से पकड़ी गई जो कहीं से प्रकट हुआ और हिंसक रूप से पीछे फेंक दी गई। तुम बहुत दूर चले गए। बूढ़े आदमी ने वांग चेन की ओर देखा, जो जियांग युलिन पर उसके सार्वजनिक हमले से नाखुश होकर कुछ कदम पीछे हट गया। आपकी पहचान क्या है? वांग चेन कुछ कदम पीछे हटकर दृढ़ खड़ा हो गया, फिर उसने अपना शरीर सीधा किया और बूढ़े आदमी को घूरते हुए दुखी भाव से पूछा। मैं ताइजू का एक बाहरी संप्रदाय का बुजुर्ग हूँ। क्या आप सोचते हैं कि आप कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं? एक बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग ने मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत की। मेरे गुरु ताइजू अमर संप्रदाय की संत हैं, क्या आपको विश्वास है कि मैं अपने गुरु से आपके साथ सौदा करवाऊंगा? ये सुनकर वांग चेन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह सामने वाले दो लोगों के करीब कुछ कदम बढ़ा, गुस्से से ताइक्सू सेंटेस हॉल की दिशा में इशारा करते हुए चिल्लाया। वांग चेन पहले से ही जियांग लिंगक्सियन के साथ अपने भावनात्मक उलझाव से परेशान था और जियांग युएलिन एक आदर्श पंचिंग बैग था। और तो और, मुसीबत की शुरुआत उसने नहीं की थी, जियांग युलिन तो पिटाई की भीख मांग रहा था। अगर उसने कोई कदम नहीं उठाया तो क्या उसे यूं ही मार सहन करनी चाहिए थी? क्या क्या बूढ़े व्यक्ति जिसकी ठोड़ी पर सफेद दाढ़ी थी, वांग चेन की टिप्पणी सुनकर अपने शब्दों पर अकड़ गया। उसकी सफेद दाढ़ी कांप रही थी। वह हाल ही में एकांतवास से बाहर आया था और उसे वांग चेन के कृत्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब वांग चेन को ये कहते हुए सुनकर कि मेरे गुरु ताईजू अमर संप्रदाय की संत हैं, वह पूरी तरह से चकित हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे आंतरिक और बाहरी शिष्य ये सब देख रहे थे, लेकिन उनमें से एक भी इस आदमी को रोकने के लिए आगे नहीं आया। इस बिंदु पर बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग का दिल कांपने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतने युवा पूर्वज को इतनी सहजता से उकसाएगा। यदि ताईजू संत सचमुच उससे निपटना चाहती हैं, तो यह वास्तव में एक शब्द का मामला होगा, एक ऐसा शब्द जो बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग के रूप में उनकी स्थिति को प्रतिस्थापित कर सकता है। आखिरकार चाहे साधना की दुनिया हो या ताईजू अमर संप्रदाय, ताकत और पृष्ठभूमि सर्वोपरि थी, और जियांग लिंगक्सियन ताकत और पृष्ठभूमि दोनों के संदर्भ में ताईजू अमर संप्रदाय में बेहद शक्तिशाली था। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया, बस मुझे कुछ भावनात्मक और समय की हानि की भरपाई कर दो, बस। वांग चेन ने अपना थोड़ा सुन्ना दाहिना हाथ हिलाया, फिर अपनी बाहें मोड़ ली और चुपचाप उन दोनों की ओर देखा। इस समय जियांग युएलिन, जो कुछ कदम लड़खड़ा गई थी, उसके चेहरे से बहुत खून बह रहा था और जिसका सिर भिनभिना रहा था, धीरे धीरे होश में आई। उसकी आंखें, जो अत्यधिक शिकायत और आक्रोश से भरी थी, वांग चेन पर भयंकर रूप से घूर रही थी, जिसने अपनी बाहें पार कर रखी थी। और फिर अचानक, वाह, वो जियांग युलिन की आंखें पहले से ही बह रही थीं और वह वाह कहकर फूट फूट कर रोने लगी और अपने आंसू पोंछते हुए ताईजू तलवार लाल चोटी की दिशा में भाग गई। इस समय ताईजू अमर संप्रदाय के इस संप्रदाय मार्ग के चारों ओर शिष्यों ने जल्दी से एक रास्ता साफ कर दिया और यह पूरी तरह से शांत हो गया। वांग चेन ने शुरू में सोचा था कि होश में आने के बाद वह परिणामों की परवाह किए बिना उसे मारने के लिए अपने छिपे हुए तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल करेगी, लेकिन इसके बजाय ये था नहीं। क्या ये सही है बच्चे? अब न केवल वांग चेन हतप्रभ थी, बल्कि बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग जिन्होंने उसकी रक्षा की थी भी स्तब्ध थे और जल्दी से आसपास के वातावरण को देखा। हालांकि उसकी निगाहों से घिरे सभी दर्शक सहज रूप से थोड़ा पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें भी अपराधी मान लिया जाएगा। आखिरकार ताईजू संत का नाम ताईजू अमर संप्रदाय में संप्रदाय मास्टर के बाद दूसरे स्थान पर था, जो एक पुराने पूर्वज द्वारा संरक्षित था। सामान्यतः संत हानजून की शिष्या थी, जो अनुमानतः उन्हें आधा पुराना पूर्वज बनाती थी, और वांग चेन संतति का शिष्य था, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह आधा संतति था। शिष्यों ने ताली बजाए और गणना की, और इससे भी अधिक अनुमान लगाया कि क्या इससे वांग चेन आधा पुराना पूर्वज नहीं बन गया। तो पूरे ताईजू अमर संप्रदाय में कौन सा शिष्य अपने इस युवा पूर्वज को भड़काने की हिम्मत करेगा? और इस समय बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग ने ये देखकर कि जियांग युएलिन वास्तव में उस तरह भाग गया था, खुद को अचानक अलग थलग और असहाय पाया। जो लोग बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग के पद तक पहुंच सकते थे, न तो ऊंचे और न ही निचले, वे सभी चतुर व्यक्ति थे, और इससे वह इतना डर गया कि वह जल्दी से चापलूसी भरे भाव के साथ वांग चेन के पास पहुंचा। खांसी खांसी, छोटे भाई, मैं अभी गलत था। ये किंग टी गोलियां हैं जिन्हें मैंने पहले किसी से रिफाइन करके रखवाया था। देखो, वांग चेन ने बूढ़े आदमी की ओर देखा, जिसने अचानक अपना व्यवहार बदल दिया था। भौहें उठाई, बिल्कुल अवाक महसूस किया और चुपचाप अपनी छाती की कमीज खोल दी। ओह, ये राजा स्तरीय गोली अचानक एक मास्टर को कैसे पहचान गई? हाय, ये सचमुच मेरा नहीं था, आखिरकार यह मेरा नहीं था। बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग ने वास्तव में हद कर दी। उन्होंने दवा की बोतल को जबरदस्ती वांग चेन की कमीज में ठूंस दिया और जोर देकर कहा कि औषधीय गोली ने उन्हें अपना स्वामी चुना है। यह मेरी सबसे कीमती वस्तु है। संत आमतौर पर काफी व्यस्त रहती हैं, इसलिए कृपया उन्हें और परेशान न करें। आह, ठीक है। वांग चेन ने उस बुजुर्ग की ओर देखा जो पास झुककर ऐसी आवाज में बोल रहा था जिसे केवल वे ही सुन सकते थे, और उसने अपना हाथ हिलाया। तभी बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग ने राहत की सांस ली, हालांकि उनका दिल बहुत दुख रहा था, लेकिन उसने इसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं की, बस बहुत खुश होने का नाटक किया। फिर उसकी नजर आसपास के शिष्यों पर पड़ी। ठीक है, तितर बितर हो जाओ, तितर बितर हो जाओ। बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग का चेहरा लाल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन शिष्यों और कुछ बुजुर्गों की निगाहें सुइयों की तरह लगातार उसे चुभ रही हों। आज के बाद बाहरी संप्रदाय में उसने जो प्रतिष्ठा अर्जित की थी, वह संभवतः धुएं में बदल जाएगी। उसका बूढ़ा चेहरा पूरी तरह से शर्मिंदा था। ये देखकर वांग चेन, जो पास में खड़ा था, चुपचाप अपनी शर्ट में रखी किंगटी औषधीय गोली को निकालकर चला गया। वांग चेन द्वारा बार बार नियमों का उल्लंघन पूरे ताईजू अमर संप्रदाय में फैल गया। इस बार अपने कमरे में वापस जाते समय किसी ने भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। वांग चेन सबसे पहले ताईजू खजाना रोब मंडप में गए और आदरणीय शिष्यों से कई ताईजू दाओवादी वस्त्र प्राप्त किए। इसके बाद वह उस कमरे में वापस आ गया जहां उसका पुनर्जन्म हुआ था और आराम से स्नान करने के लिए बाथरूम में चला गया। जब वांग चेन पुनः सामने आया तो उसकी हेयर स्टाइल उसके पिछले जीवन के महान सम्राट राज्य की अमर आदरणीय शैली में परिवर्तित हो चुकी थी, प्राचीन और सुंदर सुरुचिपूर्ण। साधना जगत में 1000 वर्ष बिताने के बाद से ही उन्हें लंबे प्राचीन शैली के बाल पसंद आने लगे थे जो एक अमर पूज्य के समान दिखते थे। इसके अलावा जब वे ब्लू स्टार में थे तब वे प्राचीन काल्पनिक उपन्यासों के प्रशंसक थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि जियांग लिंगशियान उसके परिचित रूप को देखकर कैसी प्रतिक्रिया देगा, वांग चेन अब इस पर विचार नहीं करना चाहता था। उसे जो भी प्रतिक्रिया देनी हो करने दो, वह वैसे भी थोड़ा थका हुआ था और यह जियांग लिंगजियान को संकेत देने का एक अनोखा तरीका भी था। वांग चेन बिस्तर की ओर चला गया, बिस्तर और अन्य वस्तुओं को व्यवस्थित करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके भंडारण स्थान ने सनसनी फैला दी। छोटे साथी, ऐसे 10,000 साल पुराने राक्षस का सामना करते हुए आप अभी भी जीवित हैं, बुरे नहीं हैं। वांग चेन के भंडार में रखी मनपड़ती सुनहरी टूटी तलवार से एक बूढ़ी जिद्दी आवाज आई। हे भगवान, अगर तुम नहीं बोलते तो मैं सचमुच तुम्हारे बारे में लगभग भूल ही गया होता। वांग चेन बिस्तर के पास खड़ा था। हे भगवान, शब्दों में अचानक एहसास का भाव था। उसने जल्दी से सोने की टूटी तलवार निकाली, फिर उसने उसे जमीन पर फेंका और बहुत जोर से उस पर कई बार पैर पटका। अरे अरे अरे, क्या तुम्हारे पास कोई नैतिकता है? तुम्हें बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए और युवाओं को संजोना चाहिए। बूढ़ों का सम्मान करो और युवाओं को संजोना, तुम क्या कर रहे हो? कमरे में टूटी हुई सुनहरी तलवार की आवाज गूंज रही थी, लेकिन वह अब भी पहले जैसी ही निर्लज थी, मानो उसे कोई दर्द ही न हो। ओह ठीक है, मैं लगभग भूल ही गया था कि तलवार से आत्मा पर प्रहार करने के लिए आपको प्रभावी होने के लिए आत्मा प्रकार के हमलों का उपयोग करने की आवश्यकता है। वांग चेन ने उसके अविचलित जिद्दी व्यवहार को सुना और तुरंत क्रोधित हो गया। यदि वह अपनी अंतिम लड़ाई के दौरान अचानक सोना गया होता, जिससे उसकी शक्ति अचानक समाप्त हो जाती, जबकि वह पूरी तरह से समन्वित था, वह घायल नहीं होता। और यह भी संभव था कि वह जवाबी हमला करके किन येफान को घायल कर देता जो दानव आदरणीय की आत्मा के अवशेष से ग्रस्त था। वांग चेन का दाहिना पैर आत्मा से उत्प्रोत हल्के सुनहरे अराजक आध्यात्मिक शक्ति की परत से ढका हुआ था। उसने अपना बड़ा पैर फिर से उठाया, वार करने के लिए तैयार। स्वर्ण टूटी तलवार, ये देखकर कि वांग चेन के पास वास्तव में आत्मा पर हमला करने के तरीके थे और वह गंभीर लग रहा था, तुरंत उठ गई। कोहनी जितनी लंबी सुनहरी टूटी तलवार जमीन से सीधी खड़ी हो गई और तेजी से छत की ओर उड़ गई। छोटे भाई, पिछली बार मेरा ऐसा मतलब नहीं था। बात बस इतनी सी थी कि मैं अभी कुछ देर पहले ही हथियारों के कब्रिस्तान से उठा था और मुझे सचमुच बहुत नींद आ रही थी। सोने की टूटी तलवार छत पर 2 बार घूमी। बोलने के बाद वह कुछ ही देर में स्पष्ट रूप से नीचे उतर आई। ऐसा नहीं था कि वह नीचे उड़ना चाहता था, बल्कि उसकी ऊर्जा निरंतर उड़ान बनाए रखने के लिए अपर्याप्त थी। वांग चेन कुछ कदम आगे बढ़ा। अब उसने उस पर पैर रखने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उसे उठा लिया। अरे ये तो ठीक है, युवाओं को अधिक सदाचारी होना चाहिए और सही ढंग से बोलना चाहिए। आराम करो, आराम करो, आराम करो, आराम करो, आराम करो। आह, युवा लोग अच्छे नहीं होते। जब मैं नहीं देख रहा होता तब वे मुझ पर घात लगाते हैं। वांग चेन ने तलवार पर पैर नहीं रखा, बल्कि उसने अपने दाहिने हाथ को अराजक आत्मा की लपटों से ढक लिया और तलवार के शरीर पर बिजली की गति से 5 वार किए। आह, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मारना बंद करो, मारना बंद करो। ये बूढ़ा आदमी तुम्हें हथियार कब्रिस्तान में हुई एक सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ के बारे में बता सकता है। हम, वांग चेन ने ये सुनकर अपनी हरकतें रोक दी और भौहें चढ़ाकर सोचने लगा कि क्या वास्तव में उसके पिछले जन्म में ताइजू सैन्य कब्रिस्तान में कोई सौभाग्यपूर्ण मुलाकात हुई थी। लेकिन उन्होंने बहुत देर तक सोचा, यहां तक कि सिस्टम से भी पूछा, लेकिन न तो उन्हें और न ही सिस्टम को इसका कोई आभास हुआ। ये संभवतः किन येफान की गुप्त सौभाग्यपूर्ण मुलाकात थी जिसे उसने अपने पिछले जीवन में नहीं खोजा था। मुझे इसके बारे में बताओ, अगर मुझे मांस का एक टुकड़ा मिलेगा तो तुम्हें सूप जरूर मिलेगा। वांग चेन ने असल में ज्यादा जोर से नहीं मारा था। अब सोने की टूटी तलवार के विषय से आकर्षित होकर वह धीरे धीरे रुक गया। ठीक है, पहले आपको मुझे किसी से मिलवाना होगा। सच में? ये देखकर वांग चेन ने अपने हाथ के पिछले हिस्से को फिर से ऊपर उठाया, अपनी बाईं आंख बंद की, अपनी दाहिनी आंख से निशाना साधा और अपनी हवाई हथेली से वार करने की योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया। मत करो, मत मारो, ये बूढ़ा आदमी तुम्हें बता देगा। वांग चेन की मुद्रा देखकर सुनहरी टूटी तलवार ने उसे जल्दी से रोक दिया। आखिरकार उसकी आत्मा के प्रहारों से चोट लगना काफी दर्दनाक था। ये बूढ़ा आदमी कई वर्षों से हथियार कब्रिस्तान में निष्क्रिय है। अपनी नींद के दौरान मुझे स्पष्ट रूप से एक लाल रंग के परिष्कृत सोने के झरने का आभास हुआ। आप इस ताई जू टूटी तलवार को, इस बूढ़े आदमी को, मेरे पद को बढ़ाने के लिए इसमें स्नान करने के लिए ले जा सकते हैं, और आप इसका उपयोग अपने शरीर को शांत करने के लिए भी कर सकते हैं। अपने हाथ में सुनहरी टूटी तलवार की बात सुनकर वांग चेन ने एक भान उठाई और उसके दिमाग में एक आकृति उभरी। अपने पिछले जीवन में ये किंग ने 7 दिन बाद बड़ी प्रतियोगिता के बाद ताइजू अमर संप्रदाय के बाहर प्रशिक्षण लेने का मिशन लिया था। जब वह ताइजू अमर संप्रदाय में वापस लौटा तो उसकी साधना न केवल गुई युआन क्षेत्र तक पहुंच गई थी, बल्कि उसने एक पृथ्वी स्तरीय लंबी तलवार भी प्राप्त कर ली थी। अंततः ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने ताइजू अमर संप्रदाय में कहीं से स्कारलेट रिफाइनिंग गोल्ड स्प्रिंग प्राप्त कर लिया था, जिससे उसकी तलवार स्वर्ग स्तर तक आगे बढ़ सकी। वांग चेन ने एक पल के लिए सोचा, ऐसा लग रहा था कि ये किंग ने जो स्कारलेट रिफाइनिंग गोल्ड स्प्रिंग प्राप्त किया था वह ताइजू सैन्य कब्रिस्तान से था। लेकिन एक बात थी जो वांग चेन समझ नहीं सका, क्या ये संयोगवश हुई मुलाकात किन येफान की नहीं होनी चाहिए? आखिरकार पिछले जन्म में ये ताइजू टूटी तलवार किन येफान के हाथों में थी। कोई बात नहीं, अगर वह इसे समझ नहीं पाता तो वह इसके बारे में सोचता भी नहीं। आखिरकार इतने सारे भाग्य के बच्चों के साथ संयोग जैसी चीजों को स्पष्ट रूप से समझाना मुश्किल है। चूंकि यह समझाया नहीं जा सकता था, इसलिए वांग चेन ने सभी संभावित मुठभेड़ों को छीनने का फैसला किया, और अगर उसे मौका मिला तो वह सीधे उन्हें मार देगा। मुझे कुछ दिनों में वहां ले चलो, फिर मैं तुम्हारे लिए आगे बढ़ूंगा और 7 दिन बाद उन राक्षसों और दानवों से निपटना ठीक रहेगा। वांग चेन ने अपने हाथ में सोने की टूटी तलवार को देखा, अपने पिछले जीवन में बड़ी प्रतियोगिता में बनाए गए विभिन्न दुश्मनों के बारे में सोचा और मदद नहीं कर सका, लेकिन हंसा। भाग्य के बच्चे किस प्रकार के होते हैं? अपशिष्ट धारा, नश्वर धारा, प्रतिभाशाली धारा, टूटी हुई सगाई धारा, क्लोन धारा और कई अन्य प्रकार। लेकिन उसके लिए तो वे सब केवल कूड़ा कचरा थे। अपने पिछले जीवन में उनमें से हर एक को उसने दबा दिया था, वे अपना सिर उठाने में असमर्थ थे और अंत में वे केवल गुप्त रूप से घात लगाकर उसे मारने की साजिश रच सकते थे। राक्षस और दानव, क्या आप ताइजू अमर संप्रदाय को छोड़ने और राक्षसों को खत्म करने के लिए बाहर जाने की योजना बना रहे हैं? स्वर्णिम टूटी तलवार में वृद्ध व्यक्ति की बची हुई आत्मा रुक गई और काफी जिज्ञासा के साथ पूछा। लेकिन वांग चेन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे वापस अपने स्टोरेज स्पेस में फेंक दिया और सीधे कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया। हालांकि ताइजू अमर संप्रदाय को छोड़ने की बात करते हुए वांग चेन का वास्तव में संप्रदाय छोड़ने और 7 दिनों में ग्रैंड प्रतियोगिता के बाद अपनी पहचान बनाने का इरादा था। सोने की टूटी तलवार से उछाले जाने के बाद वांग चेन क्षण भर के लिए अपना बिस्तर ठीक करना भूल गया और बस बिस्तर पर लेट गया। सिस्टम, उस किंग टी अपील को ओरिजिन पॉइंट्स में बदल दो, वैसे भी अब इसे रखना मेरे लिए बेकार है। डिंग, निम्न श्रेणी की किंग स्तरीय स्पिरिट किंग गोली परिवर्तित, कुल 250,000 मूल अंक। वांग चेन ने अपने पैनल पर अतिरिक्त 250,000 मूल बिंदुओं को देखा और थोड़ा अधिक सहज महसूस किया। जब तक ये जियांग लिंगजियन से संबंधित नहीं था, तब तक उसका उसके लाखों टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार जियांग लिंगशियान द्वारा उसे अपनी पूरी संपत्ति दे देने से यह पता चलता है कि उसके दिल में उसका कितना महत्व था। वह किसी को अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं मान सकता था, ताकि वह उसकी सारी संपत्ति का आराम से उपयोग कर सके। वांग चेन ने स्वाभाविक रूप से इस बात पर विचार किया, यदि वह वास्तव में इसका उपयोग अपने लिए करता तो उसे अजीब सा महसूस होता। आह, बस इसे उसका वित्तीय प्रबंधन ही समझिए, जो स्थायी रूप से सारा पैसा अपने पति के पास जमा कर रही है। वांग चेन ने जियांग लिंगशियान के बारे में सोचते हुए मन ही मन आह भरी, उसके पास अभी भी कुछ बुनियादी बातें थीं। इस कारण जिन भाग्य के बच्चों से उसने मित्रता की उनमें से सभी उसके शत्रु नहीं थे। हालांकि जियांग लिंगक्सियन को छोड़कर वे पुराने परिचित 7 दिन बाद ग्रैंड प्रतियोगिता के दौरान ही उभरने और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगे। वांग चेन ने सबसे पहले सिस्टम से अपने स्टोरेज रिंग से 1,000,000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन को अपने स्टोरेज स्पेस में रखने के लिए कहा। उन्होंने जियांग लिंगजियान को आश्वस्त करने के लिए अपनी बाईं अनामिका उंगली पर केवल एक खाली अंगूठी छोड़ी, क्योंकि यह सुरक्षित होगा। डिंग, पता चला है कि होस्ट के ओरिजिन पॉइंट 100,000 से ज्यादा हो गए हैं। क्या आप लॉटरी फंक्शन चालू करना चाहते हैं? वांग चेन ने अचानक सिस्टम का संकेत सुना और उसका मन एक पल के लिए डगमगा गया। तभी उसे याद आया कि मॉल के अलावा सिस्टम में कई ऐसे कार्य हैं जो केवल एक निश्चित मात्रा में मूल बिंदुओं तक पहुंचने के बाद ही अनलॉक होंगे। जुआ खेलने का आदि व्यक्ति अच्छी तरह नहीं मरेगा, हे, लेकिन फिर मैं पहले ही एक बार मर चुका हूं, इसलिए पुरस्कार लाओ। वांग चेन ने बड़े गर्व से अपना हाथ हिलाया और पुरस्कार लाओ शब्द बोले, जिससे पुरस्कार चक्र का इंटरफेस सीधे सामने आ गया। तुरंत ही मुट्ठी के आकार के 9 गोलाकार पुरस्कार मोती, जिनमें से प्रत्येक का रंग अलग था, 9 वर्ग ग्रिड पैटर्न में उसके सामने प्रकट हुए। वे सफेद, हरे, नीले, बैंगनी, नारंगी, सुनहरे, लाल, काले और इंद्रधनुषी रंग के थे। हालांकि, क्योंकि वांग चेन ने 1000 ओरिजिन पॉइंट लॉटरी इंटरफेस खोला था, सफेद, हरे और नीले वर्गों को छोड़कर बाद के 6 वर्गों में 6 पुरस्कार मोती क्रिस क्रॉस पैटर्न में जंजीरों द्वारा बंद किए गए थे। चलो पहले 1000 मूल बिंदुओं के साथ इसे आजमाते हैं, बस मेरी किस्मत का परीक्षण करने के लिए। वांग चेन ने तुरंत 10000 मूल बिंदु इंटरफेस पर स्विच नहीं किया, बल्कि अपने भाग्य का परीक्षण करने के इरादे से वर्तमान इंटरफेस को देखा। बहुत हो गई बातें, शुरुआत में लगातार 10 ड्रॉ, सब कुछ हो गया। वांग चेन की दिव्य इंद्रिय ने दाईं ओर स्थित 10 लगातार ड्रॉ बटन को जोर से दबाया और तुरंत ही एक बॉक्स सफेद, हरे और नीले विकल्पों के बीच लगातार कूदने लगा। लॉटरी पेज छोड़ दो, ये डिंग 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 ध्वनि बहुत कष्टप्रद है। वांग चेन अपने दिमाग में लॉटरी की लगातार डिंग 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 से कुछ परेशान हो गया। उसने भौहें चढ़ाई और सिस्टम पर चिल्लाया, डिंग वाइट, महिलाओं के अंतरंग परिधानों का एक नया सेट। डिंग वाइट, नए स्टाइल के कपड़ों का एक सेट। डिंग सफेद, एक सफेद ताओवादी वस्त्र जो बिना हवा के हिलता है। डिंग ग्रीन, एक यान पुनःपूर्ति सर्वसमावेशी टॉनिक गोली। डिंग ग्रीन, एक लंबे समय तक चलने वाली सर्वसमावेशी टॉनिक गोली। डिंग ग्रीन, एक आक्रमण गति बढ़ाने वाली सर्वसमावेशी टॉनिक गोली। डिंग सफेद, विशेष चिपचिपे तरल पहुंचने वाले टिश्यू का एक अतिरिक्त बड़ा पैक। डिंग हरा, 2 सजावटी युगल हार। डिंग सफेद, ताजा फ्लिप फ्लॉप की एक जोड़ी। डिंग ब्लू, संकल्पनात्मक रूप से हल्की नशीली फलयुक्त वाइन की एक बोतल। सिस्टम, बाहर आओ और मुझे समझाओ, बीच में उन 4 संबंधित पुरस्कारों का क्या मतलब है? वांग चेन ने अपने सामने रखी सूची को देखा और उसका ध्यान मध्य में स्थित सी स्थान पर प्रदर्शित 4 टॉनिक गोलियों पर केंद्रित था। पफ, इसका इस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, ये सब होस्ट के चरित्र का मामला है। पफ हाहा, भाड़ में जाओ। वांग चेन सचमुच चाहता था कि वो दौड़कर सिस्टम को 2 थप्पड़ मार दे। क्या उसका चरित्र सचमुच सिर्फ इन्हीं चीजों से दर्शाया जाता था? यान पुनःपूर्ति गोलियां, स्थायी गोलियां, हमले की गति की गोलियां और विशेष चिपचिपा तरल पहुंचने वाले ऊतक, ये किस प्रकार का कचरा थे? मैंने तो नीला भी बनाया है, बड़बड़ाते हुए वांग चेन ने अचानक एक नीली वस्तु देखी। संकल्पनात्मक रूप से थोड़ा सा नशीला फलयुक्त शराब। संकल्पनात्मक प्रकार, वांग चेन दंग रह गया। वैचारिक शब्द तो अच्छा था, ज्यादातर वैचारिक चीजें बाकी सब चीजों को नजरअंदाज कर देती थी और उनके प्रभाव हमेशा की तरह ही होते थे। विवरण के लिए क्लिक करें। संकल्पनात्मक थोड़ा नशीला फल शराब। असर, 1 घूंट और 3 सेकंड के बाद आपको हल्का सा नशा जरूर महसूस होगा। आप इस वाइन को परेशान होने पर आराम करने के लिए पी सकते हैं या किसी खूबसूरत महिला के साथ भी पी सकते हैं। नोट, हल्की सी भिनभिनाहट का मतलब नशा नहीं है। होश में आने के बाद स्मृति खंडित नहीं होगी। इन विवरणों को देखते हुए, विशेष रूप से सुंदर महिला के बारे में, वांग चेन ने अस्पष्ट रूप से जियांग लिंगक्सियन के बारे में सोचा। उसने उसके आमतौर पर ठंडे और घमंडी सुंदर चेहरे की कल्पना की, जो इस शराब को पीने के बाद थोड़ा लाल हो गया था। टीएस। वांग चेन इसके बारे में सोचकर ही उत्साहित हो गया और अनजाने में उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान आ गई। दस्तक दस्तक दस्तक। इस समय दरवाजे के बाहर से अचानक कुछ दस्तकें आईं, जिसने तुरंत वांग चेन के विचारों को वापस खींच लिया। वांग चेन मूल रूप से 10000 ओरिजिन पॉइंट ड्रॉ का प्रयास करना चाहते थे, लेकिन इस समय उन्हें अनिच्छा से रुकना पड़ा और दरवाजा खोलना पड़ा। होश में आने और बिस्तर से बाहर आने पर वांग चेन को एहसास हुआ कि बाहर पहले से ही अंधेरा था और कमरा बिल्कुल अंधेरा था। चरमराहट। जैसे ही वांग चेन ने दरवाजा खोलने के लिए अंधेरे में हाथ पैर मारे, चांदनी में जियांग लिंगक्सियन का सुंदर चेहरा दिखाई दिया। तुम गोरे थे, जियांग लिंगक्सियन उससे दिन के दौरान संप्रदाय में क्या हुआ इस बारे में पूछने ही वाली थी, लेकिन जब उसने द्वार पर वांग चेन की उपस्थिति पर अपनी नजर केंद्रित की तो वह दंग रह गई। इस समय वांग चेन अब ब्लू स्टार का छोटे बालों वाला आदमी नहीं था। इसके बजाय उसके बाल प्राचीन शैली के लंबे थे और वह अपने पिछले जीवन की तरह ही सुंदर था। जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन को देखा, जो बिल्कुल उसके पिछले रूप जैसा दिख रहा था। वह वहीं जड़वत खड़ा था, मानो रुक गया हो। हालांकि उसकी आंखें अशांत थीं, वह विश्वास भरी नजरों से वांग चेन को घूर रही थी। परी बहन, क्या हुआ? वांग चेन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए दरवाजे के बाहर जियांग लिंगक्सियन को हैरान भाव से देखते हुए पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मेरे पीछे आओ। जियांग लिंगक्सियन धीरे धीरे आवाज सुनकर होश में आए। उसकी अभिव्यक्ति अप्रत्याशित रूप से अत्यंत शांत हो गई और उसने शांत स्वर में बात की। ओए, एक मिनट रुको, मुझे सफाई करनी है। ये देखकर वांग चेन को पता चल गया कि जियांग लिंगक्सियन को कुछ समझ आने लगा है, इसलिए उसने जल्दी से उसे रोका और अपना बिस्तर ठीक करने लगा। इस समय वांग चेन बिल्कुल भी घबराया नहीं, क्योंकि जियांग लिंगक्सियन की प्रतिक्रिया उसकी उम्मीदों के अनुरूप थी। इस समय जियांग लिंगक्सियन शायद उसे धोखे से अपने कमरे में ले जाने की कोशिश कर रही थी, फिर दरवाजा बंद करके लंबी बातचीत करना चाहती थी। जैसे ही वांग चेन ने अपना बिस्तर अपने भंडारण स्थान में रखा, वह जियांग लिंगक्सियन के पीछे ताइक्सु सेंटेस हॉल में चला गया। वांग चेन ने खुशी खुशी जियांग लिंगक्सियन से एक कदम पहले कमरे में प्रवेश किया, फिर मेज के पास एक कुर्सी तक चला गया और बस बैठने ही वाला था। जैसी की उम्मीद थी वैसा ही हुआ जैसा वांग चेन ने भविष्यवाणी की थी। चरमराहट, धमाका, अचानक जियांग लिंगक्सियन जो उसके पीछे था ने दोनों हाथों से दरवाजा पकड़ लिया और उसे जोर से बंद कर दिया। दरवाजे से विरोध की दो तीखी आवाजें निकली। अगले ही पल, इससे पहले कि वांग चेन प्रतिक्रिया कर पाता, कई संरचनाओं ने पूरे कमरे को कसकर सील कर दिया। वांग चेन ने देखा कि जियांग लिंगक्सियन बंद दरवाजे के सामने उसकी ओर पीठ करके खड़ी थी, उसके पतले हाथ अभी भी उसे बंद करने में लगे हुए थे। परी बहन, तुम क्या करने जा रही हो? इस स्थिति में भी वांग चेन अभी भी उसे गुरु नहीं कहना चाहता था, बल्कि उसकी ओर घूरता रहा और एक प्रश्न पूछा। जियांग लिंगक्सियन का शरीर हिला नहीं, बल्कि थोड़ा तनावग्रस्त लग रहा था, मानो वह किसी भावना को दबा रही हो। हे भगवान, मेजबान, वो असामान्य तो नहीं हो जाएगी, है ना? तुम ध्यान रखना कि वो तुम्हें कुत्ते की तरह जंजीरों में न बांध दे। सिस्टम की आवाज अचानक प्रकट हुई, जिसने वांग चेन को, जो अभी भी स्तब्ध बैठा था, तुरंत होश में ला दिया। असंभव, मैं उसके बारे में जितना जानता हूँ उसके अनुसार वह कभी इतनी विकृत नहीं होगी। तुम जिसकी बात कर रहे हो वह एक यंदेरे है। यद्यपि वांग चेन ने इस तरह से सिस्टम को जवाब दिया, फिर भी वह अंदर से बेवजह घबराया हुआ महसूस कर रहा था। इस समय जियांग लिंगक्सियन जो थोड़ी देर से खड़ी थी आखिरकार धीरे धीरे घूम गई। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी लाल थीं और वह धीरे धीरे गुस्से के उफान को दबाती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे वह वांग चेन को घूर रही हो। उसकी आंखों में अनगिनत भावनाएं उमड़ रही थीं। आपका भी पुनर्जन्म हुआ है ना? जियांग लिंगक्सियन एक परी की तरह सफेद पोशाक पहने हुए अपनी लाल आंखों से वांग चेन को गौर से देख रही थी। उसकी आवाज धीमी और दबी हुई थी। एक क्षण में ऐसा लगा जैसे सारा समय रुक गया हो और वातावरण एक क्षण के लिए शांत हो गया। शायद ऐसा ही है। इस बार वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे अपनी नजर उसके बगल में रखे डेस्कटॉप पर स्थानांतरित कर दी। वह जानता था कि आज वह फंस चुका है और चाहे वह कितना भी दिखावा करे, उसे विभिन्न तरीकों से यह बात उजागर करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वांग चेन ने अब इस बात पर आश्चर्य व्यक्त नहीं किया कि जियांग लिंगक्सियन का भी पुनर्जन्म हुआ था, भले ही जियांग लिंगक्सियन ने उसे इसके बारे में कभी स्पष्ट रूप से नहीं बताया था। लेकिन जियांग लिंगक्सियन को पता चल गया होगा, इस जीवन में उनके परस्पर क्रिया करने के तरीके बिल्कुल अलग थे, इसलिए वांग चेन को तुरंत एहसास हो गया कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। इस समय जियांग लिंगक्सियन ने वे तीन शब्द सुने जो वांग चेन ने कहे थे। उसका हृदय, जो केवल 80% निश्चित था, पुष्टि प्राप्त होने के बाद उसकी मृत शांत बर्फीली आंखों में थोड़ा चमक उठा। लेकिन इसके तुरंत बाद उसके दिल में शिकायत की एक अंतहीन लहर उमड़ पड़ी। अनगिनत भावनाएं बेलों की तरह उसके दिल में लिपट गईं और उसे दम घुटने की धमकी देने लगी। इस क्षण कमरे का माहौल मानो जमसा गया। वांग चेन अपराध बोध से मेज को घूर रहा था, जबकि जियांग लिंगक्सियन गौर से वांग चेन को देख रहा था। टैप टैप टैप। वांग चेन, जो पहले से ही दोषी महसूस कर रहा था, ने कदमों की आहट सुनी, जो स्पष्ट रूप से हल्की थी, फिर भी उसे पसीने से तरबतर कर दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इस समय वांग चेन ने अनगिनत बार कल्पना कर ली थी कि जियांग लिंगक्सियन उसके खिलाफ किस तरह की सजा और बदला लेगा, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उन्होंने कल्पना की थी। जियांग लिंगक्सियन चुपचाप उनके विपरीत दिशा में चले गए और बैठ गए। इस पल मानो समय थमसा गया था। वे दोनों अपनी पिछली जिंदगी की तरह कमरे में बैठे चाय पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे और बातें कर रहे थे। बात बस इतनी थी कि उनके पिछले जीवन में वांग चेन मुस्कुराता था और बकबक करने वाले की तरह बात करता था, जबकि जियांग लिंगक्सियन कभी कभी कुछ एम या नहीं कहकर सहमत हो जाता था। ऐसा लगा जैसे कि यह एक जीवनकाल पहले की बात है और वास्तव में एक जीवनकाल बीत चुका था। और अब वे दोनों एक जीवन भर के बाद फिर से एक साथ बैठे थे। दोनों मौत की तरह चुप थे। अब उनके पास पिछले जीवन की सहजता नहीं थी। क्यों? जियांग लिंगक्सियन की ठंडी लेकिन थोड़ी व्यथित दबी हुई आवाज सुनकर वांग चेन का दिल बेवजह हिल गया। कोई कारण नहीं, बस पिछले जन्म में मरने से पहले मैंने कसम खाई थी कि अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हारा शिष्य नहीं बनना चाहूंगा। वांग चेन ने अपने स्वर को हल्का रखने की कोशिश की, लेकिन जियांग लिंगक्सियन का सामना करते समय वह अभी भी सहज रूप से घबराया हुआ महसूस कर रहा था। जियांग लिंगक्सियन इस बारे में पूछना नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसने वांग चेन को ये कहते सुना कि वह उसका शिष्य नहीं बनना चाहता, तो उसका दिल अभी भी दर्द से भर गया। आप जानते हैं कि मैं यह नहीं पूछना चाहता। जियांग लिंगक्सियन पहले से ही अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसके हाथ उसकी स्कर्ट को कसकर पकड़े हुए थे। उसकी आवाज ठंडी और भारी थी। कृपया मुझे माफ करें, मैं सचमुच नहीं जानता कि आप क्या पूछना चाहते हैं। वांग चेन की आंखें इतनी दोषी थीं कि वह जियांग लिंगक्सियन की नज़रों से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं कर सका और उसे पछतावा होने लगा कि वह उसके पीछे यहाँ क्यों आया था। हालांकि उसने इस स्थिति का अनुमान लगाया था, लेकिन अब जब ये वास्तव में हो रहा था तो वांग चेन को अभी भी ये थोड़ा असहनीय लग रहा था और वह युद्ध के मैदान से जल्दी से भाग जाना चाहता था। ये वह अंतहीन दबाव था जो उसके पिछले जीवन की आइस हॉट महारानी शिक्षिका ने उस पर डाला था। क्रैक क्रैक क्रैक, जियांग लिंगजियन अब अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकी और तुरंत ही उसके पैरों से लेकर बाहर तक पूरा कमरा जमने लगा और ठंडी हवा बहने लगी। इससे पहले कि वांग चेन अपने पैर उठा पाता, उसने अचानक महसूस किया कि उसके पैर नीचे बर्फ की परत से मजबूती से चिपक गए हैं और हिलने में असमर्थ हैं। भयभीत वांग चेन इस समय कुछ घबरा गया था और जब उसने जियांग लिंगक्सियन की आकृति देखी तो वह अवचेतन रूप से पीछे झुक गया। उसे डर था कि वह नियंत्रण खो देगी। वांग चेन ने उसके साथ हजारों साल बिताए थे, वह जानता था कि जब जियांग लिंगक्सियन ने नियंत्रण खो दिया था तो वह कितनी भयभीत थी। हालांकि जब जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन को थोड़ा भयभीत होकर पीछे की ओर झुकते देखा तो उसका उत्कृष्ट चेहरा एक पल के लिए जम गया। जियांग लिंगक्सियन को पता था कि वह अपना संयम खो चुकी है, लेकिन वांग चेन को खुद से दूर होते देख उसकी आंखों में अभी भी अनियंत्रित रूप से आंसू बह रहे थे। अपने पिछले जीवन में जब भी वह दुखी या क्रोधित होती थी, वांग चेन हमेशा सौम्य रहता था और उसे खुश करने की कोशिश करता था। पर अब दरअसल वांग चेन भी थोड़ा उलझन में था, क्योंकि जियांग लिंगक्सियन ने उसके होश में रहते हुए उसके सामने कभी भी अपना संयम नहीं खोया था। हालांकि जियांग लिंगक्सियन की दयनीय उपस्थिति को देखकर आंसू रोकने की कोशिश करते हुए वांग चेन को अभी भी दया का एहसास हुआ। जियांग लिंगक्सियन, ये जीवन यही जीवन है। इस जीवन में मैं कभी आपका शिष्य नहीं रहा और न ही बनना चाहता हूँ। पिछले जन्म में मैंने हजारों बार आपका अनुसरण किया, लेकिन आपने हमेशा मुझे मेरा गुरु होने के नाम पर अस्वीकार कर दिया। मैं सचमुच थक गया हूँ। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि पिछले जन्म का आपका हजार साल पुराना शिष्य विद्रोह करने लगा है। वांग चेन ने स्थिति को बहुत स्पष्ट कर दिया था। जियांग लिंगक्सियन संभवतः इसका अर्थ गलत नहीं समझ सकता था। फिर वांग चेन कुर्सी पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। एक मरे हुए सुअर की तरह उबलते पानी से नहीं डरता, जो कुछ भी हो रहा था उसे होने दिया। कमरे में जमी बर्फ तेजी से गायब होने लगी और आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, जो हवा में फैल गई और गायब हो गई। वांग चेन को जल्द ही लगा कि उसके पैर फिर से चल सकते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब आपने ताइजू अमर संप्रदाय में उन शिष्यों का सामना किया तो आपने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा। जियांग लिंगक्सियन ने अपने दिल में विभिन्न भावनाओं को दबा दिया। वह वांग चेन को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, नहीं वह चाहती थी कि वांग चेन उससे डरे। अरे नहीं, वांग चेन का दिल बैठ गया और उसने मन ही मन सोचा, ये बुरा है। ओह, ये वांग चेन ने अजीब तरह से अपनी आंखें खोली, जियांग लिंगक्सियन को देखा जो अपनी भावनाओं को दबा रही थी और एक पल के लिए हकलाया। अपने हृदय में तुम अब भी मुझे अपना गुरु मानते हो, है ना? जैसा कि जियांग लिंगक्सियन ने ये कहा, वांग चेन की मृत खामोश ठंडी आंखों को देखते हुए उसकी आंखों में अस्पष्ट रूप से उम्मीद की एक झलक झिलमिला उठी। ये मैं कैसे जवाब दूं? वांग चेन अवाक रह गया। वह ये नहीं कह सकता था कि उसने केवल उन शिष्यों को दबाने के लिए संत शिक्षिका के रूप में उसके नाम का उपयोग किया था। क्या वह ऐसा कर सकता था? यदि अब वह ऐसा कुछ कहता तो क्या उसे छत से लटका कर 360 डिग्री थॉमस शैली में विलो की शाखा से नहीं मारा जाता? परिस्थितियों को देखते हुए सबसे पहले चुप रहना ही बेहतर है। अंतहीन सन्नाटा सन्नाटा, जब तक कि जियांग लिंगक्सियन की आंखों में उम्मीद धीरे धीरे धुंधली नहीं हो गई। आपने कहा था चुप्पी का मतलब सहमति है, इसलिए अगर आप अभी जवाब नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं। जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन से आगे सवाल करने की इच्छा को दबा दिया, क्योंकि उसे डर था कि उसे कभी भी वह जवाब नहीं मिलेगा जो वह चाहती थी। इसलिए वह केवल यही कर सकती थी, स्वयं को धोखा दे सकती थी और अपने हृदय में अंतिम सांत्वना पा सकती थी। वांग चेन ये सुनकर दंग रह गया और मन ही मन सोचने लगा, आह, अब तो इसमें नमक भी नहीं रहा। पिछले जीवन में उसने जियांग लिंगक्सियन पर जो छोटी छोटी चालें चली थी, वे अंततः इस जीवन में उस पर बूमरैंग की तरह वार कर गईं। छोटे मेजबान, क्या आपकी बहन जियांग लिंगक्सियन आमतौर पर खुद को सांत्वना देने वाली किस्म की है? अंतहीन निराशा आत्म सांत्वना के उत्तर में आशा की एक किरण खोजने का प्रयास। वांग चेन ने सिस्टम को नजरअंदाज कर दिया और जियांग लिंगक्सियन की आत्म सांत्वना के अंतिम टुकड़े को भी नहीं तोड़ा, चुपचाप उसे देखता रहा। जियांग लिंगक्सियन की आंखें लाल थी और वांग चेन के साथ एक नजर का आदान प्रदान करने के बाद वह अंततः उठ खड़ी हुई, थोड़ी खोई हुई और निराश दिख रही थी। आज रात आप बिस्तर पर सो सकते हैं, मैं फर्श पर ध्यान करूंगा। जियांग लिंगक्सियन खड़ी थी, वांग चेन की ओर देख रही थी, अपनी कांपती आवाज को दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पिछले जन्म की तरह ठंडे स्वर में बोल रही थी। जियांग लिंगशियांग के शब्दों में किसी प्रश्न का संकेत नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह वांग चेन को सूचित कर रही थी। इसके अलावा उसने पूरे कमरे को ढकने वाली संरचना को नहीं हटाया, जैसे कि उसे डर हो कि सच्चाई उजागर होने पर वांग चेन उसे छोड़ने की कोशिश करेगा। कोई जरूरत नहीं, सौभाग्य से मैं तैयार होकर आया था और अपना गद्दा, बिस्तर और तकिया भी साथ लाया था। वांग चेन भी खड़ा हो गया, फिर जल्दी से फर्श पर एक स्थान पर चला गया और तुरंत अपनी सोने की चटाई बिछा दी। जियांग लिंगक्सियन स्थिर खड़ी रही, उसकी हल्की लाल आंखें वांग चेन की अत्यधिक गति को देख रही थीं और एक पल के लिए उसकी अभिव्यक्ति स्थिर हो गई। चून की बात यहां तक पहुंच गई है तो पहले सो जाएं। वांग चेन ने दोनों हाथों से कंबल को खोला, फिर जल्दी से उसमें कूद गया, लेट गया और जल्दी से अपनी आंखें बंद करके सो गया। कंबल हवा में उड़ता हुआ धीरे धीरे नीचे आया और उसके शरीर को हल्के से ढक लिया। वांग चेन ऊपर से तो बेफिक्र दिखाई दे रहा था, लेकिन उस जलती हुई निगाह को महसूस करते हुए उसका दिल अभी भी दबा हुआ और बेहद भारी था। ये देखकर कि वांग चेन उसका सामना करने के लिए भी तैयार नहीं है, जियांग लिंगशियान ने कुछ और नहीं कहा। उसे डर था कि वह उसे परेशान कर सकती है और उसे नापसंद कर सकती है। अंततः जियांग लिंगजियन चुपचाप कमरे में अपने बिस्तर की ओर चली गई और फिर ध्यान नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने जूते उतार दिए, बिस्तर पर लेट गई और वांग चेन की ओर पीट करके सो गई। लेकिन जियांग लिंगजियन ने अपनी आंखें बंद करने के लगभग 10 सेकंड बाद धीरे धीरे उसकी संयमित भावनाएं अब दबाई नहीं जा सकी और उसने अनजाने में अपना निचला होंठ दबा लिया, जिससे आंसू बहने लगे और तकिया भीग गया। जियांग लिंगक्सियन ने अपनी दबी हुई भावनाओं को वांग चेन के सामने फूटने नहीं दिया, बल्कि उसकी ओर पीट करके चुपचाप रोई। जियांग लिंगशियान नहीं चाहती थी कि उसके दिल में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उसकी शर्मनाक स्थिति को देखे, यह उसके लिए बचाई गई आखिरी गरिमा थी। उस रात का माहौल निस्संदेह दमनकारी था। वांग चेन ने बिल्कुल भी सोने की हिम्मत नहीं की, वह चुपके से संकुचित आंखों से जियांग लिंगक्सियन को देख रहा था। हालांकि जियांग लिंगजियन ने अपनी पीठ उसकी ओर कर रखी थी और दबाव के कारण उसके शरीर में हल्की सी कंपन के अलावा कोई अन्य महत्वपूर्ण हलचल नहीं थी। पूरी रात वांग चेन सो नहीं सका, वह सुबह होने तक चुपचाप जियांग लिंगक्सियन की पीठ को घूरता रहा। स्पष्टतः जियांग लिंगक्सियन उस रात कामोत्तेजक या अन्य चीजों का उपयोग करने के मूड में नहीं थी, उसका दिल दुख रहा था। और ऐसा ही अगले दिन दोपहर तक चलता रहा। वांग चेन सचमुच अब इसे सहन नहीं कर सका, उसने धीरे से बिस्तर उठाया और चुपचाप, यह मानते हुए कि वह चुप है, खड़ा हो गया। आप कहाँ जाना चाहते हैं? अचानक आई ठंडी आवाज ने वांग चेन को चौंका दिया, जो अभी अभी खड़ा हुआ था, जिससे वह अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उसने ध्यान से देखा कि जियांग लिंगक्सियन पहले ही बिस्तर पर घूम चुका था और जब तक वह खड़ा हुआ तब तक वह उसे घूर रहा था। ये लड़का, वह एक भूत की तरह क्यों है, सुंदर और ठंडा और थोड़ा डरावना। वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन की खूबसूरत आंखों से मुलाकात की, जिनमें अभी भी शिकायत का संकेत था, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक थीं और उन्होंने मन ही मन शिकायत की। मुझे थोड़ी भूख लगी है, वांग चेन ने एक पल के लिए सोचा और केवल एक बहाना बना सका। उम्मीद कर रहा था कि जियांग लिंगक्सियन उसे खाने के लिए कुछ खोजने के लिए बाहर जाने देगा। मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा। जियांग लिंगजियन ने अपने पतले हाथ से बिस्तर पर खुद को सहारा दिया और बैठ गई, फिर अपने गोरे कोमल पैरों के लिए जूते पहनने लगी जो हवा में खुले थे। शिपिंग, गुरु और शिष्य कैद का खेल खेलने लगे हैं, हा हा हा। सिस्टम, तुम वाकई शो का आनंद ले रहे हो, है ना? चले जाओ। वांग चेन ने अपने मन में मूर्ख सिस्टम की आवाज सुनी और उसे मन ही मन कई बार कोसा। कोई जरूरत नहीं, मैं बाहर जाकर अकेले खाना खा सकता हूँ। मैं किसी औरत को अपने लिए खाना लाने कैसे दे सकता हूँ, ओह। हा हा, वांग चेन ने अपना हाथ हिलाया, जिससे तुरंत संकेत मिला कि जियांग लिंगशियांग को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, और फिर वह दरवाजे की ओर चल पड़ा। उसने दो बार खींचा पर दरवाजा नहीं खुला। वह बस बेबस होकर पलटकर जियांग लिंगजियन को देख सका, जो बिस्तर पर बैठा था। बहुत लंबे समय तक जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन को ठंडी निगाहों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। ठीक है, वांग चेन दरवाजे के पास खड़ा था। हालांकि उसने ऐसा कहा था, लेकिन वह दिल से ऐसा नहीं सोच रहा था। मैं यहीं खड़ा रहूंगा, चूंकि तुम बाहर जा रहे हो तो दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा, है ना? जैसे ही तुम दरवाजा खोलोगे मैं तुरंत बाहर भाग जाऊंगा। बस, इससे पहले कि वांग चेन अपना विचार पूरा कर पाता, जियांग लिंगक्सियन के सामने एक खाली दरार खुल गई और वह उठकर उसमें चली गई। स्विश, जिस क्षण जियांग लिंगक्सियन ने कदम रखा, शून्य की दरार तुरंत गायब हो गई और कमरे में केवल स्तब्ध वांग चेन ही रह गया। दरवाजा खोलना सिर्फ औपचारिकता है, इसका मतलब यह नहीं कि उसे बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलना होगा, उफ हा हा हा। सिस्टम की उपहास्यपूर्ण हंसी सुनकर वांग चेन के माथे पर कई काली रेखाएं उभर आईं। मैं पूछना चाहता हूं, सिस्टम, क्या आपके पास प्रॉक्सी फाइटिंग फंक्शन है? हा, तुम किससे लड़ना चाहते हो? एक मूर्ख से लड़ने के लिए जो मेरे साथ सह अस्तित्व में है। वांग चेन बिस्तर की ओर चला गया, सुगंधित बिस्तर पर लेट गया और अपने दिमाग में मूर्खतापूर्ण प्रणाली को बिना बोले जवाब दिया। 666 वांग चेन ने सिस्टम की मन में चल रही बड़बड़ाहट को नजरअंदाज कर दिया और बिस्तर को अपने ऊपर खींच लिया। उसमें अब भी गर्माहट थी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, मानो उसे उसकी खुशबू से तृप्ति ही न मिल रही हो। बिस्तर में एक ताज़ा खुशबू थी जो बहुत सुकून देने वाली थी। वांग चेन ने अवचेतन रूप से बिस्तर को हल्के से सूंघा, लेकिन जैसे ही उसने जियांग लिंगक्सियन के उसे कैद करने के बुरे कृत्य के बारे में सोचा, वह मदद नहीं कर सका और बिस्तर पर कुछ बार मारा। उसे नहीं पता था कि वह उसे कितने दिन कैद रखेगी। उसे उम्मीद थी कि 6 दिन बाद होने वाली बड़ी प्रतियोगिता के लिए वह उसे बाहर निकाल देगी। वांग चेन ने चुपचाप प्रार्थना की, अन्यथा उन्हें डर था कि ताइजू सैन्य कब्रिस्तान में स्कारलेट रिफाइनिंग गोल्ड स्प्रिंग ये किंग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सिस्टम, मेरी खेती क्षेत्र दमन को बिल्डिंग स्पिरिट क्षेत्र 6ठी परत में समायोजित करें। वांग चेन हल्के सुगंधित और गर्म बिस्तर से ढके बिस्तर पर लेट गया और मन ही मन सिस्टम का अभिवादन करने लगा। डिंग, कल्टीवेशन रियल्म सेपरेशन फंक्शन को बिल्डिंग स्पिरिट रियल्म की 6ठी परत में समायोजित किया गया है, जिससे 5000 ओरिजिन पॉइंट्स कम हो गए हैं। धिक्कार है, ये और भी महंगा होता जा रहा है। वांग चेन मदद नहीं कर सका लेकिन शाप और शिकायत की, फिर अपनी आंखें बंद कर ली और साधना शुरू कर दी, आंखों से दूर, मन से दूर। अब वह खेती कम और अपनी खेती के आधार को पुनः प्राप्त करने में अधिक व्यस्त था। जब तक उसने इस जीवन में सभी प्रकार के भाग्य के बच्चे और साधना जगत में कई छिपे हुए साधना अवसरों को प्राप्त कर लिया, और फिर अपने पिछले जीवन के 1000 वर्षों के साधना अनुभव के साथ, वांग चेन को विश्वास था कि वह कुछ ही समय में खुद को फिर से एक महान सम्राट साबित करने में सक्षम होगा। आंखें बंद करना मानो रात हो गई हो। जब वांग चेन अपनी साधना से जागा तो उसने सबसे पहले अपने दायरे को महसूस किया, जो गुई युआन दायरे में घुसने वाला था। फिर उसने ऊपर देखा तो चारों ओर घना अंधेरा और खालीपन था। यद्यपि कमरा अंधेरा था, फिर भी उसकी दृष्टि से वह सब कुछ स्पष्ट देख सकता था, लेकिन जो वस्तुएं उसने देखी उनमें चमक की कमी थी। जियांग लिंगजियन अभी तक वापस क्यों नहीं आया? वांग चेन ने भौहें चढ़ाई। अगर इस हालत में उसे दिन में सचमुच भूख लगी होती और उसने उससे खाना लाने को कहा होता, तो क्या वह यहाँ भूख से नहीं मर जाता? स्विश, कमरे का खालीपन फट गया और जैसे ही लिंगशियन का जिक्र हुआ, वह प्रकट हो गई। खालीपन की दरार से एक आकृति बाहर निकली। जैसे ही वह सुंदरी बाहर निकली, कमरे की रोशनी अचानक तेज हो गई और दृश्य बहुत स्पष्ट हो गया। जियांग लिंगक्सियन एक ठंडे भाव के साथ वापस आया और वांग चेन ये देखकर बिस्तर पर वापस लेट गया और चुपचाप अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। जियांग लिंगक्सियन कल की गई गंदगी को साफ करने गया होगा और फिर आंतरिक संप्रदाय के एल्डम्यू होन के साथ उसका फिर से विवाद हो गया होगा। बाह्य संप्रदाय के बुजुर्ग को अभी भी संत के नाम से डर लगता था, लेकिन आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग का दर्जा उससे थोड़ा ही कम था। कोई यह कह सकता था कि वह 6 भागों में सतर्क थी, लेकिन भयभीत नहीं थी। बेशक अगर जियांग लिंगजियन इस जीवन के लिए कुछ प्रमुख घटनाओं की योजना नहीं बना रही थी और उसकी छिपी हुई स्वर्गीय पूजा क्षेत्र की साधना फूट पड़ी, परिणाम स्वाभाविक रूप से भिन्न होगा। आखिरकार एक राक्षसी विलक्षण व्यक्ति जो केवल 200 वर्षों में स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र तक पहुंच गया, ये कहा जा सकता है कि वह ताइजू अमर संप्रदाय के भीतर ताइजू संप्रदाय के नेता के बराबर है और शायद उससे भी अधिक अधिकार रखती है। आखिरकार ताइजू संप्रदाय के नेता को स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र की पहली परत तक पहुंचने में 3000 साल से अधिक का समय लगा। इस समय शून्य दरार से बाहर आने के बाद जियांग लिंगक्सियन ने कुछ नहीं कहा, केवल शांति से वांग चेन को उस रजाई में सोते हुए देख रही थी जिसका उसने इस्तेमाल किया था। मैं देर से वापस आया, जियांग लिंगक्सियन की आवाज ठंडी लेकिन थोड़ी माफी के साथ वह मेज की ओर चली गई और अपनी दिव्य आत्मा स्थान से बांस की चावल की टोकरी निकाली। चलो खाते हैं। भोजन को मेज पर रखने के बाद जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन से, जो अभी भी नींद का नाटक कर रहा था, स्पष्ट और कोमल आवाज में बात की। वांग चेन ने यह सुना और धीरे से रजाई उठाकर उठ गया। जियांग लिंगजियन द्वारा किसी और मामले को सुझाने में मदद करने के विचार से उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। खाने के बाद मैं टहलने जाना चाहता हूँ, क्या मैं चल सकता हूँ? वांग चेन ने बैठते ही सावधानी से बात की। उसकी आंखें उम्मीद से भरी हुई थी क्योंकि वह उसके सामने बैठे जियांग लिंगक्सियन को देख रहा था, लेकिन जियांग लिंगक्सियन ने केवल अपनी आंखें उठाई, उसकी निगाहों में ठंडक व्याप्त थी, चुपचाप वांग चेन की आंखों से मिली। वांग चेन ने उसके बेहद परिचित सुंदर चेहरे को देखा और उसकी अभिव्यक्ति को समझ गया, ये सिर्फ 2 शब्द थे, बिल्कुल नहीं। इस जीवन में पुनर्जन्म लेकर विभिन्न अमर अवसरों के लिए प्रयास न करते हुए क्या आप मुझे ऐसे ही बंद रखेंगे? वांग चेन की भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं और वह जियांग लिंगक्सियन को घूरते हुए कुछ समझ न आने के साथ सीधे सीधे बोलने लगा। जियांग लिंगजियन ने अपनी नजरें थोड़ी नीची कर ली और चुप हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह सोच रही हो कि क्या करना है। लेकिन अंत में वह कोई अच्छा समाधान खोजने में असमर्थ रही, और इसे छिपाने के लिए उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई और धीरे से कुछ खाना उठा लिया। अगर तुम्हें भूख लगी है तो पहले खा लो, जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन के कटोरे में मांस का एक टुकड़ा रखा। उसकी आवाज मधुर और सुखद थी, फिर भी थोड़ा भावनात्मक उतार चढ़ाव दिखा रही थी। वांग चेन, इसे भूल जाओ, तुम्हारी साधना उच्च है, तुम अद्भुत हो, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मुझे पूरे जीवन बंद रख सकते हो। वांग चेन को अंदर से थोड़ा गुस्सा आया। मेजबान, आप वैचारिक रूप से थोड़ा नशे में धुत फल वाली शराब निकाल सकते हैं और उसे पूरी तरह से नशे में डाल सकते हैं। जब वह धुंधली हो जाए तो उसे फॉर्मेशन खोलने के लिए लुभाएं। वाह, क्या महान विचार है, नाराज वांग चेन ने सिस्टम की आवाज सुनी और तभी उसे याद आया कि उसके पास वैचारिक रूप से थोड़ी नशे वाली फल शराब की एक बोतल थी। हाय, पिंजरे में बंद पंछी का बुढ़ेगा, अगर तुम मुझे बाहर नहीं निकालोगे तो जाने दो। चूंकि आप चाहते हैं कि मैं आपकी कैनरी बनूं, तो ऐसा ही हो। कैनरी का भाग्य स्वाभाविक रूप से ऐसा ही होता है। वांग चेन सचमुच बाहर जाने से निराश हो गया था और एक शोकाकुल अभिव्यक्ति के साथ उसने अपनी जेब से उत्तम चमकदार फल शराब की एक बोतल निकाली। होह, ये जियांग लिंगक्सियन की पसंदीदा स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी स्वाद वाली। वांग चेन ने चमकदार बोतल पर उत्कीर्ण स्ट्रॉबेरी स्वाद के लिए प्राचीन लिपि देखी और अचानक उसे याद आया कि जियांग लिंगक्सियन को अपने पिछले जन्म में स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद थी। सिस्टम, क्या आपके पास स्ट्रॉबेरी है? कृपया मॉल में 2 डिब्बे रख दीजिए। वांग चेन ने चुपके से जियांग लिंगक्सियन की ओर देखा, जो मेज के दूसरी ओर से उसे देख रहा था, और अपने मन में सिस्टम से फुसफुसाया। डिंग, 1,00,000 मूल अंक काटे गए। तीसरा कार्ड ताजा कर दिया गया है। आम फल असीमित रूप से खरीदे जा सकते हैं। धिक्कार है, तुमने एक सामान्य चीज के लिए 10,000 ले लिए। वांग चेन ने अपने हाथ में चमकदार फल वाली शराब पकड़े हुए मन ही मन कोसा और फिर स्ट्रॉबेरी के कुछ डिब्बे खरीदने के लिए सिस्टम मॉल में तीसरा कार्ड खोला। धम्म, वांग चेन ने अपने दाहिने हाथ से थोड़ी नशे में धुत स्ट्रॉबेरी फल वाली शराब मेज पर रख दी, फिर उसके नीचे से स्ट्रॉबेरी के 3 बड़े डिब्बे निकाले। लो, एक एक करके, मुझे पता है कि तुम्हें ये सबसे ज्यादा पसंद है। मैं इसे अपने पिछले जन्म में पुनर्जन्म के बाद अप्रत्याशित रूप से वापस ले आया था। वांग चेन ने एक एक करके स्ट्रॉबेरी के 3 डिब्बे खोले, फिर उन्हें जियांग लिंगक्सियन के सामने रख दिया और कुछ अप्रसन्नता के साथ बोला। सिस्टम द्वारा बेची गई स्ट्रॉबेरी पूरी तरह से साफ थी, प्रत्येक स्ट्रॉबेरी उत्तम और सुंदर थी, जिसके नीचे 4 हरी पत्तियां खिली हुई थी। वांग चेन द्वारा उत्पादित फल को देखकर जियांग लिंगक्सियन एक क्षण के लिए रुक गई और उसकी स्पष्ट निगाहें थोड़ी सी लहराने लगी। पॉप, हिस, फिर वांग चेन ने अपने दाहिने हाथ से ग्लेज्ड फ्रूट वाइन के कॉक को दबाया और पूरी ताकत से उसे बाहर खींच लिया। सोडा के फूटने जैसी आवाज आई। वांग चेन ने तुरंत पानी नहीं पिया, बल्कि अपना सिर नीचे कर लिया और ऐसा नाटक किया जैसे वह स्पिरिट राइस के कुछ कौर खा रहा हो और तुरंत तरोताजा महसूस कर रहा था। कुछ निवाले खाने के बाद वांग चेन ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई और देखा कि जियांग लिंगक्सियन अभी भी उसके सामने रखे स्ट्रॉबेरी को घूर रहा था, खा नहीं रहा था। और वास्तव में इस समय जियांग लिंगक्सियन ने अपने सामने रखे स्ट्रॉबेरी के डिब्बों को देखा और उसके पिछले जीवन की यादें अचानक सामने आ गईं। मास्टर, जल्दी से अपना मुंह खोलो, यह जरूरी है। क्या है? हम, जियांग लिंगक्सियन के लाल होंठ, जो पिछले जीवन में बोलते समय बीच में ही बोल रहे थे, अचानक एक फल से अवरुद्ध हो गए और वह एक पल के लिए वहीं जम गई। जियांग लिंगक्सियन के पतले नम सुंदर लाल होंठों ने धीरे से स्ट्रॉबेरी की नोक को दबाया और उसने धीरे से अपने सामने वांग चेन की ओर देखा। उसने देखा कि इस जीवन में वांग चेन स्ट्रॉबेरी के आधार पर पत्तियों को पकड़े हुए था और स्ट्रॉबेरी के सिरे को धीरे से अपने होठों पर दबा रहा था। जियांग लिंगक्सियन को स्ट्रॉबेरी की हल्की फल जैसी खुशबू भी महसूस हुई और उसने आश्चर्य से वांग चेन की ओर देखा। स्वादिष्ट, खाने का बहुत मन करता है, और खाओ, अपना मुंह खोलो, आह। हालांकि वांग चेन को जरा भी शर्म नहीं आई, वह मेज के दूसरी ओर से उसे देखकर खुशी से मुस्कुरा रहा था और यहां तक कि उसने अपना मुंह भी थोड़ा सा खोला, मानो किसी बच्चे को सहला रहा हो। जियांग लिंगक्सियन ने अपनी नाजुक भौहों को सिकोड़ लिया, लेकिन फिर भी स्ट्रॉबेरी लेने के लिए अपने पतले होठों को थोड़ा सा खोला, फिर वांग चेन की हथेली को दूर करने के लिए अपना हाथ उठाया। मुझे पता था कि तुम्हें ये फल खाना बहुत पसंद है। देखो, मैंने तो इस फल का खास तौर पर जूस भी बनाया है। वांग चेन को अपनी हथेली थपथपाए जाने पर गुस्सा नहीं आया। उसने मौका पाकर मेज पर रखे प्याले उठाए और 2 प्याले हल्के नशे में धुत फ्रूट वाइन डाल दी। बस एक छोटा सा घूंट, इसे पूरा निवाला नहीं माना जाना चाहिए, है ना? मुझे कोशिश करने दीजिए, अन्यथा यदि इसका स्वाद शराब जैसा हुआ तो ये बात उजागर हो जाएगी और मैं निश्चित रूप से उसे इसे पीने के लिए राजी नहीं कर पाऊंगा। वांग चेन ने एक क्षण सोचा, एक छोटा सा घूंट लिया और उसका स्वाद चखा। उन्होंने पाया कि इसमें मीठे और खट्टे स्वाद के बीच एक अनोखी स्ट्रॉबेरी फल की सुगंध थी। शराब के तीव्र स्वाद के बिना ये बहुत स्वादिष्ट था। लेकिन 3 सेकंड बाद वांग चेन ने महसूस किया कि उसका चेहरा अचानक थोड़ा गर्म हो गया है, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि यह बस थोड़ा सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार ये तो बस एक छोटा सा घूंघ था, इससे उसे अपना दिमाग नहीं खोना चाहिए। तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? स्ट्रॉबेरी का एक छोटा सा टुकड़ा खाने के बाद जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन के धीरे धीरे लाल होते चेहरे को देखा और उलझन में पूछा। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। ये सुनकर वांग चेन के चेहरे पर अभी भी एक सुंदर मुस्कान थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की लाली ने उसे और भी अधिक नशे में धुत बना दिया। मास्टर जी, मैं इसे बहुत समय से बना रहा हूँ, कृपया लीजिए, ये बहुत स्वादिष्ट है। अपने चेहरे को लाल और गर्म महसूस करते हुए वांग चेन को भी अपने सिर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ और अवचेतन रूप से महसूस हुआ कि उसे जियांग लिंगक्सियन को हमेशा मास्टर कहना चाहिए था। इसलिए उसे कई बार मास्टर कहने के बाद वांग चेन को यह एहसास नहीं हुआ कि कुछ भी गलत था, यह एक अवचेतन क्रिया थी। तो फिर क्या अब तुम मुझे अपना गुरु मानने को तैयार हो? ले, तुम्हें अपना गुरु मान लूं? रुको, एक मिनट रुको, नहीं, मैं नहीं चाहता। वांग चेन का मन अचानक उसकी बातों से चौंक गया और उसने जियांग लिंगजियन की तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसने सहज रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के उसे फिर से मना कर दिया। जियांग लिंगजियन एक पल के लिए ठिठक गई, उसने अपना निचला होंठ दबा लिया। उसे लगा जैसे उसका दिल दबा दिया गया हो। अगर तुम शराब नहीं पीते तो भूल जाओ। खैर, मेरा पिछला जीवन ही काफी दुखद था, इस जीवन में मैं तुम्हें अपना गुरु नहीं मानूंगा। जिस क्षण गुरु लेने का विषय उठाया गया, वांग चेन ने अवचेतन रूप से भी जियांग लिंगक्सियन को अस्वीकार करना शुरू कर दिया। इसके बाद वांग चेन थोड़ा लाल चेहरे के साथ अपनी सीट पर वापस आ गया और दिल खोलकर खाने और पीने लगा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, मानो वह नशे में हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं। शिष्य, तो क्या तुम मुझे एक दो बार और गुरु कह सकते हो? ये देखकर जियांग लिंगक्सियन को अब यह उम्मीद नहीं रही कि वांग चेन उसे फिर से अपना गुरु मान लेगा। वह बस गुरु की उन परिचित पुकारों को कुछ और बार सुनना चाहती थी। नहीं, तुम मेरी फलों वाली शराब भी नहीं पियोगे, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा नहीं कहूंगा। वैसे भी इस जीवन में तुम मेरे गुरु नहीं हो। वांग चेन की यादें मानो किसी और जन्म की हों बिखरी हुई लग रही थी। चेहरे पर हल्की लाली लिए उसने जियांग लिंगजियांग को फिर से मना कर दिया। तो ये शराब थी, कोई आश्चर्य नहीं। जब तक आप मुझे मास्टर कहेंगे, मैं इसे पीता रहूंगा। कैसा रहेगा? जियांग लिंगक्सियन को राहत मिली जब उसने सुना कि यह शराब है। चूंकि यह शराब थी, इसलिए वह आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके इसके प्रभाव को कम कर सकती थी। हे मूर्ख मेजबान, मैंने तुम्हें जियांग लिंगक्सियन को नशे में धुत करने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो एक छोटे से घूंट से ही नशे में धुत हो गए। लेकिन वांग चेन ने सिस्टम की बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसका ध्यान पूरी तरह से जियांग लिंगक्सियन की ओर आकर्षित था। माँ, मास्टर, वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन की ओर देखा और झिझकते हुए धीरे से पुकारा। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह देखना चाहता था कि क्या उसकी बातें सच थीं। मास्टर शब्द सुनकर जियांग लिंगक्सियन की आमतौर पर ठंडी और अलग अभिव्यक्ति अंततः थोड़ी नर्म हो गई। फिर उसने अपना वादा निभाया, मेज पर रखा शराब का गिलास उठाया और एक छोटा सा घूंट लिया और पाया कि इसका स्वाद वास्तव में फलों के रस जैसा था। मास्टर, 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 मैं मास्टर से बहुत प्यार करता हूँ, मास्टर कृपया इसे पूरा पी लीजिए। ठीक है मास्टर। वांग चेन जियांग लिंगक्सियन के पास वापस आया, अचानक आगे बढ़ा और अपनी बांह उसकी पतली गोरी बांह के चारों ओर लपेट दी, एक बिगड़े हुए सुंदर लड़के की तरह अभिनय किया। जियांग लिंगक्सियन ने फलों की शराब की चुस्कियां लेते हुए रुककर एक हल्की सी खुशी का एहसास जगाया। उसने बस वांग चेन की इच्छाओं को पूरा किया। 3 मिनट बाद जियांग लिंगक्सियन और वांग चेन मेज से किसी तरह पहले से ही बिस्तर पर आ गए थे, एक अंतरंग स्थिति में गले लग रहे थे। वांग चेन जियांग लिंगक्सियन के नाजुक शरीर को दबा रहा था, उसका चेहरा उसकी छाती में दबा हुआ था, उसके होंठ थोड़े से खुले हुए थे, बिना बोले उसके दिल की धड़कन सुन रहा था। इस बीच जियांग लिंगक्सियन की पतली बाहें वांग चेन की गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई थी और उसकी आंखें कुछ धुंधली और एकाग्र नहीं थी जब वह उसे देख रही थी। शिष्य, गुरुजी सचमुच सचमुच तुम्हें याद करते हैं? तुम मुझे क्यों याद करते हो? क्या मैं अभी यहां नहीं हूं? ये सुनते ही वांग चेन ने अपना लाल हो चुका चेहरा ऊपर उठाया, जिस पर नशे के लक्षण दिखाई दे रहे थे। उसने भौहें सिकुड़ी और थोड़ी खुली उलझन भरी आंखों से पूछा। हालांकि जब उसने जियांग लिंगजियन का हल्का गुलाबी सुंदर चेहरा और धुंधली आंखें देखी, तो वह क्षण भर के लिए उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गया। अब आप यहां हैं, लेकिन 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 क्या तुम जानते हो, इस जीवन में तुम्हारे गुरु ने तुम्हारा इंतजार किया है, सैकड़ों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से। वो 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 जियांग लिंगक्सियन की धुंधली आंखें, जैसे ही वह बोल रही थी, वांग चेन को गले लगाने और धीरे धीरे आंसू बहाने से खुद को रोक नहीं सकी। वांग चेन के हाथ अभी भी जियांग लिंगक्सियन की पतली कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे और वह जियांग लिंगक्सियन के रोने से क्षण भर के लिए हतप्रभ रह गया। चूंकि उसने केवल एक छोटा सा घूंट ही पिया था, इसलिए आश्चर्यचकित होकर उसे धीरे धीरे होश आया। धिक्कार है, ये फ्रूट वाइन, ये वाकई जानलेवा है। कॉन्सेप्चुअल वाइन बस अलग होती हैं, एक छोटा सा घूंट भी एक घूंट ही माना जाता है। होश में आने के बाद वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन की बांह को गले लगाने की अपनी पिछली शर्मनाक हरकतों के बारे में सोचा और मन ही मन कोसा। हालांकि जब उसने अचानक जियांग लिंगजियन को देखा जो नशे में धुत लाल सुंदर चेहरे के साथ उसकी बाहों में रो रही थी, तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। 100 साल, उसने 100 साल इंतजार किया। वांग चेन, जो अपने होश में आ गया था, धीरे धीरे उठ बैठा और धुंधली जियांग लिंगजियान को देखने लगा और उसके पहले कहे गए शब्दों को याद करने लगा। मत जाओ, मत जाओ। वांग चेन की हल्की सी हरकत से जियांग लिंगशियान तुरंत उत्तेजित हो गया, जिसने उसे गर्दन से पकड़कर तुरंत पीछे खींच लिया। अरे उफ, वांग चेन को उसने खींच लिया और तुरंत अपना चेहरा उसके सीमित संस्करण वाले बैग के बीच दबा लिया तथा धीमी आवाजों से जूझने लगा। शिष्य, मत करो। जियांग लिंगजियन ने भी उसके अनुचित कार्यों को महसूस किया, उसका शरीर थोड़ा सा जम गया और अपनी धुंधली अवस्था में वह सहज रूप से वांग चेन को धक्का देना चाहती थी, लेकिन वह वांग चेन को जाने नहीं दे सकी और एक पल के लिए उसके सुंदर चेहरे पर एक बहुत ही झिझक भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी। जियांग लिंगक्सियन की खूबसूरत आंखें धुंधली और भ्रमित थीं, क्योंकि उसने वांग चेन को पकड़ रखा था। उसका सुंदर लाल चेहरा अनन्य दिखा रहा था, जो वास्तव में मनमोहक था। अगर तुम यह नहीं चाहते तो मुझे छोड़ दो। वांग चेन ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश की और जियांग लिंगक्सियन पर चिल्लाया, जिसका चेहरा गर्म लाल और धुंधला था। मैं नहीं चाहता, आप कर नहीं। एक पल की हिचकिचाहट के बाद जियांग लिंगशियन ने उसे जाने नहीं दिया, बल्कि उसे और भी जोर से गले लगा लिया। वांग चेन आराम और बेचैनी के बीच झूल रहा था। तो फिर अगर तुम ऐसी हो तो मैं इसे ले जाऊंगा। वांग चेन के हाथ, जो उसकी कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे, जियांग लिंगक्सियन के कपड़े उतारने के लिए या शायद उसकी स्कर्ट में हाथ डालने के लिए। जैसी की उम्मीद थी, अगले ही पल जियांग लिंगशियान ने वैसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त की जैसी वांग चेन ने अनुमान लगाया था। नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते। जियांग लिंगक्सियन एक पल के लिए घबरा गई, उसने जल्दी से वांग चेन को धक्का दे दिया। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया, वह नशे में और शर्मीली दोनों थी। वांग चेन को अचानक जियांग लिंगक्सियन ने धक्का दे दिया और वह बिस्तर के भीतरी हिस्से पर गिर गया। उसका सिर चक्कर खाकर किसी चीज से टकराया। मैं, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। हल्की नशीली फ्रूट वाइन पीने के बाद जियांग लिंगक्सियन का मन उलझन में पड़ गया। उसने वांग चेन की तरफ देखा, जो आंखें बंद करके सिर हिला रहा था और मुंह फुलाकर माफी मांगी। उसे बहुत बुरा लगा। कुछ होश में आने के बाद वांग चेन कुछ असहाय होकर उठ खड़ा हुआ। वह बिस्तर से उठकर शांत होना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसकी कमर के कपड़ों पर एक खिंचाव लगा और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मत, मत जाओ। शिष्य, क्या तुम यहीं सो सकते हो? जियांग लिंगक्सियन ने पहले की तरह वांग चेन को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन इस बार उसकी कमर के चारों ओर उसकी धुंधली आंखें विनती से भरी हुई थीं। कुछ सेकंड की हिचकिचाहट के बाद वांग चेन थोड़ा लाल चेहरे और शरीर में गर्मी महसूस करते हुए जियांग लिंगक्सियन की बाहों में लेट गया। ऐसा नहीं था कि वह उठना नहीं चाहता था, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे एक बार फिर बेहद असुरक्षित जियांग लिंगक्सियन द्वारा वापस खींच लिया गया था। इसके अलावा, यद्यपि उसके शब्द उससे न जाने की विनती कर रहे थे, लेकिन उसके कार्य दृढ़ थे और उसने उसे कसकर पकड़ रखा था। यदि वह विरोध नहीं कर सकता तो वह इसका आनंद भी ले सकता है। हालांकि जियांग लिंगक्सियन की ताकत उस समय बहुत अधिक नहीं थी और वह अभी भी मुक्त हो सकता था, फिर भी वह इसका आनंद लेने में खुश था। वांग चेन ने बस हार मान ली, जियांग लिंगजियन पर लेट गया और चुपचाप उसके सुंदर लाल चेहरे को देखने लगा। विशेषकर उसका धुंधला रूप, उसका सिर थोड़ा हिल रहा था, उसके सुंदर चेहरे पर कुछ आंसू के धब्बे थे और वह कुछ अज्ञात बातें बुदबुदा रही थी। वह एक दयनीय छोटी बिल्ली के बच्चे की तरह थी, जो अपनी पूंछ हिला रही थी और अपने मालिक वांग चेन से उसे न छोड़ने की विनती कर रही थी। एक क्षण के लिए वांग चेन को अचानक प्यास लगी और उसने सहज ही अपना चेहरा थोड़ा सा उसके करीब कर लिया। वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन के गुलाबी और कोमल होंठों को देखा, उसे प्यास लगी और उसे चुपके से चूमने का विचार उसके मन में बढ़ता रहा। क्या मुझे अब एक चुंबन चुरा लेना चाहिए? बस एक चुंबन, एक चुंबन, एक चुंबन। जैसे ही यह विचार वांग चेन के मन में आया, ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में अनगिनत राक्षसी आवाजें गूंज उठी। विचारों में डूबा हुआ वांग चेन का चेहरा जियांग लिंगक्सियन के लाल थोड़े नशे में धुत चेहरे के करीब आता गया। वे एक दूसरे की सांसों की आवाज भी स्पष्ट रूप से सुन सकते थे, हवा में धीरे धीरे निकलती गर्म सांसें भी। गल्प, थोड़ा चकित गुलाबी गालों वाली अति सुंदर जियांग लिंगशियान को देखकर वांग चेन का गला अनायास ही हिल गया। जियांग लिंगक्सियन के पतले हाथ, जो उसकी कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे, ने भी माहौल को थोड़ा गर्म होते हुए महसूस किया। अपने शरीर में अचानक गर्मी महसूस करते हुए वह अपनी आंखें थोड़ी सी खोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकी और वांग चेन को एकटक देखने लगी। जियांग लिंगक्सियन की आंखें थोड़ी सी खुली हुई थी और वह एक पल के लिए वांग चेन के चेहरे को देखती रही जो उसके करीब आता जा रहा था। वह ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वांग चेन क्या करना चाहता है, लेकिन उसका उलझा हुआ दिमाग उसके विचारों में बाधा डाल रहा था जिससे उसके चेहरे पर एक खालीपन सा छा गया। इसलिए भले ही वांग चेन का सुंदर चेहरा कुछ इंच की दूरी पर था, जियांग लिंगक्सियन उसे खाली और चकित होकर देखता रहा। जैसे जैसे उनके चेहरे करीब आते गए, वांग चेन और जियांग लिंगक्सियन दोनों की दिल की धड़कनें अनायास ही तेज हो गईं और वे एक अकथनीय घबराहट से भर गए। वांग चेन ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, उसने अपना संकल्प मजबूत किया और धीरे धीरे जियांग लिंगक्सियन के होठों को चूमने के लिए झुका। लेकिन जियांग लिंगक्सियन ने एक क्षण के लिए स्तब्ध होकर सहज रूप से अपना लाल चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। हालांकि उसका दिमाग उलझन में था, फिर भी उसे अंततः समझ आ गया कि वांग चेन क्या करने की कोशिश कर रहा था। एक शिष्य के रूप में अपने गुरु को चूमने का साहस करना सचमुच विद्रोही अवज्ञाकारी शिष्य। वांग चेन जियांग लिंगक्सियन की गति पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका और उसके होंठ उसके गोरे गुलाबी गाल पर आ गए। जियांग लिंगक्सियन अभी भी कुछ उलझन में थी और गाल पर चुंबन होने पर उसने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, उसकी आंखें बस बाईं ओर की दीवार को घूर रही थी। यह आदमी ऐसे समय में भी मुझे मना कर देता है, कितना क्रोधजनक है। वांग चेन का चेहरा फिर से उसका पीछा कर रहा था, हार मानने को तैयार नहीं था, मानो वह आज उसे चूमने तक नहीं रुकेगा। लेकिन हर बार जियांग लिंगक्सियन अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेती और हठपूर्वक उसे अपने होठों को चूमने से मना कर देती, इसलिए उसके सभी चुंबन उसके हल्के लाल गालों पर पड़ते। एक पल में जियांग लिंगक्सियन के पहले से ही लाल गाल इस जानवर वांग चेन द्वारा दर्जनों बार चूसे जाने के बाद और भी लाल हो गए। हालांकि यह अनुभूति जैसे उसके बाएं गाल से दाहिने गाल तक फैली लाल चमक जियांग लिंगक्सियन को और भी अधिक आकर्षक रूप से सुंदर बना रही थी। ऐसा लग रहा था कि जियांग लिंगक्सियन अब इसे सहन नहीं कर पा रही थी, उसने अपने होठों को थोड़ा भींच लिया, अपनी नाजुक भौहों को सिकोड़ लिया और वांग चेन को विशेष रूप से गलत अभिव्यक्ति के साथ देखा। प्लीज, क्या अब तुम मुझे चूम नहीं सकते? हम गुरु और शिष्य हैं, हम ऐसे नहीं हो सकते। जियांग लिंगक्सियन की आवाज जब उसे चूमा जा रहा था नर्म पड़ गई, उसकी सांसों में तात्कालिकता का भाव था, उसकी स्पष्ट ठंडी आवाज में विनती थी। वांग चेन, जो मूल रूप से अपना पीछा जारी रखने का इरादा रखता था, रुक गया जब उसने जियांग लिंगक्सियन को ऐसे देखा जैसे वह अन्याय के कारण रोने वाली थी। ठीक है, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, अच्छा बनो। एक क्षण के स्तब्ध रहने के बाद वांग चेन जियांग लिंगक्सियन की दयनीय नाजुक उपस्थिति को सहन नहीं कर सका और उसके अनुरोध पर सहमत हो गया। क्योंकि वह जियांग लिंगक्सियन की गति पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था, वह लंबे समय से चुंबन कर रहा था लेकिन उसके होंठों तक नहीं पहुंच पा रहा था, जो चुंबन के लिए बहुत आसान लग रहे थे। हालांकि वह संतुष्ट था, कम से कम उसके होंठों को चूमने के बहाने उसने उसके गोरे और कोमल चेहरे को दर्जनों बार चूमा था। पहले तो चुंबन की बात तो दूर, उसे छूने पर भी लोग उसे लंबे समय तक घूरते रहते थे। इस समय वांग चेन स्पष्ट रूप से अपने होंठों पर एक हल्की ठंडी खुशबू महसूस कर सकता था और उसने सहज रूप से उन्हें चाट लिया। जियांग लिंगक्सियन को देखते हुए, जो अब एक कोमल नाजुक महिला की तरह लग रही थी, वांग चेन की आंतरिक स्नेह भावना सचमुच फूटने वाली थी। अपने पिछले जीवन में 1000 वर्षों से अधिक समय तक, एक पूर्ण सहस्राब्दी तक, जियांग लिंगक्सियन ने इस जीवन में केवल अभी उसे इस तरह का आचरण दिखाया था। पूर्व जियांग लिंगक्सियन हमेशा बहुत मजबूत और ठंडी थी, उसके शब्दों में अक्सर ठंडी आज्ञा या नाराजगी का संकेत होता था। लेकिन अब जब वांग चेन ने उसके गाल को चूमा तो उसने अविश्वसनीय रूप से अन्याय महसूस करते हुए उससे केवल रुकने की विनती की। ये सोचकर वांग चेन ने उसके सिर के खूबसूरत बालों पर धीरे से हाथ फेरा। जियांग लिंगक्सियन ने थोड़ा विरोध किया लेकिन आखिरकार वह वहां से नहीं हटी। शिष्य, क्या अब सोना ठीक है? कृपया गुरु को छोड़कर मत जाना। ठीक है। जियांग लिंगक्सियन की आंखें, जो थोड़ी खुली हुई थी और आंसुओं से चमक रही थी, दयनीय दृष्टि से वांग चेन की ओर देख रही थी। उसकी दयनीय नाजुक उपस्थिति को देखकर वांग चेन को लगा कि अगर वह उसे मना कर देगा तो वह शायद तुरंत रोना शुरू कर देगी। वांग चेन को पता था कि लड़कियां स्वाभाविक रूप से भावुक होती हैं और जियांग लिंगक्सियन जैसी लड़की के लिए तो और भी अधिक, जिसमें स्नेह की कमी थी, वह अत्यंत संवेदनशील होनी चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा। वांग चेन ने धीरे से उसके सुंदर बालों को सहलाया, उसकी आवाज धीमी थी जब उसने उसे जवाब दिया। वह उसे कुछ हद तक आश्वस्त करना चाहता था। बाद में भी आप नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो, आप नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो, आप नहीं जा सकते। जियांग लिंगक्सियन की आवाज अब ठंडी नहीं रही बल्कि धीमी हो गई थी, वह स्पष्ट रूप से बुदबुदा रही थी, उसकी बाहें उसके आलिंगन को और मजबूत कर रही थी। ये देखकर वांग चेन उसे उठाते समय केवल उसे मना सकता था। फिर वह उसके नाजुक शरीर से हटकर बिस्तर के अंदर की तरफ लेट गया, ताकि जियांग लिंगक्सियन के शरीर पर दबाव न पड़े, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह सहज न हो जाए। पूरे समय तक पकड़े रहने के दौरान जियांग लिंगक्सियन उससे कसकर चिपकी रही, उसकी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लिपटी रहीं, लगभग पूरी तरह से वांग चेन पर लटकी रहीं। जैसे ही वे सोने की स्थिति में आ गए, जियांग लिंगक्सियन सहज रूप से फिर से वांग चेन के गर्म शरीर में झुक गई, मानो तभी उसे मन की शांति महसूस हो सकती थी। वांग चेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जियांग लिंगक्सियन धीरे से अपने गर्म लाल गाल को उसकी गर्दन में दबा रही थी। आह, ये कैसा गुरु शिष्य का सच्चा आत्मीय रिश्ता है। गुरु होने के नाम पर तुम मुझे हमेशा क्यों ठुकराते हो? वांग चेन ने धीरे से जियांग लिंगक्सियन के सिर को सहलाया, मन ही मन आह भरी। जियांग लिंगक्सियन के विचारों को समझने में कुछ हद तक असमर्थ रहा। एह, लेकिन बात यही है, क्या मेरा मूल इरादा उसे नशे में धुत करके कमरे में सामान उलटने के लिए फुसलाना नहीं था? वांग चेन ने अपनी बाहों में गर्माहट महसूस की और काफी देर तक स्तब्ध रहने के बाद उसका मन अचानक महत्वपूर्ण बात को याद करके चकरा गया। लिंगक्सियन, क्या तुम सो रहे हो? वांग चेन ने अपना चेहरा थोड़ा नीचे किया और ध्यान से जियांग लिंगक्सियन से पूछा, जो उसकी गर्दन में दफन था। हम, ऐसा लग रहा था कि जियांग लिंगक्सियन सो गई थी, लेकिन उसने फिर भी नींद में एक हल्की कराह निकाली जो वांग चेन को जवाब दे रही थी। इसे भूल जाओ, उसे देखकर लगता है कि वह शायद होश में नहीं आएगी, चलो हम साथ में सोते हैं। एकमात्र अनिश्चितता यह है कि कल जब वह जागेगी तो क्या होगा। वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन के नाजुक शरीर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली और फिर उसने धीरे से एक पैर उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेट दिया, अपनी आंखें बंद कर ली और एक पल के लिए विचार करने लगा। चलो कल की चिंता कल ही करते हैं, मैंने उसे केवल शराब पीने के लिए बहकाया था, वह ठीक हो जाएगी, अधिक से अधिक उसे विलो की टहनी से कुछ 100 बार कोड़े मारे जाएंगे। हालांकि अब उसके साथ इतना अंतरंग होने के बारे में सोचते हुए और यह कि यह उसकी इच्छा थी, यहां तक कि वह विनती भी कर रही थी, वांग चेन को लगा कि यह पूरी तरह से इसके लायक था। वांग चेन ने उनके पीछे से रजाई खींचकर दोनों के शरीर को ढक दिया और फिर उसकी चेतना धीरे धीरे खाली हो गई और वह गहरी नींद में सो गया। उनके अनोखे आंतरिक विचार, जियांग लिंगक्सियन को प्यार करने का एक और दिन, लेकिन आज मुझे एक प्रतिक्रिया मिली, वह विशेष रूप से प्यारी थी, मुझे वह बहुत पसंद है। अपने शिष्य से प्रेम करने का एक और दिन, लेकिन आज मेरा शिष्य पार्श्विक इच्छाओं से ग्रस्त लग रहा था और एक विद्रोही शिष्य बनना चाहता था, वह विशेष रूप से शरारती था, मुझे वह बहुत पसंद है। अगली सुबह सूरज की रोशनी की एक किरण ने ताइजू अमर संप्रदाय के बाहर की भूमि को रोशन कर दिया। ताइजू अमर संप्रदाय के अंदर बिना किसी बाधा के दो लोग ताइक्सू सेंटेस हॉल के अंदर बिस्तर पर एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हल्की नशीली फल वाली शराब का असर खत्म हो गया था, क्योंकि जियांग लिंगक्सियन की खूबसूरत आंखें वांग चेन की गर्दन से सटी हुई थोड़ी कांप रही थी। इस समय उसके चेहरे पर हल्का सा लालपन गायब हो चुका था और वह अपने सामान्य रूप में लौट आई थी, ठंडी, महान और अलंघनीय। हालांकि एक क्षण बाद जियांग लिंगक्सियन के गाल फिर से गर्म हो गए और अनियंत्रित रूप से गर्म हो गए। जियांग लिंगक्सियन वांग चेन की बाहों में लिपटी हुई थी और पिछली रात की यादें असाधारण रूप से स्पष्ट थी। उसने महसूस किया कि शर्म की एक तीव्र भावना उसके पूरे शरीर में तेजी से फैल रही है, जिसके कारण वह एक क्षण के लिए काफी अकड़ गई। मेरे शिष्य की फलयुक्त शराब में सचमुच समस्या थी। इसके अलावा वह मेरे मुंह को चूमना भी चाहता था। मेरी शिष्या ने उसे जानबूझकर फलों वाली शराब पिलाने के लिए बहकाया होगा। मैं भी मूर्ख ही रहा होगा, जो स्पष्ट रूप से जानता था कि कोई समस्या है, फिर भी उसकी इच्छा के अनुसार चल रहा था और जब वह बार बार मास्टर पुकारता था तो मैं उसे पी जाता था। जैसे ही जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन के कोमल और दृढ़ शरीर को महसूस किया, उसके ऊपर पश्चाताप और शर्म की अंतहीन लहर छा गई, जबकि वह पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। जियांग लिंगक्सियन की प्रतिक्रिया के बाद वह तुरंत शर्म से नहीं उठी, बल्कि सावधानी से थोड़ा सा हिल गई। हालांकि परिणाम उसकी पसंद के अनुसार नहीं था, क्योंकि वांग चेन ने उसे अपने दोनों हाथों और पैरों से गले लगा लिया था, मानो वह जियांग लिंगक्सियन को तकिए की तरह इस्तेमाल कर रहा हो। शरारती शिष्य, सचमुच एक विद्रोही शिष्य, अगर यह उसके पिछले जन्म में होता तो वह उसे जरूर कोड़े मारती। जियांग लिंगक्सियन का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था, क्योंकि उसने मन ही मन उसे 2 बार कोसा था, फिर भी उसने अनजाने में वांग चेन के गर्म आलिंगन का आनंद लिया। दिव्य पूज्य क्षेत्र साधना करने वाली होने के नाते वह एक साधारण निर्माण आत्मा क्षेत्र साधक के जाल में कैसे फंस सकती थी? एक विचार से वह चुपचाप बच निकल सकती थी, लेकिन जियांग लिंगक्सियन अपनी साधना भूल गई थी और थोड़ा संघर्ष करने के बाद वह झुंझलाहट में रुक गई। वह खुद को धोखा दे रही थी, ऐसा दिखावा कर रही थी कि वह वांग चेन के कड़े आलिंगन से मुक्त नहीं हो सकती, जबकि वास्तव में वह वहां से निकलना नहीं चाहती थी, क्योंकि इस तरह जब वांग चेन जागेगी तो उसके पास वांग चेन को पहले से ही दोषी ठहराने और जिम्मेदारी से बचने का एक कारण होगा। कोई बात नहीं, मैं अपने शिष्य को इस जीवन में उसकी पहली गलती के लिए माफ कर दूंगा, मैं उसे मारूंगा नहीं। हालांकि अगली बार जब वह मेरे लिए खाने या पीने के लिए कुछ भी लाएगा तो मुझे उसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। जियांग लिंगशियान ने मन ही मन संकल्प लिया और मन ही मन कसम खाई कि वह वांग चेन द्वारा लाई गई कोई भी चीज नहीं खाएगी। हालांकि उसने अनजाने में और सहज रूप से अपना गाल वांग चेन की गर्दन पर धीरे से रगड़ दिया, जिससे उसके होठों के कोने पर एक हल्का सा मोड़ दिखाई दिया। जब उसे होश आया तो उसने जल्दी से अपने होठों को भींच लिया और वांग चेन के साथ ऐसी अंतरंग हरकतें करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह जाग न जाए। हालांकि उसने पहले भी रात में वांग चेन के साथ अनगिनत बार ऐसा किया था, लेकिन वांग चेन हमेशा बेहोश रहता था क्योंकि उसे नशीला पदार्थ दिया गया था। तो जियांग लिंगक्सियन के लिए यह एहसास पूरी तरह से अलग था, जिसमें खुशी और रोमांचकारी आशंका की भावना अधिक थी। दोनों दोपहर तक गले मिलते रहे, जब तक कि वांग चेन की आंखें नहीं खुली और जियांग लिंगक्सियन ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली, नींद का नाटक करते हुए। जियांग लिंगशियान को तकिया बनाकर वांग चेन कल रात किसी और की तुलना में अधिक गहरी नींद सोई, क्योंकि वहां वास्तव में एक ठंडी हल्की सुगंध थी जो बहुत सुखदायक थी। खांसी खांसी। जैसे जैसे वांग चेन की चेतना धीरे धीरे साफ हुई, उसने अपनी गर्दन पर कुछ बालों से हल्की खुजली महसूस की और सहज रूप से खुजलाने के लिए अपना हाथ उठाया। लेकिन जब उसने अपनी गर्दन को छूने के लिए अपना हाथ उठाया तो उसे एक नर्म कोमल चेहरा महसूस हुआ, जिसे छूने पर अविश्वसनीय रूप से अच्छा लगा। जियांग लिंगक्सियन का नाजुक चेहरा चिकना, मुलायम और लचीला था और उसके चेहरे पर मांस का अनुपात पूरी तरह से संतुलित था, न तो बहुत मोटा और न ही बहुत पतला। वांग चेन हमेशा रात में उसके साथ सोता था और सुबह अकेले उठता था, इसलिए वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी गर्दन पर खुजली तुरंत बंद हो गई और उसने और खुजली करने की हिम्मत नहीं की। वह चौंक गया और उसने अपनी नजरें नीचे करके अपनी बाहों में मौजूद व्यक्ति को देखा। जियांग लिंगक्सियन की सोई हुई आकृति सामने आई, मानो किसी पेंटिंग में सोई हुई सुंदरी का मनमोहक दृश्य हो। यादें उभरने लगी और वांग चेन को कल रात जो कुछ भी किया था वह सब स्पष्ट रूप से याद आ गया। सब खत्म, मैं अब और नहीं, उस हल्की नशीली फ्रूट वाइन ने कहा था कि चाहे जितना भी पी लो बेहोश नहीं होगे। अब मैं सचमुच खत्म हो गया हूँ। वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन को पकड़ रखा था, उसका दिल मृत राख की तरह था और उसके दिमाग में जियांग लिंगक्सियन द्वारा पिछले जीवन में उसका पीछा करने और उसे पीटने के दृश्य घूम रहे थे। उनमें से अधिकांश दृश्यों में वह अभी भी एक शरारती मुस्कान पहने हुए थे, सिवाय उस समय के जब उन्होंने जियांग लिंगक्सियन को पूरी तरह से समझ लिया था। खैर, मुझे तो पिटना ही है, तो क्यों ना उसके सोने का फायदा उठाकर उसे एक दो बार चूम लूं। वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन के गुलाबी होठों को देखा और पिछली रात का विचार अनियंत्रित रूप से फिर से उभर आया। जब उसने कहा कि वह ऐसा करेगा तो उसने सचमुच ऐसा किया। उसने चुपचाप अपना शरीर दो बार हिलाया और धीरे धीरे अपना चेहरा नीचे किया और जियांग लिंगक्सियन के पास पहुंचा। हालांकि जैसे ही उसका चेहरा जियांग लिंगक्सियन की सांस को महसूस करने के लिए पर्याप्त करीब आया, उसकी अभिव्यक्ति अचानक कठोर हो गई, क्योंकि जियांग लिंगक्सियन की पलकें थोड़ी कांपने लगी और फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और वांग चेन को घूरने लगी। वह कैसे जाग गई? वह मुझे फिर से चूमना चाहता है। इस पल दोनों पूरी तरह से स्तब्ध थे। जियांग लिंगक्सियन को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने जागने का नाटक किया और अपनी आंखें खोली। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वांग चेन, ये शरारती शिष्य, अभी भी जिद्दी होगा, उसके होठों को चूमने के लिए तरस रहा होगा। इस समय दोनों हतप्रभ व्यक्ति कुछ हद तक स्तब्ध थे। एक सुंदर पुरुष और एक सुंदर स्त्री दोनों चुपचाप एक दूसरे को घूर रहे थे, एक दूसरे से नजरें मिलाए हुए। कल रात शराब पीकर तुम मुझे कैसे गोद में उठाकर बिस्तर पर ले गए? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं जमीन पर ही सोऊंगा। वांग चेन ने पहल की। उसके कुछ शब्दों ने पहले से ही भ्रमित जियांग लिंगक्सियन को और भी अधिक भ्रमित कर दिया। आप जियांग लिंगक्सियन की अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी हो गई और एक हल्की ठंड जो मूर्त लेकिन अलौकिक थी उसके शरीर से निकली। वांग चेन ये दृश्य देखकर चौंक गया। उसने जल्दी से जियांग लिंगक्सियन को अपने सभी अंगों से मुक्त कर दिया और तेजी से बिस्तर के पैर की ओर भागा, उससे दूर जाना चाहता था। जैसे ही वांग चेन बिस्तर से उठे वह एक कदम भी चूक गए और जमीन पर गिर पड़े और रेंगते हुए आगे बढ़े। जिस क्षण वांग चेन ने अपना शरीर छोड़ा, आसपास की ठंड क्षण भर के लिए जम गई और जियांग लिंगक्सियन के दिल में अनिच्छा की एक मजबूत भावना उमड़ पड़ी। अंत में दोनों एक कमरे के पूर्व में और दूसरा पश्चिम में खड़े होकर एक दूसरे को घूरने लगे। एक तो ठंड का नाटक कर रहा था और दूसरा सचमुच डर रहा था। कल आध्यात्मिक शक्ति से तुम्हारा फलयुक्त मदिरा क्यों नहीं उतर सका और मुझे धोखे से उसे पिलाने के बाद तुमने क्या किया? जियांग लिंगशियान उठकर बैठ गई, यहां तक कि उसने अपने शरीर को झुकाने का नाटक भी किया, लेकिन उसके सुंदर बालों के नीचे छिपे उसके कान पूरी तरह से लाल हो गए थे। उसे अपने सुंदर चेहरे पर शर्म को दबाना तो याद था, लेकिन वह अपने कानों के बारे में भूल गई जो इतने लाल थे कि उन्हें काटने का मन करता था। मैं ये मेरी गलती नहीं है, मैं भी कल रात नशे में था, मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब था। वांग चेन तुरंत समझ गया कि जियांग लिंगक्सियन नाटक कर रहा है, इसलिए पिटाई से बचने के लिए उसने भी जल्दी से नाटक करना शुरू कर दिया। ये सुनकर जियांग लिंगक्सियन एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें धीरे धीरे घूम गईं, ऐसा प्रतीत हुआ कि वह इस नाटक में अपने अगले कदम के बारे में सोच रही थी। अश्लील, बेशर्म, लेकिन अंत में शब्दों के अभाव के कारण वह कुछ और कह पाने में असमर्थ हो गई और केवल दो बिल्कुल हानिरहित शब्द ही बोल पाए। तो फिर क्या मैं चला जाऊं? वांग चेन ने अपने पीछे के दरवाजे की ओर इशारा किया और सुविधाजनक ढंग से भागने का अवसर प्राप्त किया। जियांग लिंगक्सियन ने यह दृश्य देखकर अपनी नाजुक भौहें थोड़ी से कुढ़ी और धीरे धीरे चुप हो गई। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम भूल गए हो कि तुमने कल रात क्या किया था? जियांग लिंगक्सियन, जो एक पल के लिए चुप रही, ने वांग चेन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने थोड़ा भौहें चढ़ाई और बेचैनी के साथ उससे फिर से सवाल किया। मैं सचमुच भूल गया था। शराब की वह बोतल मैंने पिछले जन्म में बनाई थी। ये बहुत शक्तिशाली है, एक संत आत्मा क्षेत्र साधक भी इसका आधा प्याला नहीं पी सकता। तो अपनी वर्तमान साधना के साथ मैंने कल बस एक छोटा सा घूंट लिया और पूरी तरह बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो मैंने पाया। वांग चेन दरवाजे के सहारे झुक गया, पूरी तरह से हतप्रभ दिख रहा था और उसने जियांग लिंगक्सियन के सभी सवालों का सच्चाई से जवाब दिया। उसकी बातें सुनकर जियांग लिंगक्सियन ने राहत की सांस ली। अब सब कुछ समझ में आ गया। तो कल रात उनके बीच जो अंतरंगता हुई थी, उसके नशे में धुत शिष्य ने वह सब भूल ही गया होगा। आखिरकार पुनर्जन्म के बाद उसके शिष्य में आए परिवर्तनों को देखते हुए वह उसे फिर से गुरु कैसे कह सकता है और इस तरह से। मास्टर, मास्टर, मास्टर। कल की वांग चेन की आवाज अनजाने में जियांग लिंगक्सियन के दिमाग में गूंज उठी और उसका मूड एक पल के लिए थोड़ा उज्जवल हो गया। तो अब क्या मैं जा सकता हूँ? वांग चेन ने फिर से अपने पीछे बड़े दरवाजे की ओर इशारा किया। वह अभी भी जाने के विचार पर अड़ा हुआ था। आखिरकार ताइशु सैन्य कब्रिस्तान में स्कारलेट रिफाइनिंग गोल्ड स्प्रिंग उसका इंतजार कर रहा था। जितनी जल्दी वह उसे हासिल कर ले उतना ही अच्छा होगा। उसकी आवाज सुनकर जियांग लिंगक्सियन की सुस्त गहरी आंखों ने वांग चेन की ओर देखा और उदासी का एहसास हुआ। उसने कल रात साफ साफ वादा किया था कि वह उसे नहीं छोड़ेगा। मैं कुछ काम निपटाने जा रहा हूँ। जियांग लिंगक्सियन ठंडे स्वर में खड़ी हुई, अपनी सफेद पोशाक को सीधा किया, जो नींद से थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई थी, और उदासीनता से बोली। अरे, वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन को एक शून्य दरार को फाड़ते हुए और उसमें प्रवेश करते हुए देखा। वह उसे रोकना चाहता था लेकिन शून्य दरार पहले ही बंद हो चुकी थी। जियांग लिंगक्सियन, तुम सचमुच बहुत दुष्ट हो। वांग चेन ने अपनी मुठियां भींच ली और हवा में दो घूंसे मारे। वह बहुत गुस्से में था। गुस्सा मत हो, नाराज मत हो, कल रात तो फायदा नहीं उठाया। कम से कम पत्ता गोभी के किनारे का स्वाद तो चख ही लिया। इस समय सिस्टम की नर्म आरामदायक आवाज प्रकट हुई जिससे वांग चेन थोड़ा शांत हो गया। एह, बेवकूफ कुत्ता सिस्टम, दफा हो जाओ। क्या तुम मुझे परोक्ष रूप से सुअर कह रहे हो? वांग चेन ने गुस्से में गाली दी, फिर उठकर अस्त व्यस्त मेज को व्यवस्थित करने के लिए उसकी ओर चल पड़ा। ये हल्की सी मादक फल वाली शराब अच्छी चीज है और ये स्ट्रॉबेरी भी, मैं इन्हें पैक करके आज रात उसके खाने के लिए रख दूंगी। वांग चेन ने कांच की बोतल का लकड़ी का डाट लिया, उसे बोतल की गर्दन में वापस ठूंस दिया और बिना खाए स्ट्रॉबेरी के कई डिब्बे रख दिए। काश वह हर दिन कल रात जैसी हो पाती, वांग चेन ने मेज को व्यवस्थित करते हुए सोचा, और सोचते हुए वह दो बार हल्की हंसी के साथ हंस पड़ा। बेवकूफ, भागो। वांग चेन ने डेस्कटॉप को साफ करने के बाद उसे कमरे में बंद कर दिया और वह केवल बिस्तर पर बैठकर अपने निजी पैनल की जांच कर सकता था। वांग चेन, काया अराजक नौ यांग दिव्य शरीर क्षेत्र बिल्डिंग स्पिरिट क्षेत्र नौवीं परत शिखर बिल्डिंग स्पिरिट क्षेत्र छठी परत के रूप में प्रच्छन्न गुई युआन क्षेत्र के माध्यम से तोड़ सकते हैं। नींव अभी भी उथली है। साधना कला अराजक नौ यांग दिव्य कला। भंडारण स्थान 1,000,000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन। महिलाओं के अंतरंग परिधान का एक नया सेट, एक ताजा शैली का पहनावा, एक स्वचलित सफेद दाऊवादी बागे, चिपचिपे तरल पदार्थों के लिए टिश्यू पेपर का एक सुपर बड़ा पैक, दो सजावटी युगलहार, ताजा फ्लिप फ्लॉप की एक जोड़ी। मूल बिंदु 2,25,358। समग्र मूल्यांकन एक बिल्डिंग स्पिरिट दायरे नौवीं परत आए। वांग चेन ने अपने पैनल पर प्रदर्शित क्षेत्र का निरीक्षण किया और फिर अपने शरीर को महसूस किया। वास्तव में उसे अभी भी अपनी नींव को स्थिर करने की आवश्यकता थी। इसके बाद उन्होंने अपने भंडारण स्थान की जांच की तथा विभिन्न शक्तिशाली गोलियों आदि को, जिन्हें दीर्घवृत्त द्वारा दर्शाया गया था, स्वचालित रूप से नजरअंदाज कर दिया। महिलाओं के अंतरंग परिधान का एक नया सेट। वांग चेन ने अपनी आध्यात्मिक समझ को खोज के लिए अपने भंडारण स्थान में बढ़ाया और अंततः एक अति सुंदर बैग में कपड़ों का एक सेट उसके हाथ में आ गया। चूंकि यह एक पूर्ण सेट था, इसलिए इसमें कई टुकड़े थे। ऊपरी शरीर के लिए सुरक्षात्मक कवर, निचले शरीर के लिए सुरक्षात्मक पैंट, बदलने के लिए शुद्ध सफेद, हल्के पीले और हल्के गुलाबी रंग के तीन तीन टुकड़े। हालांकि जब वांग चेन ने उन्हें देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी। सुरक्षात्मक आवरण और पैंट सभी सामान्य थे, लेकिन पैटर्न उसके लिए बहुत उपयुक्त थे। तीन जोड़ी सुरक्षात्मक पैंटों के दोनों तरफ नाजुक छोटी डोरी के डिजाइन थे और समग्र डिजाइन पर सुंदर गुलाबी स्ट्रॉबेरी आकार मुद्रित थे। ये सब सामान्य थे क्योंकि वांग चेन ने ब्लू स्टार पर ऑनलाइन शॉपिंग करते समय इन्हें देखा था। ये काफी सुंदर और प्यारे थे। तीनों सुरक्षा कवच भी बिल्कुल सामान्य थे, जो शुद्ध सफेद, हल्के पीले और हल्के गुलाबी रंग के थे। बस इतना ही था। सफेद वाले पर दो खरगोश के पैटर्न थे, पीले वाले पर दो पांडा के पैटर्न थे और गुलाबी वाले पर अभी भी दो बड़े स्ट्रॉबेरी के पैटर्न थे। सभी बहुत प्यारे थे। खांसी खांसी। हालांकि वांग चेन अकेला था, फिर भी उसने अपने हाथों में पकड़े कपड़ों की ओर देखा और अजीब सी खामोशी को तोड़ने के लिए कुछ आवाज निकाली। वांग चेन ने उन्हें नहीं खोला क्योंकि सिस्टम की हर वस्तु बिल्कुल साफ थी और वह अपने हाथों से उन्हें गंदा करने से डरता था। मुझे नहीं पता कि ये उसे सूट करेंगे या नहीं। जब मेरे पास समय होगा मैं उसे ये दे दूंगा, लेकिन जब मैंने अपने पिछले जीवन में उसे पूरी तरह से समझा था तो उस नज़र के आधार पर मुझे लगता है कि वे काफी उपयुक्त होने चाहिए। वांग चेन ने मानो कोई खजाना पा लिया हो। उसने सावधानी से सभी बंद कपड़ों को वापस अपने भंडारण स्थान में रख दिया और खुद से बुदबुदाया। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या जियांग लिंगशियान उन्हें चाहेगा, वांग चेन को इसकी कभी चिंता नहीं थी। जियांग लिंगशियान को उन्हें स्वीकार करवाने के उसके अपने तरीके थे। वह उन्हें पहनेगी या नहीं, ये वांग चेन को नहीं पता था क्योंकि वह देख नहीं सकता था। मुझे ये स्वयं चलने वाला सफेद दाऊवादी वस्त्र दिखाओ। वांग चेन बिस्तर पर खड़ा हो गया, अपने कपड़े उतार दिए और अपने भंडारण स्थान से लंबे सफेद बागे को पहन लिया, जो पहली नजर में दबंग लग रहा था। कितना सुंदर, कितना सुंदर, कितना सुंदर। पिछले जन्म में पहने गए जुवान जिन रोब से भी ज्यादा सुंदर। मेजबान, जब आप उस खजाने को पुनः प्राप्त कर लेंगे, जुवान जिन रोब, मैं दो वस्त्रों को एक साथ जोड़ सकता हूँ। वांग चेन ने सिस्टम की यांत्रिक ठंडी फिर भी कुछ हद तक मोहित आवाज सुनी और अपने पिछले जीवन से संत ग्रेड खजाने जुवान जिन रोब को याद किया। सिर हिलाया, वांग चेन ने अंततः ताजा शैली के परिधान, सजावटी युगलहार और ताजगी भरे फ्लिप फ्लॉप को देखा। जहां तक विवरण की बात है, वह भी ज्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि उन्होंने देखा कि बाहर हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश हो रही है। अंत में वांग चेन ने काले चप्पल पहनकर देखे, फिर उन्हें बिस्तर के नीचे रख दिया और योजना बनाई कि जब भी वह चाहेगा उन्हें पहन लेगा। चूंकि वह बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए वह केवल अपनी नींव को स्थिर कर सकता था और पहले यहां खेती शुरू कर सकता था। वांग चेन फर्श पर बिछे काले चप्पलों के ऊपर बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और सीधा बैठ गया। बाहर बारिश की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जल्द ही वांग चेन साधना की अवस्था में पहुंच गया और उसकी नींव धीरे धीरे स्थिर होने लगी। इसी तरह वह देर रात तक साधना करता रहा। वांग चेन की नींव अब अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो चुकी थी और उसे बनाने में सिर्फ एक दिन लगा। इस जीवन में वांग चेन ने कभी भी स्वयं को साधना करते हुए नहीं देखा, बल्कि तेजी से अपनी साधना को पुनः बहाल करते हुए देखा। इसलिए जैसे ही उसे लगा कि उसका आधार पूरी तरह से स्थिर हो गया है, वह धीरे धीरे खर्राटे लेने लगा, उसका शरीर और अधिक झुकने लगा। अंततः वांग चेन बिस्तर पर बैठ गया। उसने साफ ठंडी खुशबू वाली रजाई को उठाया और खुद को उससे ढक लिया। साधना कभी भी सोने जितना आरामदायक और सुकून देने वाला नहीं था। इसलिए जब वे तनाव मुक्त और तनाव मुक्त होते हैं तो साधना जगत में अधिकांश साधक वास्तव में सोना और अपने पूरे शरीर और मन को आराम देना पसंद करते हैं। ये वांग चेन के सोने से पहले का आखिरी क्षण था। कमरे में साफ की गई मेज पर उत्तम स्ट्रॉबेरी का एक डिब्बा दिखाई दिया, जो वांग चेन द्वारा रखे गए तीन डिब्बों में से एक था। और इसके साथ कागज का एक छोटा सा टुकड़ा भी था जिस पर वांग चेन की लिखावट थी। आठ वीरानी महाद्वीप से वांग चेन की लिखावट, कागज की सामान्य सामग्री, विशेष रूप से आपके लिए बचाया गया, खाने के लिए याद रखें। इस घटना के बाद कमरे में अंधेरा और सन्नाटा छा गया। ताइजू अमर संप्रदाय के केंद्र में चर्चा हॉल में जियांग लिंगक्सियन का सुंदर चेहरा अब ठंडा पड़ गया था जब वह आंतरिक संप्रदाय के एल्डम्यू होन की ओर देख रही थी, जो उस समय शिकायत दर्ज करा रहे थे। संप्रदाय प्रमुख, उसने मेरे कनिष्ठ शिष्य का हाथ तोड़ दिया और मैं सह गया। उसके शिष्य ने मेरे वरिष्ठ शिष्य को थप्पड़ मारा और मैं भी सह गया। लेकिन अब उसने बार बार अपनी किस्मत आजमाई है और मेरे कनिष्ठ शिष्य को, जो चोटों से उबर रहा था, तलवार के एक ही वार से लगभग आधा काट डाला है, जबकि मैं ध्यान नहीं दे रहा था। क्या तुम्हें पता है कि उस समय उसकी तलवार के वार से मेरे कनिष्ठ शिष्य की कमर आधी कट गई थी? उसे कितना नुकसान हुआ होगा। एल्डम्यू होन का सुंदर चेहरा पूरी तरह से ठंडा था जब वह मुख्य हॉल के ऊपर संप्रदाय के नेता को देख रही थी और गुस्से से अपनी शिकायत दर्ज करा रही थी। उसे इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहिए। दैत्यराज की बची हुई आत्मा को उसके शरीर पर परजीवी बनने की इजाजत देकर उसे फांसी दे देनी चाहिए। ये सुनकर जियांग लिंगजियन शांति से एक तरफ खड़ी हो गई। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसने थोड़े से खुले पतले होंठों के साथ धीरे से एक वाक्य कहा। यह सच था कि दानव भगवान की एक अवशिष्ट आत्मा उस पर परजीवी थी, लेकिन जियांग लिंगक्सियन वास्तव में उन सभी दुश्मनों को खत्म करना चाहता था जिन्होंने वांग चेन के साथ दुश्मनी पाल रखी थी। मेरे कनिष्ठ शिष्य ने कहा कि उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके शरीर में दानव भगवान की आत्मा का अवशेष है। ये बस एक दुर्घटना थी। इसके अलावा दानव भगवान की शेष आत्मा को हटाया जा सकता है, तो आपने मेरे शिष्य को एक ही तलवार के वार से मारने की कोशिश क्यों की? एल्दम युहोंग पहले से ही जियांग लिंगक्सियन की सुंदरता से थोड़ा ईर्ष्यालु थे और अब जियांग लिंगक्सियन के शांत व्यवहार ने उन्हें लगभग खून थूकने के बिंदु तक क्रोधित कर दिया। अगर मैं अपनी तलवार लेकर आपके शिष्य को दो टुकड़ों में काट दूं तो आपको कैसा लगेगा? एल्दम युहोंग ने जियांग लिंगक्सियन पर क्रोधित होकर भौहें चढ़ाई। उसके हाथ में एक लाल लंबी तलवार दिखाई दी, मानो वह अपनी धमकी को पूरा करने के लिए पूरी तरह से आमादा थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियांग लिंगक्सियन की हान तलवार उसके दाहिने हाथ में दिखाई दी और उसकी संत आत्मा क्षेत्र आभा भड़क उठी, पूरे हॉल को भर दिया, क्योंकि उसने सीधे अपना हाथ उठाया और तलवार से वार किया। शून्य के बड़े बड़े टुकड़े फट गए और एक ठंडी चमक चमकी और तुरंत गायब हो गई। विशाल तलवार क्यूई ने एल्दम युहोंग पर प्रहार किया जो संत आत्मा क्षेत्र के नौवें स्तर पर थे, जिससे वह चौंक गए और उन्होंने तुरंत अपनी तलवार उठाकर उसे रोक दिया। इस जीवन में जियांग लिंगक्सियन के विश्वास के अनुसार जो कोई भी वांग चेन को मरना चाहता था वह उसे पहले मरवा देती थी। जियांग लिंगक्सियन खुद को दूसरों को समझने में सक्षम नहीं थी, नहीं वह दूसरों को समझना चाहती थी। इस जीवन में वह केवल यही चाहती थी कि उसका शिष्य वांग चेन उसके साथ सुरक्षित और स्वस्थ रहे। ठीक है, ठीक है, ये सब झगड़ा, ये कैसी शिष्टता है? ताइजू संप्रदाय के नेता भी जियांग लिंगक्सियन से चौंक गए और जल्दी से अपना हाथ लहराने के लिए उठाया, तलवार क्यूई को कुचल दिया जिसमें अंतहीन हत्या का इरादा था। इस पल एल्दम युहोंग आखिरकार थोड़ा शांत हो गईं। वह बस मुंह चला रही थी, दिखावा कर रही थी। कौन जानता था कि सेंटनी इतनी पागल हो जाएंगी। एल्दम युहोंग, आपको पहले वापस जाना चाहिए। आपके कनिष्ठ शिष्य के इलाज का सारा खर्च संप्रदाय के खजाने से लिया जाएगा। लेकिन अगर मुझे आपके शिष्य में राक्षसी शक्ति का जरा सा भी संकेत मिला तो मैं स्वयं उसे मृत्युदंड दूंगा। जियांग लिंगक्सियन की ठंडी आंखों में अभी भी अंतहीन हत्या का इरादा और उसके दाहिने हाथ में हान तलवार को हिलते हुए देखकर संप्रदाय के नेता ने जल्दी से उसे छोड़ने का आग्रह किया। ये सुनकर एल्दम युहोंग यद्यपि अपने दिल में क्रोधित थी, फिर भी विवेक से पीछे मुड़ी और जल्दी से मुख्य हॉल से गायब हो गई। अब आप आखिर क्या करना चाहते हैं? क्या यह एक नए स्वीकृत कनिष्ठ शिष्य के लिए वाकई सार्थक है? ग्रैंड मास्टर ताइजू एक बूढ़े व्यक्ति थे और इस समय अपने अनुभवी और दयालु बूढ़े चेहरे पर उन्होंने बेचैनी से भरे चिंतित भाव के साथ जियांग लिंगक्सियन को देखा। एल्दम युहोंग को जाते हुए और केवल खुद और ग्रैंड मास्टर ताइजू को हॉल में रहते हुए देखकर जियांग लिंगक्सियन ने अंततः अपनी हान तलवार को दूर रख दिया। उसकी आभा धीरे धीरे पीछे हट रही थी। यह इसके लायक है, जो कोई भी उसे छूने की हिम्मत करेगा मैं उसे मार डालूंगा। हालांकि ग्रैंड मास्टर ताइजू को जियांग लिंगक्सियन का जवाब बर्फ की तरह ठंडा था और उसके शब्दों में अंतहीन ठंडक थी। ग्रैंड मास्टर ताइजू के शब्द रुंध गए और उन्होंने अपनी कनपटियों को रगड़ने के लिए हाथ उठाया। उनकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से असहाय हो गई। कोई बात नहीं, तुम वापस जाओ। तुम्हारी गुरु वह बूढ़ी औरत हाल ही में फिर से अपने महान सम्राट क्षेत्र की सफलता में असफल रही है और उसे जल्द ही एकांतवास से बाहर आना चाहिए। ग्रैंड मास्टर ताइजू, जिनके सिर पर सफेद बाल थे, मुख्य हॉल में एक कुर्सी पर बैठे थे और अपनी कनपटियों को रगड़ रहे थे। वह अपनी कनिष्ठ बहन से सचमुच परेशान थे, जिनसे उनकी मुलाकात केवल कुछ ही बार हुई थी। ये सही है, ग्रैंड मास्टर ताइजू भी बूढ़ी महिला हान जून के शिष्य थे, लेकिन उन्होंने जन्म से ही हान जून को अपना गुरु मान लिया था। और जियांग लिंगजियन वह ठंडी कनिष्ठ बहन थी जिसे हान जून 3000 वर्षों से अधिक समय तक साधना करने के बाद अचानक बाहर से वापस लाया था। सामान्यतः उनकी यह छोटी बहन विशेष रूप से चिंतामुक्त रहती थी, क्योंकि जियांग लिंगशियान दूसरों के साथ बातचीत नहीं करती थी। वह विश्वसनीय रूप से उदासीन थी, उसके दिमाग में साधना के अलावा कुछ भी नहीं था। यहां तक कि वह जो उसका बड़ा भाई था उससे कुछ ही बार मिला था और जब तक कोई बड़ी घटना न घट जाए तब तक कोई संपर्क नहीं हुआ था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी कनिष्ठ बहन जियांग लिंगक्सियन अब अपने एक शिष्य के लिए ताइजू अमर संप्रदाय में इतनी अराजकता पैदा करेगी। अफसोस, अंत में यह अभी भी आप पर निर्भर है, इस सस्ते वरिष्ठ भाई पर जिससे वह मुश्किल से मिली है उसकी गंदगी को साफ करने के लिए। दयालु चेहरे वाले ग्रैंड मास्टर ताइजू हॉल की मुख्य सीट पर बैठे थे, जियांग लिंगक्सियन की पीछे हत्ती हुई आकृति को देख रहे थे। उनका मूड वास्तव में चरम पर असहाय था। आमतौर पर कोई संपर्क नहीं होता था, लेकिन जब कुछ होता था तो एक घटिया वरिष्ठ भाई होने के नाते उसे सहना उसकी जिम्मेदारी होती थी। संप्रदाय प्रमुख होने के नाते वह सचमुच बहुत हताश हो जाता था। हालांकि अगर वह ताइजू संप्रदाय के नेता के रूप में जियांग लिंगक्सियन का मूल्यांकन करें, वह अभी भी जियांग लिंगक्सियन की बहुत प्रशंसा करता था। केवल 200 वर्षों में संत आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर तक साधना करना वास्तव में एक स्वर्ग विरोधी प्रतिभा थी। लगता है उसे अपनी छोटी बहन के शिष्य पर ध्यान देने की जरूरत है। शायद यही उसकी कमजोरी है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अन्यथा उसकी कनिष्ठ बहन के वर्तमान आचरण को देखते हुए यदि उसके शिष्य को कुछ हो गया तो वह संभवतः पूरे ताइजू अमर संप्रदाय को उलट देगी। ग्रैंड मास्टर ताइजू हॉल की मुख्य सीट पर बैठे गुप्त रूप से वांग चेन को जानने का अवसर खोजने की योजना बना रहे थे। हालांकि ग्रैंड मास्टर ताइजू इस बात से अनजान थे कि हालांकि वह अब वांग चेन को नहीं जानते थे, वांग चेन निश्चित रूप से उन्हें उस बुरे बुरे आदमी को जानते थे। आखिरकार उनके पिछले जन्मों में उनका रिश्ता बहुत अच्छा था, जहां वे नशे में धुत होने के बाद एक ही पैंट पहनते थे। वांग चेन बाईं पैंट में रेंगता था और वह दाईं पैंट में रेंगता था, लेकिन ये कहना पड़ा सिस्टम की पैंट वास्तव में अच्छी गुणवत्ता की थी। अपने पिछले जीवन में एक समय के लिए पूरे 8 उजाड़ महाद्वीप के साधकों की नजर में वे थे हर जगह भटकने वाले दो पागल। यह मामला समाप्त हो गया। ताइजू अमर संप्रदाय के भीतर गहरे ताइक्सु सेंटेस हॉल के अंदर, जिसे पूरी तरह से फॉर्मेशन द्वारा सील कर दिया गया था, कमरे के केंद्र से परिचित शून्य उतार चढ़ाव और आंसू निकले और जियांग लिंगक्सियन धीरे धीरे अंदर से उभरा। जियांग लिंगक्सियन, जिसके अति सुंदर चेहरे पर थकान के भाव थे, को अंततः कमरे के अंदर बिस्तर पर उस व्यक्ति को देखकर बहुत राहत महसूस हुई। सोता हुआ शिष्य, कितना प्यारा। जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन को देखा, जिसके होंठ तकिए के कारण उसके चेहरे पर दबाव पड़ने के कारण थोड़े सिकुड़े हुए थे और उसके ठंडे सुंदर होठों के कोने अनजाने में थोड़ा ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। फिर उसने एक छोटा धूपबत्ती बना निकाला और उसे मेज पर रख दिया, जिससे एक रंगहीन, गंधहीन, हानिरहित और लाभदायक गैस धीरे धीरे फैलने लगी। जियांग लिंगक्सियन को बिस्तर पर जाने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि उसने वांग चेन को गहरी नींद में सुलाने की योजना बनाई, इसलिए उसने थोड़ी देर और बैठने का फैसला किया। जैसे ही वह बैठने वाली थी, एक अनजाने नजर ने उसकी पतली भौहों को थोड़ा सा सिकोड़ दिया और उसने उलझन में अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मेज पर एक सुंदर कांच के डिब्बे में साफ स्ट्रॉबेरी रखी हुई थी, साथ में एक छोटा सा नोट भी था जो स्टिकी नोट जैसा था। विशेष रूप से आपके लिए छोड़ा गया है, इन्हें खाना, याद रखें। जियांग लिंगक्सियन ने नोट उठाया और उसकी विषय वस्तु पढ़ी तथा अंत में एक प्यारा सा इमोजी देखा। इस समय जियांग लिंगक्सियन का ठंडा दिल ऐसा लगा जैसे पिघल गया हो और दिन भर की थकान तुरंत गायब हो गई। छोटा सा नोट नीचे रखते हुए जियांग लिंगक्सियन का दिल अप्रत्याशित रूप से अधिक खुश था और उसकी स्पष्ट क्रिस्टल जैसी आंखें मेज पर रखी स्ट्रॉबेरी को देख रही थी। ये स्ट्रॉबेरी ठीक होनी चाहिए, है ना? जियांग लिंगक्सियन को अचानक पिछली रात याद आ गई और उसका सुंदर हाथ जो उसने बढ़ाया था थोड़ा रुक गया, लेकिन एक क्षण बाद उसने फिर भी हाथ बढ़ाया, एक स्ट्रॉबेरी उठाई, उसे अपने होठों से लगाया, अपने पतले होठों को थोड़ा सा खोला और एक छोटा सा टुकड़ा खा लिया। यदि उसमें कुछ भी डाला जाता तो भी जब तक वह उसके शिष्य द्वारा दिया जाता वह उसे खाने को तैयार रहती। जियांग लिंगक्सियन ने अपनी स्कर्ट को चिकना किया और बैठ गई, खुशी से स्ट्रॉबेरी को छोटे छोटे टुकड़ों में खाती रही, जबकि वांग चेन के गहरी नींद में जाने का इंतजार कर रही थी। जब उसे लगा कि अब समय आ गया है तो जियांग लिंगक्सियन ने स्ट्रॉबेरी को सावधानीपूर्वक एक तरफ रख दिया, मानो वे कोई खजाना हो, और उन्हें अपने आत्मा स्थान में रख दिया। फिर वह बिस्तर की ओर बढ़ी, धीरे से रजाई उठाई, जूते उतारे और नंगे गोरे पैरों के साथ चादर ओढ़ ली। वांग चेन के गर्म शरीर को गले लगाने के बाद जियांग लिंगक्सियन, जिसका दिल वांग चेन को छोड़ने के बाद से खाली और सुरक्षा की कमी महसूस कर रहा था, अंततः इस पल में उसे भरा हुआ महसूस हुआ। उसने धीरे से वांग चेन के शरीर से निकलने वाली हल्की गर्म खुशबू को सूंघा। जियांग लिंगक्सियन ने अभी भी अवचेतन रूप से धीरे धीरे अपना सुंदर चेहरा वांग चेन की गर्म गर्दन में दबा दिया, एक बिल्ली के बच्चे की तरह धीरे से रगड़ रही थी। जियांग लिंगक्सियन को पता ही नहीं चला कि उसने यह आदत कब विकसित कर ली, जब वह थका हुआ महसूस करती थी तो उसे ऐसा करना बहुत पसंद था। उसे याद आया कि ऐसा लगता है कि यह सब उसके पिछले जन्म में वांग चेन को सुलाने के लगभग 100वें वर्ष से शुरू हुआ था। प्रारंभ में अपने पिछले जीवन में जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन को केवल अपने शिष्य के रूप में लिया था ताकि वह उसके शरीर के भीतर यिन शीत ऊर्जा को सामंजस्य बनाने के लिए उसका उपयोग कर सके। जब वह पूरी तरह से ठंडी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकी तो उसने लगातार खुद को चेतावनी देना शुरू कर दिया कि वह वांग चेन को आधी रात में सोने के लिए ना पकड़े। हालांकि अंततः उसने पाया कि एक बार जब वह रात के मध्य में वांग चेन के शरीर के तापमान को महसूस नहीं कर पाती थी तो वह साधना के दौरान भी चिड़चिड़ी हो जाती थी। यद्यपि वह अपने शरीर के भीतर यिन शीत ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती थी, उसने पाया कि वह वांग चेन से छुटकारा नहीं पा सकती थी। अपने पिछले जीवन में जब वह महान सम्राट क्षेत्र शिखर तक पहुंचने के लिए एकांतवास में थी तो वांग चेन के बिना उसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि एकांतवास से बाहर आने के बाद वह कई बार वांग चेन से मिलने के लिए उत्सुक थी, लेकिन अंततः उसने निषिद्ध भूमि में वांग चेन की मृत्यु की खबर सुनी, जिसने जियांग लिंगक्सियन को तुरंत पागल कर दिया। अपनी हान तलवार का प्रयोग करते हुए उसने 8 उजाड़ क्षेत्रों में अपना रास्ता बनाया। 8 उजाड़ और 28 क्षेत्र, यहां तक कि सबसे अधिक झुलसाने वाला फीनिक्स ज्वाला क्षेत्र भी पूरी तरह से बर्फ के क्षेत्र में जम गया था। शिष्य, कुछ दिनों में गुरु तुम्हें बाहर जाने देंगे, लेकिन मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि तुम गुरु को छोड़कर चुपके से चले नहीं जाओगे। जियांग लिंगक्सियन वांग चेन के आलिंगन में लिपटी हुई थी। उसकी मधुर और स्पष्ट आवाज धीरे धीरे बुदबुदा रही थी, जिसमें विनती का संकेत था। वो सच में डरी हुई थी कि वांग चेन उसे छोड़कर चला जाएगा। अगर वो उसे पा ले तो अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं पा सके तो भी। यह 8 उजाड़ महाद्वीप संभवतः उसके पिछले जीवन के दृश्य को फिर से जिएगा, जहां पूरा महाद्वीप एक जमे हुए सर्वनाश में बदल गया था। ऐसे ही दिन बीतते गए। वांग चेन के कारावास के 6ठे दिन की सुबह तक ताइक्सु सेंटेस हॉल में वांग चेन के शरीर के भीतर से एक मौन सफलता का उतार चढ़ाव निकलता रहा। सर्वोच्च नींव वाला गुई युआन क्षेत्र बिखर गया। सिस्टम के दायरे ब्रेकर थ्रू परिरक्षण कार्य के तहत वांग चेन के शरीर के भीतर अंगिनत अराजक आध्यात्मिक ऊर्जाएं बढ़ने और इकट्ठा होने लगी। अंततः उसके डेंटियन में धीरे धीरे एक अराजक रंग का मूल कोर बना, जिसके चारों ओर लगातार चक्कर लगा रहे 9 अराजक ज्वाला ड्रैगन थे। बिस्तर पर बैठी जियांग लिंगजियन को कुछ एहसास हुआ। उसकी पलकें हल्की सी कांप उठी और फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। लेकिन जब उसने वांग चेन की ओर देखा, जो कुछ ही दूरी पर एक अस्थायी बिस्तर पर बैठा था, तो उसे कोई समस्या नहीं दिखी, मानो यह एक भ्रम हो। प्रणाली, मेरी प्रच्छन्न साधना को आत्मा क्षेत्र के निर्माण की 9वीं परत के शिखर तक बढ़ाओ। डिंग, आपकी साधना छिपाव को बिल्डिंग स्पिरिट दायरे की 9वीं परत के शिखर पर समायोजित किया गया है, जिसमें 8888 मूल अंक घटाए गए हैं। वांग चेन को सिस्टम के निष्कर्षों का पहले से ही अंदाजा था, इसलिए उसका दिल ज्यादा नहीं हिला। उसने बस हल्के से जवाब दिया। सिस्टम, तुम बड़े तारांकन 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 हो। 666 मानव मशीन मेजबान, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं तुम्हें अब और कैद नहीं रखूंगा। जियांग लिंगक्सियन ने वांग चेन की साधना को शीघ्रता से बिल्डिंग स्पिरिट दायरे की 9वीं परत तक पहुंचते देखा, अंततः पुष्टि की कि उसकी पिछली भावना गलत नहीं थी। यह महसूस करते हुए कि समय सही था, वह बिस्तर पर बैठ गई और शांति से वांग चेन से कहा, जो धीरे धीरे अपनी सांस ठीक कर रहा था। जियांग लिंगक्सियन ने स्वयं को शिक्षक कहना चाहा था, लेकिन ये देखते हुए कि वांग चेन को ये शब्द पसंद नहीं था, अंततः उसे शिक्षक शब्द से ही घुटन होने लगी। आर सच में, ये सुनते ही वांग चेन का शरीर थोड़ा सा जम गया। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और जियांग लिंगक्सियन को देखा। उसकी खुशी छुपाए नहीं छिप रही थी। वह इतने दिनों से घर में कैद था और लगभग बेचैन था। खुशकिस्मती से जियांग लिंगक्सियन वहां मौजूद था, जिससे उसे ज्यादा बोरियत महसूस नहीं हुई। लेकिन तुम्हें कल दोपहर से पहले लौटना होगा। कल दोपहर के बाद 8 उजाड़ महाद्वीप के विभिन्न संप्रदायों के बीच क्या होगा, ये बताने के लिए आपको मेरी आवश्यकता नहीं है। जियांग लिंगक्सियन के चेहरे पर एक अदृश्य निराशा उभरी। उसने अपना सुंदर चेहरा थोड़ा नीचे किया और धीरे से जवाब दिया, ठीक है, मैं कल दोपहर से पहले जरूर वापस आ जाऊंगा। वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन से वादा किया, फिर उठे और दरवाजे की ओर बढ़े और उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन पिछली बार की तरह खींचने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। वह बस बेबसी से मुड़कर जियांग लिंगक्सियन की तरफ देख सका। तुम्हें वापस आना ही होगा, जियांग लिंगक्सियन ने धीरे से अपनी नजरें उठाई। इस आखिरी वाक्य में उसकी आंखें किसी भावना से भरी हुई लग रही थी, थोड़ी भारी लग रही थी। मैं करूंगा, वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन की हृदय स्थिर कर देने वाली भावुक निगाहों को देखा, सिर हिलाया और मना नहीं किया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, पूरे सदन का स्वरूप तुरंत सिकुड़ गया और सब कुछ 6 दिन पहले वाली सामान्य स्थिति में लौट आया। चरमराहट, वांग चेन ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। अंततः जब वह दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ा, तो उसने अंदर मौजूद जियांग लिंगक्सियन से अंतिम बार मुलाकात की, जिसके चेहरे पर कुछ गलत भाव था। क्लिक करें, दरवाजा बंद हो गया और वांग चेन थोड़ा घबराया हुआ सा बाहर खड़ा था। क्या यह एक भ्रम था? ऐसा क्यों लग रहा था कि वह मुंह बना रही है, मानो वह झिझक रही हो और रोने वाली हो? वांग चेन दरवाजे के बाहर खड़ा था, दरवाजे की दरार से जियांग लिंगक्सियन के साथ हुई आखिरी नजर को याद कर रहा था। वह कुछ हद तक चकित और आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था। चरमराहट, वांग चेन ने खुद को फिर से दरवाजा खोलने से नहीं रोका, लेकिन अंदर जियांग लिंगक्सियन की आकृति पहले ही गायब हो चुकी थी। स्पष्ट रूप से वह जा चुकी थी। मैंने जरूर गलत देखा होगा, जब मैं होश में हूं तो वो मुझे ऐसे भाव कैसे दिखा सकती है? वांग चेन ने आत्महीनता से हंसते हुए फिर सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया और ताइजू सैन्य कब्रिस्तान की ओर भाग गया। ताइजू अमर संप्रदाय की सड़कों पर वांग चेन को देखने वाले प्रत्येक शिष्य की प्रतिक्रिया ऐसी होती थी मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो और वे जल्दी से रास्ता बना लेते थे। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि यह आदमी कुछ दिन पहले मर गया था? वह वापस क्यों आया है? मैंने सुना है कि उसे शायद जेल में बंद कर दिया गया है। आपका बयान तो बहुत ही अपमानजनक है ना? सड़क पर ताइजू अमर संप्रदाय के शिष्यों ने वांग चेन की जल्दबाजी को देखा, दो और तीन के समूह में फुसफुसाते और चर्चा करते हुए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल 8 उजाड़ महाद्वीप के 28 क्षेत्र और 36 महासंप्रदाय एक भव्य प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। चलो तैयारी करते हैं। ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? हमारे ताइजू अमर संप्रदाय के ठीक बाहर, उस ताइजू आध्यात्मिक युद्ध क्षेत्र में। मैंने सुना है कि प्रत्येक क्षेत्र में शीर्ष तीन के लिए पुरस्कार असाधारण हैं। वांग चेन पहले ही धुंधलेपन में डूब चुका था और अपनी सुनने की शक्ति के कारण वह इन वार्तालापों के केवल कुछ अंश ही सुन पा रहा था। लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने पहले ही उन पुरस्कारों को याद कर लिया था और प्रतिभागियों की सूची भी उसके दिमाग में अंकित हो गई थी। इस जीवन में वे इस भव्य प्रतियोगिता से अत्यंत संतुष्ट थे जो 36 संप्रदायों के बीच झगड़े के कारण आयोजित की गई थी। संतोषप्रद हिस्सा पुरस्कार नहीं था, बल्कि ये था कि जीवन मरण के अनुबंध पर हस्ताक्षर करना था, जिसका अर्थ था कि युद्ध के मैदान में जीवन या मृत्यु के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अपने पिछले जीवन में वह बिल्डिंग स्पिरिट दायरे में अपने दायरे से परे कई लोगों को दबा सकता था या मार सकता था, अब तो और भी। वांग चेन ने इस जीवन में पहले से ही सब कुछ योजना बना ली थी। बिल्डिंग स्पिरिट दायरे में उन सभी कचरे को दबाने या मारने के बाद वह गुई युआन दायरे प्रतियोगिता में भाग लेगा। जैसे ही वांग चेन संप्रदाय की सड़कों पर उड़ रहा था, उसने अपने पिछले जीवन की कुछ यादों पर विचार किया और उसके भीतर अनाम क्रोध की एक अकथनीय लहर उठी। अपने पिछले जीवन में सिर्फ इसलिए कि वह 8 उजाड़ महाद्वीप की नंबर एक सुंदरी ताइजू संत ताइजू अमर संप्रदाय के चार महान अधिपतियों में से एक का शिष्य था, उसे निशाना बनाया गया था। अपने पिछले जीवन में ताइजू आध्यात्मिक युद्ध क्षेत्र की आत्मा क्षेत्र निर्माण प्रतियोगिता में विभिन्न संप्रदायों के 90% आत्मा क्षेत्र निर्माण साधकों ने बारी बारी से उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी थी। ऐसा लग रहा था कि वे लोग अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि जब तक वे वांग चेन शिष्य को हरा देते हैं, जियांग लिंगक्सियन उनकी सराहना करेंगे, फिर वांग चेन को एक तरफ धकेल देंगे और उन्हें शिष्य के रूप में ले लेंगे। आखिरकार साधना जगत में शक्ति को सम्मान दिया जाता था और अधिकांश लोग लाभ के लिए जीते थे, इसलिए ये स्वाभाविक था कि कई साधकों के मन में ऐसे विचार होंगे। सौभाग्य से जियांग लिंगक्सियन अपने पिछले जीवन में इस मुद्दे से अनजान नहीं था और उसने उसे कई शक्तिशाली जीवन रक्षक खजाने दिए थे। यद्यपि अंत में 8 उजाड़ महाद्वीप के विभिन्न संप्रदायों के बिल्डिंग स्पिरिट क्षेत्र के शिष्य और साधक या शायद कई भाग्य के बच्चे जो अभी तक पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए थे, सभी को खजाने की मदद से बड़ी मुश्किल से दबाया गया या मार दिया गया, वह गंभीर रूप से घायल भी हुआ और लड़ाई के बाद उसके दुश्मन भी बन गए। अंततः जियांग लिंगक्सियन की यातनापूर्ण उपचार पद्धति से उनकी चोटें और लगभग बर्बाद हो चुकी नींव धीरे धीरे ठीक हो गई। इस जीवन में कोई दमन नहीं होगा, सिर्फ संपूर्ण संहार होगा। वांग चेन ने अपना मन बना लिया, फिर अचानक अपने पैर नीचे पटक दिए और धीरे धीरे अपनी निगाहें सामने ताइजू सैन्य कब्रिस्तान के अंधेरे प्रवेश द्वार की ओर उठाई। इस समय ताइजू सैन्य कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार पर लोगों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई थी, केवल एक मैला कुचेला बूढ़ा आदमी ही उसकी रखवाली कर रहा था। आप यहाँ आओ, मैले कुचेले बूढ़े आदमी ने हाथ में पंखा लिए हुए वांग चेन को बुलाया। वांग चेन ने उसकी बात सुनी और चारों ओर देखा, आसपास कोई और नहीं था। मत देखो, ये सिर्फ तुम हो, तुम यहाँ आओ, यहाँ आओ। मैले कुचेले बूढ़े आदमी ने पंखे से कुछ और बार हवा की। ये देखकर वांग चेन थोड़ा उलझन में पड़कर वहां से चला गया। यद्यपि आप ताइजू संत की शिष्या हैं, फिर भी आपने दर्जनों। वाह, तेज हवा के झोंके से उस मैले कुचेले बूढ़े आदमी के सफेद बाल उड़ गए और तेज हवा के कारण कुछ देर के लिए उसके लिए अपनी आंखें खोलना असंभव हो गया। जब उसके तैरते हुए सफेद बाल धीरे धीरे गिर गए और उसने अपनी आंखें खोली, तो उसने केवल वांग चेन की पीठ को हथियार कब्रिस्तान में भागते हुए देखा। मैला कुचेला बूढ़ा आदमी ताइजू सैन्य कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार पर अपने पंखे के साथ खड़ा था और घबराया हुआ लग रहा था, स्पष्ट रूप से अचंभित। क्या ये बूढ़ी औरत हानजून के शिष्य का शिष्य है? आत्मा क्षेत्र के निर्माण की नौवीं परत की साधना में गुई युआन क्षेत्र की गति के साथ आगे बढ़ने में सक्षम होना, ये कुछ हद तक दिलचस्प है। बूढ़े आदमी ने वांग चेन को ताइजू सैन्य कब्रिस्तान में भागते हुए देखा, जैसे वह उड़ रहा हो, खुद को पंखा झल रहा हो और गहरी खुशी भरी अभिव्यक्ति के साथ बुदबुदा रहा हो। वह उसके पीछे नहीं भागा, केवल एक आराम कुर्सी को बुलाने के लिए अपना हाथ हिलाया, फिर आराम से ताइजू सैन्य कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार पर लेट गया। अंततः बूढ़े व्यक्ति ने अपने प्रसन्न चेहरे को पंखे से ढक लिया और खर्राटे लेते हुए गहरी नींद में सो गया। डॉट 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 ताइजू सैन्य कब्रिस्तान के अंदर कहीं अज्ञात स्थान पर चारों ओर मिट्टी की दीवारें थीं और रोशनी मंद और पीली थी। काफी देर तक दौड़ने के बाद वांग चेन की एड़ियां आपातकालीन स्थिति में फिर से जमीन में धंस गईं और वे एक गहरी खाई से बाहर निकल आए। उन्होंने सोचा था कि हथियार कब्रिस्तान के हथियारों को इतनी आसानी से चुराया जाना असंभव है, वहां पंजीकरण या शक्तिशाली व्यक्ति उनकी निगरानी कर रहे होंगे। सौभाग्यवश उस बूढ़े आदमी ने उसका पीछा नहीं किया। वांग चेन को उत्तेजना और गुप्त रूप से राहत महसूस हुई क्योंकि उसने इस जीवन में अपनी गति और फुटवर्क का 80% उपयोग कर लिया था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वांग चेन ने अपने भंडारण स्थान से एक सुनहरी टूटी हुई तलवार निकाली जो केवल आधे हाथ की लंबाई की बची थी। हालांकि स्वर्ण टूटी तलवार तब तक स्थिर रही जब तक वांग चेन ने अपना मंत्र नहीं उठाया जो अराजक आध्यात्मिक शक्ति और आत्मा के हमलों से प्रभावित था। ताली ताली, हे भगवान कौन इतना दुष्ट है। दो सुनहरी थप्पड़ों की आवाजें गूंजी और सुनहरी टूटी तलवार के भीतर बूढ़े आदमी की बची हुई आत्मा भी चीखी और विलाप करने लगी। चिल्लाना बंद करो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करूंगा। ओह माय, तुम छोटे बा, ओह ठीक है, यह अच्छा है, उन्नति अच्छी है, उन्नति अच्छी है। टूटी तलवार वाले बूढ़े आदमी की मूल रूप से गुस्से वाली आवाज उसे आगे बढ़ने में मदद करने के बारे में शब्द सुनने के बाद तुरंत बदल गई। हम पहले से ही ताइजू सैन्य कब्रिस्तान के अंदर हैं, मुझे उस जगह ले चलो जिसका तुमने उल्लेख किया था। वांग चेन ने अपने हाथ में धुंधली सुनहरी टूटी तलवार पकड़ी जिससे उसे दिशा का पता लगाने और स्कारलेट रिफाइनिंग गोल्ड स्प्रिंग तक ले जाने का संकेत मिला। मुझे हिसाब लगाने दो, एक पल के बाद, अच्छा नहीं है। सोने की टूटी तलवार के भीतर से बूढ़े आदमी की अच्छा नहीं की चीख आई और वांग चेन का दिल तुरंत हिल गया। क्या गलत, मैं अपनी गणना आधी कर चुका था कि अचानक मेरे हाथ में ऐंठन होने लगी। अरे बेवकूफ, किसी आत्मा के हाथ में ऐंठन कैसे हो सकती है। वांग चेन का मूड उतार चढ़ाव भरा था और यह सुनकर वह उसे कोसने से खुद को नहीं रोक सका। हे गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था, मैं हिसाब लगा रहा हूँ। सोने की टूटी तलवार के भीतर से एक शरारती बूढ़े आदमी की आवाज आने के बाद आगे कोई हलचल नहीं हुई। अच्छा नहीं है, स्वर्ण टूटी तलवार के भीतर से अच्छा नहीं कि एक और चीख आई, लेकिन वांग चेन ने केवल धीरे से अपनी हथेली को ऊपर उठाया जो आत्मा की आध्यात्मिक शक्ति से ढकी हुई थी। इस बार तो कुछ ठीक नहीं है, किसी ने वो दीवार तोड़ दी और अब स्कारलेट रिफाइनिंग गोल्ड स्प्रिंग उफान पर है। सुनहरे टूटे तलवार के अंदर बूढ़े आदमी की आत्मा स्थिति को देखकर तुरंत चिल्लाया, स्पष्ट रूप से बहुत चिंतित, मुझे जल्दी से वहां ले चलो। वांग चेन को अंततः एहसास हुआ कि यह कोई मजाक नहीं था और उसने जल्दी से सोने की टूटी हुई तलवार उठाई और उसे आगे बढ़ने दिया। वांग चेन के कुछ भी कहने की आवश्यकता के बिना चिंतित सुनहरी टूटी तलवार से एक खिंचाव आया जिसने वांग चेन को धुंधले वातावरण में भागने के लिए मजबूर कर दिया। सार्वजनिक हथियार कब्रिस्तान से वे छोटे हथियार कब्रिस्तानों के आसपास की ओर भागे जिनकी दीवारों में कई अंधेरे छेद थे। फिर सुनहरी टूटी तलवार ने वांग चेन को एक सुपर छिपे हुए स्थान पर खींच लिया और तेजी से छोटे हथियार कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार में भाग गया। जिस क्षण वे छोटे हथियार कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार में दाखिल हुए, वांग चेन ने दीवार में एक बड़ा छेद देखा, यहां तक कि सोने की टूटी हुई तलवार के बिना भी। अंदर देखने पर एक तेज सुनहरी पीली रोशनी निकल रही थी जो स्पष्ट रूप से स्कारलेट रिफाइनिंग गोल्ड स्प्रिंग से आ रही थी, और स्कारलेट रिफाइनिंग गोल्ड स्प्रिंग के चारों ओर एक आदमी खड़ा था जो अपने सारे कपड़े उतारकर स्प्रिंग में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था। तुम लाल रंग के शुद्धिकरण वाले सोने के झरने को अपवित्र नहीं करोगे, मुझे करने दो। वांग चेन ने एक नजर में येकिंग की आकृति को पहचान लिया और तुरंत उसके हाथ में सोने की टूटी हुई तलवार को बड़ी ताकत से फेंक दिया। उफ, दीवार के भीतर सुनहरे पीले प्रकाश वाले स्थान में सुनहरी टूटी हुई तलवार येकिंग के दाहिने कंधे में बुरी तरह से घुस गई और खून बिखर गया। धप धप धप, जैसे ही येकिंग भयभीत हुआ, वांग चेन के भारी कदमों ने उसे आगे खींच लिया और वह एक उड़ते हुए किक के लिए कूद गया। टकराना, येकिंग अपने लगातार बहते हुए बाएं कंधे को पकड़े हुए कमर पर लात मारी गई और उसका शरीर झुकते हुए बाहर गिरने वाला था। जनरल की फ्लाइंग किक के बाद मेरी थॉमस रिवर्स किक ले लो, लेकिन गुई युआन क्षेत्र में होने के कारण वांग चेन और भी तेज था। फ्लाइंग किक के बाद वह हवा में घूमा और रिवर्स किक लगाई। टकराना, मांस का एक और कुरकुरा धमाका, येकिंग की पीठ इस सुंदर ढंग से घुमावदार रिवर्स किक से शक्तिशाली रूप से प्रभावित हुई। धमाका, येकिंग प्रतिक्रिया करने में असमर्थ तुरंत उड़ गया और दीवार से जोर से टकराया। वांग चेन ने अपने दुश्मनों पर कोई दया नहीं दिखाई, वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि येकिंग की रीढ़ की हड्डी टूट गई होगी, लेकिन वांग चेन की चकित निगाहों में येकिंग ने उसे भयंकर रूप से घूरा, उसकी पुतलियां धीरे धीरे सफेद हो गईं। गुरुजी, मेरी मदद करें, येकिंग दहाड़ा, उसकी आत्मा क्षेत्र निर्माण की तीसरी परत की साधना भड़क उठी और उसका पूरा शरीर काली लपटों की एक परत से प्रज्वलित हो गया। पॉप पॉप पॉप, और जिस क्षण काली लपटें प्रज्वलित हुई, ये किंग की साधना भवन आत्मा क्षेत्र की तीसरी परत से ऊपर उठती रही। ये धीरे धीरे रुकने से पहले बिल्डिंग स्पिरिट दायरे की नौवीं परत के शिखर तक ऊपर उठा। इस समय ये किंग पहले से ही सम्मोहित था। उसकी आंखें जल रही थी जब उसने वांग चेन को देखा, एक फीकी टेढ़ी मुस्कान प्रकट की। आप स्पिरिट दायरे की नौवीं परत भी बना रहे हैं, दिलचस्प। ये किंग ने अपना दाहिना हाथ हिलाया जिससे हड्डियों में कई दरारें पड़ गईं, और उसने तिरछी तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ वांग चेन की ओर देखा। ओह, मेरे साथ आग से खेल रहे हो और दायरे की तुलना कर रहे हो, धमाका वुश। जिस क्षण वांग चेन ने बोलना समाप्त किया, उसकी साधना अचानक भड़क उठी। उसका गुई युआन क्षेत्र प्रकट हो गया और अराजक लपटों ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। यहां तक कि दो अराजक ज्वाला ड्रैगन प्रेत भी भयंकर और दबंग तरीके से उसके कंधों के चारों ओर कुंडली मारे हुए थे। उनकी ड्रैगन आंखें ठंडी निगाहों से ये किंग को घूर रही थी। ये वांग चेन की पूरी ताकत नहीं थी, क्योंकि उसने सभी नौ अराजक ज्वाला ड्रैगन को जारी नहीं किया था। इस दृश्य को देखकर प्रेतग्रस्त ये किंग ने पाया कि उसके होठों पर विकृत मुस्कान धीरे धीरे कठोर हो गई और वह मुस्कुराने में असमर्थ हो गया। मरना, वांग चेन उस तरह का खलनायक नहीं था जो ज्यादा बोलता हो। वह जोर से आगे बढ़ा, ये किंग के सामने आया और जोरदार मुक्का मारा। टकराना, दरार। ये किंग के हाथ, जिन्हें उसने अपनी पूरी ताकत से रोकने के लिए उठाया था, तुरंत मुड़कर टूट गए। एक बेकार भट्टी शरीर इतना मजबूत कैसे हो सकता है। ये किंग की पुतलियां गहरी और पीली थीं, काली लपटों में लिपटी हुई थीं, और वह भय से वांग चेन को देख रहा था, जल्दी से पीछे हटना चाहता था। ड्रैगन परिवर्तन विस्फोट खोपड़ी पंजा, लेकिन वांग चेन उसकी इच्छा कैसे पूरी कर सकता था। उसने जोर से अपना हाथ उठाया, उसकी उंगलियां एक अराजक ज्वाला ड्रैगन के पंजे में बदल गईं जिसने ये किंग के सिर को जकड़ लिया। धमाका, एक जोरदार धमाके के साथ ये किंग का सिर तुरंत तरबूज की तरह फट गया, जिसे वांग चेन के अराजक ज्वाला ड्रैगन पंजे ने कुचल दिया। वह तो पहले ही मर चुका है, तुम रुको, 3 साल में मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। वांग चेन का आंतरिक आघात अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि अचानक उसके पीछे से ये किंग की परिचित दहाड़ सुनाई दी, साथ ही भागते हुए कदमों की आवाज भी। तभी वांग चेन की नजर उसके हाथ पर पड़ी। उसने जो कुचला था वह स्पष्ट रूप से एक लकड़ी की कठपुतली का सिर था जो अराजक लपटों से लगातार जल रहा था। धिक्कार है, इस तरह के घटिया भाग्य के बच्चे को मारना वाकई मुश्किल है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उन दो महान सम्राटों में से एक था जिन्होंने मेरे पिछले जन्म में मुझे घेर लिया था। वांग चेन के हाथ पर अराजक ज्वाला ड्रैगन प्रेत गायब हो गया और अपने हाथ की एक झटके से उसने पूरी कठपुतली को पूरी तरह से भस्म कर दिया। आह, इस समय वांग चेन की आंखें जमीन की ओर देखते हुए रुक गईं, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपने शिष्य की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देना, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से हम दुश्मन हैं। वांग चेन ने जमीन से धुंधली अंगूठी उठाई, एक बॉक्स निकाला और जल्दी से उसे सील कर दिया। अंततः उसने इसे अपने भंडारण स्थान के सबसे गहरे कोने में फेंक दिया और इसे सील कर दिया, तथा बाद में इसे देखने की योजना बनाई। सिस्टम के भंडारण स्थान में प्रवेश करने वाली किसी भी चीज का समय पूरी तरह से स्थिर होता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये जीवित प्राणियों को संग्रहित नहीं कर सकता है। वांग चेन को सिस्टम के भंडारण स्थान पर पूरा भरोसा था। जब तक वह इसे बाहर नहीं निकालना चाहता, ये किंग का गोल्डन फिंगर वाला बूढ़ा आदमी कभी बाहर नहीं आ पाएगा। हालांकि बूढ़े आदमी के अलावा अंगूठी के अंदर खजाने होने चाहिए, और वांग चेन ने उन सभी को छीनने का समय खोजने की योजना बनाई। वह ये नहीं भूला था कि उसके पिछले जीवन में रिंग के अंदर यह बूढ़ा आदमी ये किंग द्वारा एक नया शरीर दिए जाने के बाद उसे घेरने में भी एक प्रमुख सहयोगी था। वांग चेन टूटी हुई सुनहरी पीली छोटी दीवार के भीतर खड़ा था। उसके अराजक ज्वाला ड्रैगन की आभा धीरे धीरे विलुप्त और पीछे हट रही थी। उसके दो राजसी और दबंग अराजक ज्वाला ड्रैगन जो उसके कंधों पर थे, उसकी रीढ़ की हड्डी में वापस चले गए, अंततः अंदर घुस गए और पूरी तरह से शांत हो गए। तभी वांग चेन दूर की दीवार की ओर चला गया और दीवार में फंसी हुई सुनहरी टूटी हुई तलवार को बाहर निकाला। हे, जब तक मैं पृथ्वी स्तरीय हथियार तक आगे बढ़ सकता हूँ, मैं महसूस कर पाऊंगा कि मेरी टूटी हुई तलवार का दूसरा आधा हिस्सा कहाँ है। सोने की टूटी तलवार के भीतर बूढ़े आदमी की आत्मा ने एक अजीब हंसी निकाली, अधीरता से वांग चेन को स्कारलेट रिफाइनिंग गोल्ड स्प्रिंग तक खींच लिया। जल्दी करो बच्चे, चलो साथ में भीगते हैं। स्कारलेट रिफाइनिंग गोल्ड स्प्रिंग का विशेष रूप से दबंग शरीर के लिए और भी अधिक लाभकारी प्रभाव है। सोने की टूटी तलवार के अंदर बैठे बूढ़े व्यक्ति ने उत्सुकता से वांग चेन से आग्रह किया कि वह अपने कपड़े उतारकर स्नान करे और उसे भी उसमें डाल दे। वांग चेन ने ये देखा और एक शब्द भी नहीं कहा, उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, यहां तक कि केवल अंडरवियर ही बचा। फिर सोने की टूटी तलवार को पकड़े हुए वह स्कारलेट रिफाइनिंग गोल्ड स्प्रिंग में कूद गया, जो एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त बड़ा था। वांग चेन ने लापरवाही से सोने की टूटी हुई तलवार को एक तरफ फेंक दिया, पालथी मारकर बैठ गया, अपनी नाक को उजागर किया और अपनी चेतना को केंद्रित करते हुए अपनी साधना तकनीक को प्रसारित करना शुरू कर दिया। एक पल में स्कारलेट रिफाइनिंग गोल्ड स्प्रिंग के अंगिनत स्रोत तेजी से वांग चेन की त्वचा और शरीर में फैल गए, लगातार उसके रक्त, अंगों और त्वचा को परिष्कृत कर रहे थे। स्कारलेट रिफाइनिंग गोल्ड स्प्रिंग एक राजा स्तरीय आध्यात्मिक स्प्रिंग था और वांग चेन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि झरने का पानी गर्म था, अविश्वसनीय रूप से गर्म। जब वह वहां बैठा, वांग चेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी साधना बढ़ने लगी है। एक क्षण से भी कम समय में उसका क्षेत्र ढीला पड़ने लगा। टकराना। इस बार वांग चेन ने सिस्टम को सफलता को रोकने नहीं दिया। तुरंत उसके शरीर में एक विस्फोट हुआ और झरने का पानी हिंसक रूप से उत्तेजित हो गया। दूसरी ओर की सुनहरी टूटी तलवार भी स्कारलेट रिफाइनिंग गोल्ड स्प्रिंग में पूरी तरह डूब गई थी, धीरे धीरे शांत हो रही थी। वांग चेन ने साधना करते समय आसपास की सुरक्षा के लिए जानबूझकर अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रसार किया, लेकिन किसी कारणवश उसके 1000 मीटर के दायरे में कोई नहीं था। हालांकि इससे उन्हें बहुत परेशानी से बचाया गया, जिससे उन्हें किंगटी स्कारलेट रिफाइनिंग गोल्ड स्प्रिंग के साथ खेती पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिली। धीरे धीरे समय बीतता गया और जल्द ही दूसरे दिन दोपहर हो गई। वांग चेन अभी भी स्कारलेट रिफाइनिंग गोल्ड स्प्रिंग में लगन से डूबा हुआ था, जो लगभग मंद हो गया था, और उसकी साधना बढ़ती रही। केवल एक दिन में उनकी साधना इस राजा स्तरीय स्कारलेट रिफाइनिंग गोल्ड स्प्रिंग द्वारा गुई युआन क्षेत्र की चौथी परत तक बढ़ा दी गई। ये बस कल्टीवेट को पानी पीने जैसा था, लेकिन ये सब वांग चेन की उम्मीदों के भीतर था। वांग चेन के दिल में लिंगवांग दायरे के नीचे के दायरे की वसूली स्वाभाविक रूप से इतनी तेजी से होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था। वांग चेन ने स्कारलेट रिफाइनिंग गोल्ड स्प्रिंग को महसूस किया, जो लगभग पूरी तरह से अवशोषित हो गया था, और अचानक उसने अपनी आंखें तेजी से खोली। उसे पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन उसे अचानक घबराहट महसूस हो रही थी, जैसे वह कुछ भूल गया हो, और यह घबराहट बढ़ती जा रही थी। आखिर वह क्या भूल गया? वांग चेन ने एक उलझन भरी अभिव्यक्ति दिखाई। वह मंद झरने के पानी में पालथी मारकर बैठा था, उसकी तेजी से बढ़ती हुई दिल की धड़कन को छू रहा था, वह बहुत उलझन में था। कुछ देर सोचने के बाद वांग चेन का शरीर अचानक कांप उठा और वह अंदर ही अंदर चिल्लाया, धिक्कार है। इस समय वांग चेन के पास सोचने का भी समय नहीं था। उसने जल्दी से सोने की टूटी हुई तलवार पकड़ ली, जो अभी भी स्कारलेट रिफाइनिंग गोल्ड स्प्रिंग में भीगी हुई थी, और तुरंत खड़ा हो गया। वांग चेन ने मोटे तौर पर चमकदार सुनहरी टूटी तलवार पर नजर डाली, फिर उसकी चीख को अनदेखा करते हुए उसने उसे अपने भंडारण स्थान में फेंक दिया। रंबल डोंग। वांग चेन ने झरने के तल पर पैर रखा और स्कारलेट रिफाइनिंग गोल्ड स्प्रिंग से पानी, जो स्कारलेट रिफाइनिंग हॉट स्प्रिंग में बदल गया था, तुरंत हर जगह फैल गया। डॉट डॉट डॉट। और इस समय ताइक्सु सेंटेस हॉल में जियांग लिंगक्सियन की अभिव्यक्ति ठंडी थी, क्योंकि वह चुपचाप बिस्तर पर बैठी थी, दरवाजे की ओर गौर से देख रही थी, उस आकृति की प्रतीक्षा कर रही थी। जिस समय पर वे सहमत हुए थे वह आ गया था, लेकिन जियांग लिंगक्सियन के दिल में वह व्यक्ति लंबे समय से प्रकट नहीं हुआ था। खिड़की के बाहर चिलचिलाती धूप को देखते हुए जियांग लिंगक्सियन की ठंडी आभा धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लगी। बस एक और चौथाई घंटा, बस एक और चौथाई घंटा। जियांग लिंगक्सियन की सांस लेने की आवृत्ति भी भारी और असुविधाजनक होने लगी, क्योंकि वह लगातार अपने दिल में एक चौथाई घंटे का समय गिन रही थी। यदि वांग चेन अभी भी एक घंटे के इस चौथाई के भीतर प्रकट नहीं हुआ, तो यह अनुमान लगाया गया था कि पूरे ताइजू अमर संप्रदाय को जियांग लिंगक्सियन द्वारा उलट दिया जाएगा। 38, 29, 40, 41। जियांग लिंगक्सियन ने जितने अधिक सेकंड गिने, उसके शरीर में दबी हुई ठंडी क्यूई उतनी ही अधिक अनियंत्रित होती गई और कमरे का फर्श लगातार जमने लगा। लेकिन जियांग लिंगक्सियन को इन चीजों की परवाह नहीं थी, इसके बजाय वह दरवाजे की ओर घूरती रही। हालांकि सच तो यह था कि उसका दिल धीरे धीरे उम्मीद खो रहा था। जियांग लिंगक्सियन के दिमाग में वांग चेन पहले ही ताइजू अमर संप्रदाय से भाग चुका होगा, अपने पुनर्जन्म के रहस्योद्घाटन के बाद फिर से उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन उसने मुझसे साफ साफ वादा किया, उसने मुझसे वादा किया कि वह निश्चित रूप से वापस आएगा। जियांग लिंगक्सियन ने अपनी मानसिक गिनती बीच में ही रोक दी और उस कमरे में खड़ी हो गई जो बर्फ के महल में बदल गया था, और उसे सांस लेना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। इस समय जियांग लिंगक्सियन की आंखों में ठंडी रोशनी फैल गई और उसकी आंखों के लाल तल पर एक खतरनाक भावना लगातार फैल गई। उसने मुझसे फिर झूठ बोला। उसने साफ साफ कहा था कि वह दोपहर तक वापस आ जाएगा, लेकिन अब दोपहर के आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है। जियांग लिंगक्सियन की खड़ी आकृति थोड़ी कांपने लगी, उसकी सांसें तेजी से चलने लगी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे जकड़ लिया गया हो। धप, चरम, चरम। जैसे ही जियांग लिंगक्सियन बाहर जाने और वांग चेन के लिए पूरे ताइजू अमर संप्रदाय की खोज करने वाला था, दरवाजा अचानक हिंसक रूप से खटखटाया गया। एक काली परछाई रॉकेट की तरह बिना ब्रेक लगाए जियांग लिंगक्सियन की ओर उड़ी। अरे अरे अरे, गले लगो गले लगो गले लगो गले लगो, मुझे गले लगाओ। ठंडी क्यूई से बने बर्फ के घर के अंदर वांग चेन जियांग लिंगक्सियन की ओर हवा में उड़ रहा था और बड़ी बड़ी आंखों से चिल्ला रहा था। रुक नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रुक सकते। वांग चेन ने जैसे ही ताइक्सु सेंटेस हॉल को बर्फ के महल में बदलते देखा, वह 100 मीटर दूर से पूरी ताकत से बाहर निकल आया। इससे उसे बहुत अधिक बल लगाना पड़ा और जब वह लगभग दरवाजे पर था तो उसने अचानक पाया कि वह बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। जैसे ही वांग चेन की आकृति जियांग लिंगक्सियन की ओर उड़ी, उस समय समय धीमा हो गया। इसके भीतर भी कोई जियांग लिंगक्सियन का थोड़ा घबराया हुआ, स्तब्ध और चकित अद्वितीय चेहरा देख सकता था, जो ठंडा और मनमोहक दोनों था। लेकिन जियांग लिंगक्सियन एक दिव्य आदरणीय क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में एक क्षण के अचंभे के बाद तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। धमाका। हालांकि जियांग लिंगक्सियन की क्षणिक स्तब्धता के कारण उनके शरीर हिंसक रूप से टकराने पर केवल एक धमाका हुआ। जियांग लिंगक्सियन और वांग चेन दोनों के हाथों ने उत्सुकता से पहले एक दूसरे की रक्षा की। वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन को गले लगा लिया और हवा में एक सुंदर मोड़ लिया, जिसका उद्देश्य खुद को एक तकिए के रूप में इस्तेमाल करना था। सौभाग्य से इस समय तक जियांग लिंगक्सियन ने पहले ही प्रतिक्रिया दे दी थी और बिस्तर की ओर गिरते समय उनके शरीर को सहारा देने के लिए उसने जल्दी से अपनी साधना शुरू कर दी। लेकिन तीव्र जड़ता के कारण वांग चेन अभी भी जियांग लिंगक्सियन से लिपटा हुआ था और बर्फ से ढके बिस्तर पर गिर गया। धमाका। सौभाग्य से, क्योंकि जियांग लिंगक्सियन ने उनकी रक्षा के लिए अपनी साधना को उन्मुक्त कर दिया था, इस प्रभाव से ऐसा महसूस हुआ मानो वांग चेन अकेले ही लेट गया हो। इस टक्कर के साथ दोनों ने गले लगाया और बिस्तर पर चिपक गए। वांग चेन का गाल धीरे से जियांग लिंगक्सियन के गाल से दब गया। अंततः एक क्षण के बाद कमरे का वातावरण कुछ देर के लिए शांत हो गया। इतना चिकना और नाजुक, ठंडा और कोमल और सुगंधित, इतना करीब होना अच्छा लगता है। वांग चेन ने देखा कि कुछ गड़बड़ नहीं है, इसलिए वह उठा ही नहीं। उसने जियांग लिंगक्सियन के नाजुक शरीर को थाम लिया और अपना चेहरा उसके चिकने गालों से कसकर सटा दिया। जियांग लिंगक्सियन ने भी वांग चेन की कमर पकड़ ली, उसके शरीर का तापमान महसूस किया और पहले जो अत्यधिक सुरक्षा की कमी उसने महसूस की थी, वह धीरे धीरे फिर से भरने लगी। एक क्षण के लिए दोनों ने कमरे में एक दूसरे को गले लगा लिया तथा दोनों में से किसी ने भी उठने की कोशिश नहीं की। सतह पर वे दोनों टक्कर से स्तब्ध लग रहे थे, लेकिन वास्तव में वे एक दूसरे की भावनात्मक ऊर्जा को पुनः भर रहे थे। सच कहूं तो जियांग लिंगक्सियन उठना ही नहीं चाहती थी। उसने वांग चेन के शरीर को कसकर गले लगा लिया, अपना गाल उसके गाल से सटा दिया और आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे केवल इसी तरह से जियांग लिंगक्सियन उसके दिल में बेहद खाली जगह को पूरी तरह से भर सकता था। हालांकि ताइजू अमर संप्रदाय के बाहर अभी भी एक भव्य प्रतियोगिता थी और वह अपने शिष्य के सामने इस तरह की अजीब अधिकार और भावनाओं को उजागर नहीं कर सकती थी, इसलिए ये स्पष्ट था कि दोनों हमेशा ऐसे ही गले नहीं लग सकते थे। अंततः जियांग लिंगक्सियन ने अपने मन की अनिच्छा को दबा दिया। वह केवल जल्दी से और चुपके से अपने पतले हाथ के पीछे से अपनी आंखों के कोनों से चिंता और भय के आंसू पोंछ सकती थी, जो वांग चेन को पहले न देख पाने के कारण आए थे। जियांग लिंगक्सियन ने अपनी मूल अभिव्यक्ति पर लौटने की पूरी कोशिश की, फिर धीरे से अपनी बाहों से वांग चेन को छोड़ दिया और खड़ी हो गई। जैसे ही वह खड़ी हुई, कमरे में भरी बर्फ भी तेजी से पिघलने लगी, लेकिन पिघली हुई ठंड ने घर को भिगोया नहीं। हालांकि जियांग लिंगक्सियन ने खड़े होने के बाद इसे छिपाने और दबाने की कोशिश की, फिर भी उसके सुंदर चेहरे और उसकी आंखों के कोनों में एक हल्की सी लाली दिखाई दे रही थी। मुझे माफ करना, मैं देर से वापस आया। वांग चेन जानता था कि जियांग लिंगक्सियन को धोखा देना पसंद नहीं है, इसलिए वह अक्सर अपनी गलतियां तुरंत मान लेता था। वह उसे किसी भी बात पर धोखा देने की हिम्मत नहीं करता था। जियांग लिंगक्सियन उसके शब्दों से भावुक हो गई और उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। वह कुछ देर तक चुपचाप दोषी वांग चेन को देखती रही। आखिरकार जियांग लिंगक्सियन के चेहरे के भाव धीरे धीरे ठंडे पड़ गए। उसने अपनी नाजुक भौहों को थोड़ा सिकोड़ा, मुड़ी और खुले दरवाजे की ओर चल पड़ी। लिंगक्सियन, मुझे तो लगा था कि मेरा शिष्य मुझसे फिर झूठ बोलेगा। मैं गुस्से में हूँ, मैं उससे बात नहीं करना चाहती। हम्फ, बेवकूफ सिस्टम, दफा हो जाओ। वांग चेन ने अपने मन में सिस्टम की अजीब आवाज सुनी, उसे अवाक होकर कोसा और सीधे कनेक्शन को अवरुद्ध कर दिया। लेकिन सिस्टम वाकई सही था। जियांग लिंगक्सियन की अनदेखी को देखते हुए वह जरूर उदास होकर रूठ गई होगी। वांग चेन हजारों वर्षों से जियांग लिंगक्सियन के साथ थे और उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि जब वह क्रोधित होती थी तो वह लोगों को नजरअंदाज कर देती थी और अकेले ही उस पर काबू पा लेती थी। लेकिन अंतिम परिणाम यह था कि या तो उसने खुद को खुश कर लिया या वांग चेन ने व्यक्तिगत रूप से उसे खुश कर दिया। हालांकि उसे खुश करना आसान था। वांग चेन के पास अब एक ऐसी विधि थी जो उसे खुश करने में 100% प्रभावी थी और अरबों विधियां थी जो 90% प्रभावी थी। वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन की पीठ की ओर देखा जब वह ठंडे अद्वितीय सुंदर चेहरे के साथ दरवाजे से बाहर चली गई, फिर अचानक रुक गई और इंतजार करने लगी। यह आदमी गुस्से में भी सावधान रहता था, शायद डरता था कि मैं उससे नाराज हो जाऊंगा। वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन की ओर देखा जो कमरे की ओर पीठ करके दरवाजे पर खड़ी थी और कुछ का इंतजार कर रही थी, और उसने मन ही मन सोचा। उसने पहले ही पता लगा लिया था कि इस जीवन में जियांग लिंगक्सियन की उसके प्रति अधिकार भावना विशेष रूप से मजबूत थी, एक ठंडे नाजुक यांडेरे की तरह। हालांकि जियांग लिंगक्सियन के विभिन्न व्यवहार अत्यधिक चरम पर नहीं थे, उसने केवल ये कहा कि वह वहां से न जाए, जिससे उसे बहुत सहज महसूस हुआ। धप धप धप, वांग चेन जल्दी से बिस्तर से बाहर निकला, सावधानीपूर्वक दरवाजे से बाहर निकला और उसके बगल में खड़ा हो गया। उसका सिर नीचे था, कोई आवाज नहीं कर रहा था। वांग चेन ने इस तरीके को बार बार आजमाया था और यह हमेशा काम करता था, क्योंकि गहराई से जियांग लिंगक्सियन को गलती करने के बाद उसका कमजोर और क्षमा प्रार्थी रूप पसंद था। जियांग लिंगक्सियन तब तक स्थिर खड़ी रही जब तक उसने महसूस नहीं किया कि वांग चेन आखिरकार बाहर आ गया है, फिर वह धीरे धीरे चलने लगी। ये देखकर वांग चेन जल्दी से दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ा, फिर जियांग लिंगक्सियन के पास पहुंचा और उसके साथ साथ चलने लगा। आप नाराज हो गए क्या? वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन का ध्यानपूर्वक पीछा किया। इस समय सेक्ट रोड खाली था, लगभग सभी लोग बाहर जा चुके थे। उद्धरण चिन्ह ... नहीं, जियांग लिंगक्सियन चलती रही। हर बार जब उसे गुस्सा आता था तो वह गर्व से भर जाती थी, हमेशा सिर्फ दो शब्द कहती थी, नहीं। खैर, मैं इसलिए देर से आया क्योंकि मैं स्कारलेट रिफाइनिंग गोल्ड स्प्रिंग को परिष्कृत करने गया था और खेती में व्यस्त हो गया। आपको इतनी देर तक इंतजार कराने के लिए मुझे खेद है। वांग चेन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने उसकी बात नहीं सुनी हो और कारण बताना जारी रखा। जियांग लिंगक्सियन से क्षमा की भीख मांगी, लेकिन जियांग लिंगक्सियन अभी भी अपने दम पर चल रही थी। हालांकि वह ये भूल गई थी कि वह एक ही टेलीपोर्टेशन के साथ वांग चेन को संप्रदाय से बाहर निकाल सकती थी। एक औरत जो कहती कुछ है पर मतलब कुछ और होता है, हम्फ। पर जब तुम कुछ नहीं बोलती तो तुम्हारा ये हल्का सा रूठा हुआ रूप मुझे पसंद है, हे हे। जैसा कि वांग चेन ने सोचा था, एक बर्फ के चंद्रमा के लिए एक खोखले केंद्र के साथ एक ठंडा गोलाकार हार उसके हाथ में दिखाई दिया और उसने अचानक इसे जियांग लिंगक्सियन के सामने रखा। यह आपके लिए कुछ है। परी बहन, कृपया नाराज मत होइए, ठीक है? वांग चेन जियांग लिंगक्सियन के सामने दौड़ी, पीछे की ओर चलने के लिए मुड़ी, उसके सामने बर्फ के चंद्रमा का हार पकड़ा हुआ था। जियांग लिंगक्सियन ने जब परी बहन शब्द सुना तो वह थोड़ा रुकी और धीरे से अपनी खूबसूरत आंखें जो रास्ते पर टिकी हुई थी उठाकर वांग चेन की ओर देखने लगी। चूंकि मास्टर की उपाधि अस्वीकार्य थी इसलिए परी बहन का संबोधन ठीक लगा, उसके नाम में अमर अक्षर भी शामिल था। कोई जरूरत नहीं है। जियांग लिंगक्सियन और वांग चेन सुनसान सेक्ट रोड पर खड़े थे, कुछ देर तक सोचते रहे लेकिन फिर भी दो शब्द बोले। हालांकि ये सच था, वह हार नहीं चाहती थी क्योंकि एक पुरुष द्वारा स्त्री को हार देने का एक खास मतलब होता है। क्या आप निश्चित हैं कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है? हम, ओह तो ठीक है। अगर ताइजू आध्यात्मिक युद्ध क्षेत्र में कुछ पुरानी महिला मित्र हैं जिनसे मैं अभी तक नहीं मिला हूं तो मैं स्विश। इससे पहले कि वांग चेन अपनी बात पूरी कर पाता, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसका हाथ खाली है और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। जब वांग चेन पुनः प्रकट हुआ तो वह पहले से ही एक छोटी सी दुनिया में था जो अनगिनत साधकों और लोगों के समुद्र से भरी हुई थी। हालांकि वह और जियांग लिंगक्सियन एक ऊंचे विशाल वर्गाकार मंच पर सबसे ऊंचे स्थान पर थे। ताइजू सिंतेस, मैं लंबे समय से आपकी प्रशंसा करता रहा हूँ। जियांग लिंगक्सियन के हाथ से बर्फ के चांद का हार चुपचाप गायब हो गया। फिर उसने स्वागत करने वाले दर्जनों महापुरुषों की ओर सिर हिलाकर जवाब दिया। वांग चेन भी आसपास के लोगों और ध्वनि अवरोधक अवरोध के बाहर लोगों के समूह से आकर्षित हुए और उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। ताइजू आध्यात्मिक युद्ध क्षेत्र, वे आ गए थे। वांग चेन ने आसपास के दृश्य को देखा और क्षण भर के लिए जियांग लिंगक्सियन द्वारा बर्फ के चंद्रमा का हार ले जाने के बारे में भूल गया। इस समय जब उसने 8 उजाड़ और 28 क्षेत्रों के विभिन्न महान संप्रदायों के प्रतिनिधियों को देखा तो उसकी आंखों में घृणा की एक झलक उभरी। विशेष रूप से शिष्य साधक को कुछ महान बुजुर्गों के पीछे खड़े देखकर उसकी आंखों में एक अदृश्य हत्या का इरादा उभर आया। इन लोगों में कई छोटे बच्चे भी थे जिन्होंने अभी अभी अपनी क्षमता दिखानी शुरू की थी और अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुए थे। ये वही लोग थे जिन्होंने उसके पिछले जीवन में इस समय बिल्डिंग स्पिरिट रियल युद्ध मंच पर उसे चुनौती दी थी, जिसका उद्देश्य ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे दबाना था। कुछ मूर्खों ने तो चुनौती से ठीक पहले जियांग लिंगक्सियन से सीधे पूछ लिया कि क्या वांग चेन को हराने के बाद वह उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगी। इस समय वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन पर उनकी जांच करने वाली निगाहों को देखा जब वह धीरे धीरे अपनी सीट पर बैठी और वह चुपचाप उसके सामने आ गया। वांग चेन ने इन नाबालिग भाग्य के बच्चों को देखा। पिछले जन्म में उन्हें केवल दबाया गया था और हार मानने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन इस जन्म में उन सभी को मरना पड़ा। वांग चेन की ब्लॉकिंग की क्रिया ने भी सबसे अधिक ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि लगभग सभी की निगाहें जियांग लिंगक्सियन की सुंदरता पर केंद्रित थीं। ओह, तो ये ताइजू संत का शिष्य है, वह छोटा उपद्रवी जो अक्सर परेशानी का कारण बनता है, जैसा कि हाल ही में अफवाह थी। हाहा। उपस्थित दर्जनों वरिष्ठ लोगों के बीच एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था तथा नकली मुस्कान के साथ वांग चेन का सूक्ष्म और प्रत्यक्ष रूप से मजाक उड़ा रहा था। ओह ओह ओह, यहाँ कौन है? ये तो चंद्र संप्रदाय का एल्डर किंग ही निकला। मैंने सुना है कि आप सार्वजनिक रूप से अपने संप्रदाय के गुरु की पत्नी के प्रति स्नेह दिखाते हैं, लेकिन गुप्त रूप से आपकी 18 रखेले हैं। वांग चेन ने अपनी आवाज और लहजे में 18 शब्द पर जोर दिया और उसके चेहरे पर पूर्ण अविश्वास का भाव था। बोलने के बाद वांग चेन को अपनी अनुचितता का एहसास हुआ। ओ प्रिय, मेरा मुंह फिसल गया, क्षमा करें, क्षमा करें। फिर उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया, उसे दो बार हल्के से थपथपाया, पछतावे से भरा हुआ, झुंझलाहट भरे व्यंग्यात्मक भाव से। लेकिन चाहे ये संयोग था या नहीं, वांग चेन को अपने पिछले जीवन में चंद्र संप्रदाय के इस एल्डर किंग का कुछ प्रभाव मिला था, क्योंकि अपने पिछले जीवन में उसने बहुत ही अपमानजनक तरीके से खेला था। उसके घर पर स्पष्ट रूप से एक संप्रदाय के गुरु की पत्नी थी, फिर भी उसने 18 प्रेमिकाओं को बाहर रखने का साहस किया। इसके अलावा वे 18 रखेलें एक दूसरे को जानती थीं। इसे देखते हुए एल्डर किंगहे ने उनके साथ जो खेल खेले वह तो कहने की बात ही नहीं थी। अपने पिछले जीवन में एल्डर किंगहे के घोटाले के उजागर होने के बाद यह एक क्लासिक मनोरंजक कहानी बन गई जो साधना जगत में हमेशा के लिए प्रसारित हुई। वांग चेन के बोलने के बाद विशाल चौकोर मंच पर सभी साधक तुरंत अजीब निगाहों से एल्डर किंगहे को देखने लगे। तुम बकवास, आध्यात्मिक बातें उगल रहे हो। एल्डर किंगहे ने जब देखा कि संप्रदाय प्रमुख की पत्नी उनके बगल में खड़ी उनकी ओर देख रही है, तो वे तुरंत चौंक गए और शांत नहीं बैठ सके। तमाचा। जितना अधिक एल्डर किंगहे बोलते गए उतना ही अधिक क्रोधित होते गए, अपने दाहिने हाथ से कुर्सी के आर्मरेस्ट पर थप्पड़ मारते हुए खड़े हो गए और वांग चेन को घूरने लगे। इस समय वांग चेन ने अचानक महसूस किया कि उसकी कमर पर रखे कपड़े को धीरे से पकड़ा जा रहा है और उसके शरीर को धीरे धीरे जियांग लिंगक्सियन के पीछे खींचा जा रहा है। ताइजू आध्यात्मिक युद्ध क्षेत्र का विशाल वर्गाकार मंच वास्तव में एक बड़े निजी बॉक्स की तरह था, जहां से कोई भी बाहर से ताइजू आध्यात्मिक युद्ध क्षेत्र को देख सकता था। विशाल वर्गाकार मंच सैकड़ों मीटर लंबा और चौड़ा था, जो 1000 लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त था। हालांकि वहां उपस्थित प्रत्येक साधक प्रतिष्ठित स्थिति का था या उनमें इतनी योग्यता थी कि उन्हें शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा पाला जा सके। इस समय मंच पर विभिन्न शक्तिशाली आकृतियां या शिष्य साधक दो पंक्तियों में व्यवस्थित थे, जिनके बीच में चलने योग्य क्षेत्र था। और इस समय जियांग लिंगक्सियन अंत के पास बाईं ओर एक कुर्सी पर बैठी थी, उसकी ठंडी आंखें एल्डर किंगहे को ठंडी निगाहों से घूर रही थीं। किसी अज्ञात कारण से पूरा विशाल चौकोर मंच अचानक शांत हो गया और एक अदृश्य आभा फैल गई। मैं अभी हुई गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं एल्डर किंगहे की ओर से ताइजू साध्वी और साध्वी के शिष्य से क्षमा मांगने आया हूँ। इस समय चंद्र संप्रदाय की गुरु एक आकर्षक महिला जो एल्डर किंगहे से ज्यादा दूर नहीं बैठी थी खड़ी हुई और उसने माफी मांगते हुए अपना हाथ उठाया। जियांग लिंगक्सियन ने आकर्षक चंद्र संप्रदाय मास्टर को देखा, जिसका क्षमा प्रार्थी रवैया स्वीकार्य था, और उसके बाद ही धीरे धीरे उसने अपनी ठंडी निगाहें हटा लीं। दूसरे संप्रदाय के बुजुर्गों के निजी मामलों के बारे में लापरवाही से बात न करें जो वास्तव में सार्वजनिक रूप से हुए हों। जियांग लिंगक्सियन ने अपनी आंखें उठाई और थोड़ा सा अपनी तरफ देखा, उसके होंठ थोड़े से खुले हुए थे, मानो वह वांग चेन को गलत बात कहने के लिए डांट रही हो। वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन की स्पष्ट और सुंदर निगाहों को देखा, तुरंत आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और कमजोर रूप से अपना सिर नीचे कर लिया। तुमने भी उसे नहीं छोड़ा, हाहाहा। वांग चेन अंदर ही अंदर लगभग पागलों की तरह हंस रहा था, जियांग लिंगक्सियन की छिपी हुई चाल बहुत दुर्भावनापूर्ण थी। इस पर क्षमा प्रार्थी युवती चंद्र संप्रदाय गुरु ने तुरंत एल्डर किंगहे की ओर देखा, उसकी आंखें संदेह से भरी थीं। यदि ताइजू संतति के शिष्य ने जो कहा उस पर केवल 3 बिंदुओं से विश्वास किया जा सकता है, तो ताइजू संतति ने अपने अधिकार के साथ जो कहा उस पर 7 बिंदुओं से विश्वास किया जाएगा। परिणाम स्वरूप अब ताइजू संत और ताइजू संत के शिष्य दोनों बोल चुके थे। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि ये 10 अंक तक जुड़ गया? वहां उपस्थित सभी लोगों ने मन ही मन ताली बजाए और उनकी निगाहें चंद्र संप्रदाय के गुरु और एल्डर किंगहे की ओर घूम गईं। साथ लाए गए छोटे साधकों के अलावा बाकी सभी विभिन्न संप्रदायों के उच्च श्रेणी के सदस्य थे, जिनमें सबसे निम्न संत आत्मा क्षेत्र 7वीं परत के सदस्य थे। इसलिए कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों ने भी कुछ बार उपहास किया। चंद्र संप्रदाय से प्रतिशोध का बिल्कुल भी डर नहीं था, कोई डर नहीं दिखाया। ठीक है, चूंकि सभी लोग यहाँ हैं तो चलिए शुरू करने की तैयारी करते हैं। इस समय विशाल वर्गाकार मंच के अंत में खड़ी चार शक्तिशाली आकृतियों में से एक इस तमाशे को और बर्दाश्त नहीं कर सकी। एक सफेद बालों वाली महिला बोली, ताइजू अमर संप्रदाय के दो पुराने पूर्वजों में से एक हान जून। वांग चेन ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई और तुरंत उस महिला को पहचान लिया जो उसके और जियांग लिंगजियन के करीब थी और जिसने तमाशा रोकने के लिए बात की थी। पुरानी पूर्वज हान जून वास्तव में एक बूढ़ी महिला नहीं थी। उनका चेहरा आकर्षक और सुंदर था और उनके सफेद बाल उनके ठंडे व्यवहार को और अधिक उजागर करते थे। जियांग लिंगक्सियन के गुरु के बारे में उसके मन में बहुत अधिक धारणा नहीं थी। अपने पिछले जीवन में वह उनसे केवल कुछ ही बार मिला था और उनका रिश्ता न तो अच्छा था और न ही बुरा। विशाल वर्गाकार मंच के अंत में हानजून के अलावा अन्य संप्रदायों के तीन अन्य पुराने पूर्वज प्रतिनिधि थे। जहां तक केवल चार लोगों के होने का प्रश्न है तो इसका कारण ये था कि कुछ पुराने पूर्वज नहीं पहुंचे थे या एकांत में थे आदि, और इन मामलों में भाग लेने के लिए बहुत आलसी थे। और इस समय मुख्य सीटों पर बैठे चार लोग, दो पुरुष और दो महिलाएं, आठ उजाड़ महाद्वीप के चार विशाल अमर संप्रदायों में से प्रत्येक से एक पुराने पूर्वज का प्रतिनिधित्व करते थे। नीले वस्त्र पहने सुंदर हानजून के अलावा वहां एक युवा, काले कपड़े पहने युवक, हरे वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी और बैंगनी वस्त्र पहने एक महिला भी थी। दोनों पुरुष आदरणीय मुख्य सीटों पर आराम से चाय पी रहे थे जबकि महिला आदरणीय चुपचाप नीचे के क्षेत्र को देख रही थी। मैं बोल चुका हूँ, अब आप दोनों बूढ़े बोलिए। हानजून ने अपनी बात समाप्त करते हुए चाय पी रहे दो व्यक्तियों की ओर हल्की सी नजर डाली, अंदर से कुछ अवाक महसूस करते हुए नाराजगी के भाव के साथ ठंडे स्वर में बोला। फिर नीली पोशाक पहने हानजून ने किसी भी चीज की परवाह नहीं की और अपनी नीली स्कर्ट को एक झटके के साथ वह अपनी मूल सीट पर वापस बैठ गई। अन्य दो पुरुष आदरणीय जो चाय पी रहे थे अजीब तरह से अकड़ गए और एक दूसरे को देखने लगे। आप जाए, आप अधिक उम्र के और अधिक आधिकारिक दिखेंगे। एक संप्रदाय के एक पुराने पूर्वज, एक उन्मुक्त सुंदर युवक जिसने अपनी युवा उपस्थिति को बनाए रखा था, अपने बगल में बैठे वृद्ध व्यक्ति से नजरें मिलाने के बाद बोले। ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने अनिच्छा से अपना चाय का कप नीचे रख दिया, खड़ा हो गया और उसका हरा चोगा आसमान में ऊपर उठ गया और उसने अपनी आंखें ऊपर उठाकर नीचे जमीन पर खड़ी भीड़ को देखा। इस भव्य प्रतियोगिता में बिल्डिंग स्पिरिट दायरे से लेकर सेंट सोल दायरे तक प्रत्येक का अपना युद्ध दायरा है। आप अपनी शक्ति के आधार पर युद्ध दायरे के अखाड़े में प्रवेश करना चुन सकते हैं। और भी, इस प्रतियोगिता में कोई विशिष्ट मैच स्लॉट नहीं है। आप मौजूद किसी भी व्यक्ति को चुनौती दे सकते हैं या खुद मंच पर जाकर पहले से मौजूद लोगों को चुनौती दे सकते हैं। यदि आप युद्ध क्षेत्र में अंत तक लड़ते हैं और मंच पर अगरबत्ती जलने में लगने वाले समय के बाद कोई भी आपको चुनौती नहीं देता है तो आपको विजेता माना जाएगा। स्टेज से सबसे पहले निकलने वाला विजेता प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। इसके बाद सभी लोग दूसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु पुनः स्टेज पर प्रवेश कर सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के लिए शीर्ष तीन पुरस्कारों की बात करें तो ताइजू आध्यात्मिक युद्ध क्षेत्र खुलने पर उनकी घोषणा एक साथ की जाएगी। वृद्ध व्यक्ति की आवाज, जो उसके दिव्य आदरणीय क्षेत्र नौवीं परत साधना से निकली थी, अत्यंत शक्तिशाली थी जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि वहां उपस्थित असंख्य लोग उसे सुन सकते थे। अंत में एक बात याद दिला दूं, तलवारों की कोई आंखें नहीं होती। आध्यात्मिक युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता पर निर्भर होता है। अगर आप दूसरों को घायल या मार भी देते हैं तो भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति के अंतिम शब्द निकले, नीचे खड़ी घनी भीड़ में तुरंत उन्माद फैल गया। और जब बूढ़े व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया और विशाल चौकोर मंच पर अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया तो उसने अचानक आश्चर्यचकित भाव से जियांग लिंगक्सियन की दिशा में देखा, क्योंकि इस समय जियांग लिंगक्सियन के सामने एक स्थानिक दरार दिखाई दे रही थी और वह वांग चेन के साथ उसमें चलने वाली थी। इस समय आप कहां जा रहे हैं? विशाल चौकोर मंच के अंत में मुख्य सीट पर बैठे हानजून ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर उलझन के साथ जियांग लिंगक्सियन से पूछा। जो लोग विशाल वर्गाकार मंच पर नहीं थे वे किसी भी समय वहां से जा सकते थे, लेकिन जो लोग विशाल वर्गाकार मंच पर थे वे अपने अपने संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हम एक मिनट के भीतर वापस आ जाएंगे और कोई देरी नहीं करेंगे। जियांग लिंगक्सियन ने सम्मानपूर्वक बोलना समाप्त किया और सुंदर हानजून को सिर हिलाते हुए देखने के बाद उसने वांग चेन को स्थानिक दरार में ले जाया। यह एक खाली बंद छोटी सी दुनिया थी जिसे जियांग लिंगक्सियन ने खुद खोला था। दृश्य बिल्कुल सामान्य था लेकिन आसपास का माहौल बिल्कुल खाली था। ये लो, और ये, और ये, और ये। जियांग लिंगक्सियन केवल उन दोनों के साथ खाली जगह में खड़ा था, लगातार खजाने निकाल रहा था और उन्हें एक एक करके वांग चेन के हाथों में भर रहा था। राजा स्तरीय शरीर संरक्षण तलवार इरादा, सम्राट स्तरीय शरीर संरक्षण जेड डिस्क, संत स्तरीय तावीज, सम्राट स्तरीय। बस बस सचमुच बस। वांग चेन ने जियांग लिंगक्सियन को सम्राट स्तरीय ज्वाला विस्फोट तावीजों की एक और 100 शीट निकालते और उन्हें अपने हाथ में भरते देखा और जल्दी से बोल पड़ा, चुप रहो, उन्हें ले जाओ। जियांग लिंगक्सियन ने यह सुनकर नाराजगी के साथ वांग चेन को ठंडी नजरों से देखा। उसकी स्पष्ट आवाज में एक आदेशात्मक लहजा था। वांग चेन ने असहाय होकर अपनी आंखों में आंसू लिए नर्म चावल के इस कटोरे को स्वीकार किया और चुपचाप सम्राट स्तर के ताबीजों की 100 से अधिक शीटें ले ली। जब वांग चेन ने सोचा कि जियांग लिंगक्सियन के पास उसे देने के लिए चीजें खत्म हो रही हैं, तो अगले ही पल वांग चेन हक्का बक्का रह गया, क्योंकि जियांग लिंगक्सियन के हाथ ने एक बार फिर 9 संत स्तरीय ताबीज बनाए, जिनमें से प्रत्येक 9 तत्वों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। हिस सिस्टम की हॉनफने की आवाज वांग चेन के दिमाग में गूंज रही थी, जिससे पता चल रहा था कि ये ताबीज कितने कीमती थे।